نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. دار قرآن 2021 آج ہم اس میں سے پارا نمبر 26 پارا 26 الاحقاف سورت کے آغاز سے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہاں سے شروع کریں گے. اور الحمدللہ ہمارا ہر سیشن پارے کے شروع سے لے کر پارے کے اینڈ تک چل رہا ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس کو آخری دن تک اسی طرح قائم رکھیں اور پورے محبت اور پیار کے ساتھ ہم ان چیزوں کو لے سکیں. آج کے اس پارے میں ہدایت کے طالب کے لیے کیا ہے؟ آج اس کے لیے سکینت ہے, اطمینان ہے, خوشی ہے. قرآن پڑھنے کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہے نا, اگر ہم اس کو محسوس کر کے کسی ڈبی میں بند کر کے بیچنے کے لیے نکل جائیں تو کوہ نور ہیرے سے زیادہ بڑی نعمت ہے یہ. کیونکہ آج انسانیت جس چیز کے لیے تڑپ رہی ہے وہ سکون ہے, اطمینان ہے. تو اگر آپ کو پہلی دفعہ قرآن پاک کو سننے کے بعد اور کچھ نہیں بھی سمجھ آیا اور ابھی عمل کے لیے دل نہیں بھی کھل رہا تو کوئی بات نہیں, یہ تو آپ نے پا ہی لیا کہ اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے. اور جتنا زیادہ اطمینان دل میں آتا جاتا ہے اتنا انسان پھر اس کو اور سے اور لینا چاہتا ہے. ہمارے اس بارے کی تھیم آیت ایک نہیں دو ہیں, سورۃ الفتح. آج ہمارے اس بارے کے اندر ایک وہ جیم ہے کہ مجھے خوف آ رہا ہے اپنے پاس سے کہ کہیں میں سارا وقت اس پہ نہ لگا دوں, کیونکہ ہم نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایڈوانس کورس جو صرف ایڈمنز اور ذمہ داران کے لیے ہے الحکمت البالغہ, اس میں سورۃ الفتح پڑھی ہے. ایون جس دن آپ کا ویلکم رمضان تھا تو اس دن اس کی آخری کلاس تھی, تو وہ میرے سامنے تو کہنا چاہیے کہ تومار کے تومار ہیں. ہم ایک ایک لفظ پہ بات کرتے رہے ہیں اور جو ساتھی سن رہے ہیں وہ یقیناً میری ہاں میں ہاں بھی ملائیں گے اور خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ جی ہم نے ان ڈیپتھ آیت بایت نہیں لفظ بہ لفظ سورۃ الفتح کو سیکھا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آج میں آپ کو اتنا تو نہیں دے سکوں گی, لیکن ہم اس وقت اس کی جو آیت کریں گے وہ ہے آیت نمبر 4 اور 18 جو آج کے پارے کے تھیم سے متعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں, اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں, اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے. دوسری آیت اگر دیکھے تو آیت 18 ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں میں جو تھا, آج اس پہ بات کرنے لگی ہوں, ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرما دیا اور ان کو قریب کی فتح عنایت فرمائی. یہ ہیں جی دو آیات جن کی روشنی میں آج کے ہمارے پارے کا مین تھیم السکینہ. سکینت کیا ہے؟ قلب کی راحت کا نام ہے, حمیت کی ضد ہے. اور صحابہ کرام کے جس واقعے کو بنیاد بنا کر سورۃ فتح کو ہم دیکھیں گے, تھوڑا سا سورۃ فتح سے متعلق چیزوں کو لے لیجئے جس میں آپ کو سکینت کی اصل بھی سمجھ آئے گی, کیونکہ جب ہم ترجمے میں پڑھ رہے ہوں گے تو بیچ میں روکنے کا وقت نہیں. بس نوٹس لیجئے اور کچھ نہ کیجئے اس وقت, نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے. اور فتح کا لفظ ہی خوشی دیتا ہے. آپ ایک مچھر بھی مار لیں تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ آپ نے مچھر مار لیا. انسان کا بڑا فیورٹ لفظ ہے, محبوب لفظ ہے کہ ایک کمزور سی مخلوق پہ انسان فتح پا لے تو کتنا خوش ہو جائے. और यहाँ जरा सी ये बात भी समझ लीजिए कि हम इस वक्त इस बारे में तीन मदनी सूरतें जो मुस्तकिल तरतीब के साथ आ रही हैं वो सीखने वाले हैं। सूरत मोहम्मद सीखेंगे, पीछे आपने बहुत सारी मदनी मक्की सूरतें पढ़ी हैं। तो सूरत मोहम्मद में किताल का मौजू है कि बेगुनाहों को मत मारो, जो घरों में बैठे हुए उनको ना छेड़ो, कुछ भी ना कहो। हाँ, जो तुम्हें मारने आ जाएं तो फिर क्या तुम उनके आगे खुद को पेश करके खुदकुशियां कर लो? इस्लाम ये नहीं चाहता। तो सूरह मोहम्मद में किताल है। उसके बाद अगली सूरत सूरह फतह है, जो इस वक्त हमारी आज मेन थीम है, मिशन की तकमील। यानी किताल के बाद फिर मिशन पूरा हो जाता है, जब लोग अल्लाह के रस्ते की जिद्दोजहद करने वाले बन जाते हैं और एक गिरोह बनता है और एक खूबसूरत सी ठुकी हुई जमात तैयार होती है, तो अल्लाह फिर उस मिशन को पूरा करवा देता है। कभी जिंदगी में हो जाता है लीडर के, कभी उसके बाद होता है। और उसके बाद फिर सूरत हुजरात आने वाली है हमारे इस बारे में, जिसका दूसरा नाम अखलाक भी है। यानी जब मुसलमान गालिब हो गए, मदीना बन गया, तो फिर वहां एक ऐसा मुआशरा कायम किया जाएगा कि जो आइडियल सोसाइटी होगी, तो वहां क्या खूबियां और क्या उनकी चीजें हैं। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो सूरत फतह की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत में एक ख्वाब को बुनियाद बनाया। आप कह सकते हैं कि सूरत मोहम्मद से अगर आप देखें तो इस्लाम के गलबे का आगाज हो रहा है। मक्का के अंदर से उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में बुला लिया गया। अंदरून अरब इस्लाम की कामयाबियों का तस्करा है इन दो सूरतों में। आगे जाकर फिर हम बाहर पढ़ेंगे, जो सूरत तौबा में हम पढ़ चुके वो बैरून अरब, या कह लीजिए कि फिर उसकी हदें आगे से आगे बढ़ती गई थी। इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक के नाम पर, जिसको गज़वा अहज़ाब हम सूरत अहज़ाब में थोड़ा सा टच कर चुके हैं, मुसलमानों को अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत फतह दी थी और हथियारों से लैस लोग आए लेकिन अपने आगे एक खंदक देखकर परेशान हो गए। वो एक अलग मौजू है। आज भी यही ज़हनी खंदकें खोद कर आज के कुफर को और आज के बातिल को परेशान किया जा सकता है। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को ये समझदारियां दे दे। बिल्कुल नया तरीका था। तो वो जो मुशरिकीन मक्का थे वो एक बड़े खौलते हुए वापस गए थे कि ये क्या हो गया कि हम तो इनके घर गए और सारे मिलके आए थे। इस दफा वो ये हदीस याद रखिए कि एक वक्त आएगा कि सारे मिलकर जमा करेंगे कि आओ मिलकर मुसलमानों को खत्म कर दें ताकि ये रोज रोज की बातें खत्म हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने वहां अपना आप दिखाया और बहुत ही कामयाबी मिली। जो सारे एक झूठा इत्तेहाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ गए थे वो तो बेचारे गुस्से में खोलते हुए चले गए। अल्लाह ने नबी को ख्वाब दिखाया और नबी का ख्वाब हकीकत होता है, चाहे वो हजरत इब्राहिम का ख्वाब अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का था या अल्लाह के नबी का उमरा करने का या हज करने का। लिहाजा आपने ऐलान कर दिया। अब तीन या चार माह पहले की जंग का एक असर तो दिलों पे था, तो जो मुनाफिकीन या कमजोर ईमान के बद्दू थे और आप वो तो ना निकले, लेकिन शौक वाले जोशीले और आप जैसे प्यारे लोगों की तरह के लोग के जो पहले से आके बैठे होते हैं और बाद तक भी नहीं जाते, वो तैयार हो गए। तकरीबन 1400 से लेकर 1800 तक लोगों का तस्करा मिलता है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैयार हो गए बगैर हथियारों के। कितनी जरूरत की बात थी। और इस तरीके से उनको शौक था कि हम उमरा करेंगे, तो लिहाजा जब हुदैबिया के मौके पे आए तो वहां रोक दिए गए। सबको पता है सुलह हुदैबिया, बचपन से हमारे दीनियात और इस्लामियात की बुक में भी ये पढ़ाया जाता था। लेकिन इस पूरी सूरत में आप उस वाकये को बुनियाद बनाते हैं, देखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हुदैबिया के मौके पर रोक लिया जाना एक इतना बड़ा सानेहा बन जाता अगर सहाबा की तरबियत ना की गई होती, सहाबा के दिलों में सकीनत ना होती, बेहतरीन तरबियत ना होती। हम सब जानते हैं कि ऐसे मौकों पे बहुत मुश्किलात होती हैं, जब हिकमतें समझ नहीं आती। और अल्लाह के नबी की जगह अगर कोई गर्म दिमाग रहनुमा होता, जिसको हॉट हेडेड लीडर कह दें, तो हालात बिगड़ जाते। पीपल प्रेशर आप बर्दाश्त ना करने वाले होते तो वहां पता नहीं क्या होता। लेकिन उस वक्त आपने अपनी टीम को खुश रखने से बालातर एक ऐसा फैसला कर दिया जो हक के लिए मतलूब था। और एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी यही होती है कि आमतौर पर टीम को खुश रखे, यानी माँ बाप बच्चों को खुश रखे, लेकिन कभी को बड़ा फैसला करना पड़े तो कहते हैं पीछे हो जाओ, आई विल टेक केयर, इट विल बी एट माई ओन। अल्लाह के नबी ने ऐसा ही किया, वन साइडेड शरायत कबूल की, और वो शरायत ना तो सहाबा को समझ आ रही थी उस वक्त, क्योंकि इंसान उस लेवल पे नहीं होते जिस पे बड़े होते हैं। हम हर दौर में समझते तो यही है कि हमारे माँ बाप को अब कहाँ समझ है, और हमारे उस्तादों को अब क्या पता, अब तो हमें कोई नए उस्ताद ढूंढने की जरूरत है, ये तो पुराने दौर के लोग हैं, अब नए तरीके से बात करने वाले ढूंढते हैं कोई नई चीज, और नई चीज हमेशा अट्रैक्ट करती है। लेकिन याद रखिये कि ओल्ड इज गोल्ड, हमारे माँ बाप जिस्मानी तौर पर कमजोर भी हो जाएं, लेकिन उनके अंदर एक फहम और फरासत अगर हो तो वो जवानियों के खून और उस तरह के जज्बों से पीछे होते हैं। मक्का वालों ने हर वो हरकत की जो इश्तियाल दिलाने वाले थी, आपके नाम के साथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज हटवाना चाहा, और न समझ आने वाली बात, तारीख गवाह थी कि किसी को हज या उमरे से नहीं रोका गया, ये तो उनकी रिवायात के भी खिलाफ था। लेकिन अना वो इज्जा और शिकाक जो सुरस्वाद से हमारे साथ चलती आ रही है, इस बुनियाद पर उन्होंने रिवायात अपनी तोड़ दी, लेकिन अपनी अना को नहीं मसला और मुसलमानों को रोक दिया। और अल्लाह के नबी हर बात पे यस यस कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। उस वक्त पे जब अवामी जज्बात बड़े मुश्तैल होते हैं और हटो बचो नारे लगते हैं, अल्लाह के नबी ने सहाबे कराम के दिलों को परख लिया। ये वो वक्त था कि जिस दिन सहाबा ने ये बात बता दी अपने अमल से, अब जम लिख लिया आज के पारे का पहला, इतात का अजर 1,00,000 नमाजों से बड़ा होता है। पिछला पारा आप तौहीद अमली पे पढ़कर आए हैं, आज उसी के साथ इसको जोड़ दें। अल्लाह की बात मानना, जो वो कहता है वो करो और जिसे रोके वो रुक जाओ, ये अमल खाना काबा में जाकर एक नमाज के बदले में 1,00,000 नमाज से बड़ा अजर है। और ये कैसे हुआ? सहाबा में कोई एक ना उठा कि आप तो यहां बैठे, मैं जाता हूं, मेरे फलां रिश्तेदार और सबके खानदान बैठे हुए थे उधर। ये तो ऐसे कि आप पाकिस्तान इंडिया बैक होम जाएं और वहां आपकी फैमिली आपको वेलकम कर रही है और आप एक लीडर के ये साथ इमिग्रेशन पे स्टक हैं, एयरपोर्ट पे रोक लिए जा रहे हैं। उस वक्त तो फिर जो बातें होती हैं और जो बातें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में सहाबा कराम से वो काम ले लिया जिसको आज आप सकीना के नाम से देख रहे हैं। ना अल्लाह के नबी मुश्तिल होते थे, ठंडे दिमाग से रहते थे, छोटी-छोटी बातों को बड़ा ना बनाना, सकीना ये होती है। छोटी बात को बड़ा मत बनाइए, सॉल्यूशंस देखिए, प्रॉब्लम्स को ना देखिए, और आप इजी गोइंग स्टाइल बन जाएं, छोटी छोटी बातों पे आपे से बाहर ना हो जाएं। क्या अल्लाह के नबी को सहाबा के जज्बात का पता नहीं था? सब मालूम था। क्या आपको ये डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे? ये भी डर था। लेकिन याद रखिए कि आप एक अवामी लीडर नहीं थे जो सियासतदानों की तरह आकर दावे करते हैं कि हम आपकी तकदीर बदल देंगे एक दफा में वोट दें। अच्छे लीडर अच्छी सोच रखते हैं, आमियाना सोच वाले लीडर जो होते हैं ना, वो फिरौन की तरह खुद भी डूबते हैं और दूसरों को डुबाते हैं। इतने हसास किस्म के मुजाकरात चल रहे थे उस वक्त मक्का वालों से कि जरा सी जुम्बश से इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। आमतौर पे जो लीडर्स होते हैं ऐसे वक्त में अपनी जमात की हिमायत और अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए फिर वो करते हैं जो उनके लोग चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा कुछ ना किया। यानी नबी की एक भरपूर लीडरशिप क्वालिटी इसमें हमें दिखती हैं, और नतीजा क्या निकला कि आपने वन साइडेड माहदे पे साइन कर दिए। कुरान कहते हैं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अगर आप उसको आज की कामयाबी के मेयार के साथ रिलेट कर देख लीजिए तो आज हमारा एक बहुत बड़ा मसला क्या है, लिख लें। चंद जेम्स बोल देती हूँ, ये बस कह लीजिए कि एक खजाने में से 2-4 लफ्ज मेरे दिल दिमाग में जो रचे बसे हैं वो दे रही हूँ, वरना जब आप सब सबीलुल जन्ना कर 2-3 मरहलों के बाद अल हिकमतुल बालिगा में आएंगे तो आपको सूरत अल फतह की तफसीर सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। फिर आप देखेंगे कामयाबियों का मेयार बदलो, स्टैंडर्ड क्या है। आज आप देखिए कि हमारा सबसे बड़ा एक मसला क्या है कि आज उम्मते मुस्लिमा की कामयाबी का मेयार भी वही बन गया जो एक ज्यू और एक क्रिश्चियन और एक नॉन बिलीवर और एथियस का हो गया। एक रोलर कोर्स से गुजारकर अपनी औलादों को हम कामयाब समझते हैं, और बिल्कुल ऐसे कि कमजोर नजर वाला ग्लासेस के बगैर सही नहीं देख पाता। हम कुरान के क्लासेस को हटाकर आज अपने बच्चों की कामयाबियों को फतह में ढलता नहीं देख रहे। सारी कोशिशों के बावजूद आज हमारे बच्चे सकीना से महरूम हैं। आज डिप्रेशन बच्चों में, आज फ्रस्ट्रेशन बच्चों में, आज खुदकुशी, अपने आप को कट्स लगाना, ये होमोसेक्सुअलिटी जैसे बेकार याद काम, ये फ्रस्ट्रेटेड माइंड की पैदावार हैं। ये बिल्कुल ऐसे कि एक रास्ते से गुजरते हुए शख्स को बेहतरीन घर दिखाया जाए तो पूछो बताओ भाई ये घर कैसा और इसके घर में रहने वाले, तो कोई सती सोच वाला कहेगा ये सबसे कामयाब इंसान है। कारून का मिसाल, पीछे कारून की मिसाल सूरत कसस में गुजर गई। किसी प्राइम मिनिस्टर को देखें, ग्रेजुएट को देखें, तो हम उसको कामयाबी कहते हैं। इसके बरक्स आगे जाएं तो इब्राहिम नाम का एक शख्स जो होमलेस खड़ा है और बाप ने घर से निकाल दिया, पूछेंगे बताओ ये कामयाब है, तो लोग कहेंगे ये कामयाब नहीं है। लेकिन आज गैरों के कामयाबी के मेयार की ग्लासेस मुसलमानों ने लगा ली, सकीना से महरूम हो गए। तो मुसलमान की कामयाबी का मेयार बाकी सबसे मुख्तलिफ होना चाहिए। मुसलमान कुरान की रोशनी में क्लियर ग्लासेस की सूरत में कामयाबी और फतह को देखता है। मुसलमान वो देख लेता है जो दूसरे नहीं देख पाते। एक तरफ फिरौन का महल था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। इसके बरक्स इस्माइल, इब्राहिम और हजरत मूसा को देख लीजिए, वो होमलेस थे लेकिन कामयाब थे। तो सक्सेस हैज नथिंग टू डू विद वेल्थ, विद पॉवर्टी। फेलियर पॉवर्टी नहीं है और दौलत कामयाबी नहीं है। आज हम में से हर पेरेंट और हर बड़ा अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहता है। तो कामयाबी आपके बच्चों की क्या है कि उनको कल्ब की राहत मिल जाए, आपके बच्चे पुरसुकून हो जाएं। और तजुर्बा गवाह है कि बच्चे स्कूलों में जाते केयरलेस होने लगते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो डिसोबीडियंट होने लगते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं तो उनको अपने माँ बाप बिल्कुल पसंद ही नहीं आते, और बड़ी हद है हाई स्कूल तक पहुंच जाए या घर छोड़ देता है बच्चा या इस्लाम छोड़ देता है, और 18 पे तो बच्चा खत लिखकर माँ को दे गया मेरे पास दलील मौजूद है, ये है तोहफा माँ को मेरी 18वीं सालगिरह का कि आई कैंट लिव विद यू एनी मोर, डोंट ट्राई टू फाइंड मी, और ये पकड़ लें और मैंने अपनी जिंस भी बदलनी है, मैंने नाम भी बदलना है, तो यू विल नॉट रीच टू मी। आज ये हमारे मुसलमान बच्चों की बातें हैं, दूसरों को तो मैं नहीं छेड़ती, मुझे दूसरे तो बड़े बेचारे लगते हैं। तो याद रखिए कि बाज़ दफ़ा हम अपने बच्चों की तालीम पे जो पैसा लगाते हैं ना, वो पैसा ही नहीं है। प्राइस इज नॉट ट्यूशन, समटाइम्स इट्स गाइडेंस। आज हम अपने बच्चों की हिदायत की कीमत पे उनको दुनिया की तालीम दिलाते हैं। कुरान के तला तश्तरुबी आयाती समन कलीला, तो ये छोटा सा पस मंजर है जिसके ऊपर आज मैं और आप इस बात को समझने वाले हैं, कैसे सहाबा कराम ने ऐसे वक्त में मुसलमानों को प्रेजेंट किया। अल्लाह के नबी की बात समझ नहीं आई लेकिन खामोश रहे, पैदल जा रहे थे, कोई बड़ी आला किस्म की हज उमरा सर्विस लेकर फर्स्ट क्लास पैकेज लेकर नहीं गए कि एयरपोर्ट पे भी उनको लॉन्जिस ऑफर किए जाए कि फ्री स्नैक्स हैं, पांव जख्मी थे। आज हम फर्स्ट क्लास में बैठकर अपने मुल्कों से निकलें और जद्दा जाएं तो वहां जाने तक हम कहते हैं हमारी, हम तो थक गए, एग्जॉस्टेड हैं। लेकिन सहाबा किराम कैसे थे, ये थी सकीना, और आप पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह, ये अल्लाह के नबी की फतह थी। इस्लाम की फतह फतह मक्का थी, नबी की फतह फतह हुदैबिया थी, क्योंकि आपको सहाबा जैसी एक ऐसी टीम मिल गई कि जिनके लिए कहना चाहिए कि दुनी मिन की ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। सहाबा कराम के जज्बात का सख्त तरीन इम्तिहान था और हर सहाबी फर्स्ट क्लास में पास हुआ। क्योस हो सकता था, खाना जंगी का खदशा था, जाहिर है कि सहाबा इंसान थे, कोई रोबोट थोड़ी थे, मगर इताद का कलादा गले में डला हुआ था, ये होती है सकीना। और अहजाब का तजुर्बा भी याद था, एक महीने की सर्दी और हिसार था मदीना का, पहले वो खुद मारने के लिए आपके मुल्कों में आए हुए थे, आपके मदीना शहर में आए थे, अब तो ये खुद मारने वालों के घर में आए हुए हैं। पैसा लगा, वक्त लगा, तकलीफ लगी, दरवाजों पे रोक लिए गए। आज जरा अपने दिल पे लीजिए, आपको यहां से जाकर सऊदी अरब के बॉर्डर से रोक दिया जाए तो आपका क्या हाल हो। और लिखिए सकीना क्या थी, आए थे इबादत के लिए और हालात जंग के बन गए, और फिर सोने पे सुहागा, लीडर ने साइन कर दिए एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे जो किसी एक साथी को समझ नहीं आ रहे। जरा सोचिए अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते। जज्बाती जंग थी, फ्रस्ट्रेशन थी, इंटेंस फियर था, डिसअपॉइंटमेंट थी, इंटेंस होप, अग्रेसिवनेस, क्या कुछ न होता। आज एक जवान बच्चे को गुस्सा आ जाए तो उसे संभालना मुश्किल होता है। कहां 1400 लोगों को अगर गुस्सा आ जाता तो कैसे काबू पाते। लेकिन रिलैक्स्ड असकीना कल्ब की राहत है। सहाबा को ना उमरा करने को मिला, शरायत समझ नहीं आ रही और सोने पे सुहागा कि फिर अल्लाह का नबी कह रहा है, क्या फरमा रहे हैं कि अब एहराम भी उतार दो। झटके पे झटका, जलजिला था ये, जुलजिला तिलर्द जिलजाला वाली कैफियत थी। और फिर उससे भी और वो कहते हैं जख्मों पे नमक। इस साल तो चले जाओ जो बिल्कुल किनारे पे खड़े हो 13 मील के किनारे पे, हाँ अगले साल आकर 3 दिन के लिए उमरा कर जाना। ऐसे वक्तों में तो जुबानें खुलती हैं। एक मौत था, कैसे उस वक्त पे ये मामलात पेश किए गए। और याद रखिए कि ये वो वक्त होते हैं कि जिस वक्त संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को वो साथी दिए कि जो चलते ही गए। अल्लाह के नबी के लिए जिंदगी का ये सबसे बड़ा शौक और पहला शौक था कि आप अपने प्यारे सहाबा को कुछ करने को कहें और वो अपनी जगह से ना उठे। हम तो आदी है ना नबी की ना माने, हमारी क्या बातें, हम तो अपनी मर्जी से जो चाहें। लेकिन सहाबा जब ना उठे तो आप परेशान। फिर हजरत उम्मे सलमा का मशवरा काम आता है और अल्लाह इस पूरे जज्बाती इवेंट को बयान करके इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना कहता है। क्या पता चला कि कुरान का चीजों को दिखाने का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट एंगल है। आपका आईसाइट चेंज हो रहा है आजकल, लिख लें। आप सब की विजन, आपकी ग्लासेस अब चेंज होंगी। ये कैसी फतह है, उमरा हम नहीं कर सके, मुआहदे हमसे वन साइडेड। और कहा जा रहा है इन्ना फतहना लका, अल्लाह कहता है लका नॉट लहुम। ये फतह नबी की थी, इस्लाम की नहीं थी, सहाबा की नहीं। उनकी तो आगे जाके 2 साल बाद आनी है फतह मक्का। ये एक लीडर की फतह थी कि सहाबा ने इस जज्बाती लम्हे में भी आपकी इताअत की। ये आपके लिए इलाके फतह करने की फतह नहीं थी, ये दिलों को फतह करना अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी कामयाबी। और आज भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी वो सादतमंद औलाद होती है जो माँ बाप के आगे दबे बैठे हों। और एक अच्छे उस्ताद के लिए बेहतरीन खुशी बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं जो हर काम वक्त पे करके भी डरे कि अभी भी हमने पूरा अच्छी तरह से हक अदा नहीं किया। और एक लीडर को ले लीजिए तो उसकी बेहतरीन कामयाबी एक मजबूत ठुकी हुई टीम होती है। अल्लाह के नबी को ये टीम मिल गई थी। और पहली बार मक्का वालों ने मुसलमानों को तस्लीम किया था। सकीना देखिए, आज तक तो वो मानते कुछ नहीं थे, इवन चंद माह पहले तक मारने करने के लिए आए हैं क्योंकि आज तो आपके साथ मुआहदा करने पे तैयार है। कभी कोई टेररिस्टों से भी मुआहदे करता है, कोई क्रिमिनल से भी मुआहदा करती है हुकूमत। मुआहदा जब होता है ना तो बंदा कुव्वत तस्लीम कर लेता है। पहली बार, यहां एक अहम नुकता है नोट कर लीजिए, कभी जिंदगी में काम आएगा। इस वक्त मुसलमान नहत्ते थे, कोई हथियार जिस्म पे नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। और मक्का वाले कहते हैं आओ हम वी विल कंसीडर यू। और एहराम की हालत थी, पता क्या चला कि ताकत हथियारों में नहीं है, अल्लाह की मदद में। उन्होंने मुसलमानों को कुव्वत माना। आज भी जब कुफार मुसलमानों को पावर मानेंगे ये मुसलमानों की फतह होगी। रोक डाल दिया अल्लाह ने, अहजाब से मुसलमानों मक्का वालों को वापस भेज दिया जबकि मुसलमानों के पास असबाब थे। आज बगैर हथियारों के 10 साल तक जंग न करने पे तैयार कर दिया। कह देती हूं कि यह अहज़ाब से बड़ी फतह थी। और वाकई फिर इसके असरात सिर्फ 2 साल के बाद दिखे दुनिया को। तो ऐसे वक्तों में अपने आप को थाम लेना यह सकीना होती है। जज्बातियत नहीं, जज्बाती तकरीरें नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। और ये चीज अगर आज उम्मत मुस्लिमा को मिल जाए तो आप याद रखिए पूरी दुनिया कांपेगी और मुसलमान सामने होगा। लोग कहते हैं कि मिलिट्री की विक्ट्री बॉम्ब्स और हथियारों के जरिए होती है, लेकिन उससे दिल तो नहीं जीते जाते। ये फतह फतह मुबीन दिलों को जीतने वाली थी, अल्लाह के नबी के सब्र, आपकी स्ट्रेटेजीज, आपके डिसिप्लिन का रिजल्ट थी। और ये हथियारों के बगैर वाकई हुई। वो कहते हैं ना कि मोमिन है तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही। जरा इमेजिनेशन में लाइए कि सहाबा का वापसी का सफर कैसा होगा। और सकीना को जेहन में लाइए, हम जाएं किसी भी महाज पे जाएं, चले शादी के लिए चले जाएं या दीन का दुनिया को कोई काम करें और ठीक ना हो तो वापसी कैसी गुजरती है। सहाबा किस टूटे हुए दिल से आए होंगे, नबी के बारे में क्या सोच रहे होंगे, कुछ भी नहीं। सकीना फी कुलूबिहिम सकीना। मुसलमानों को हथियारों से ज्यादा आज डिसिप्लिन की और लीडरशिप को फॉलो करने की जरूरत है। हमें अपने लोगों को डिसिप्लिन करना होगा। अगर आप दीन का काम करना चाहते हैं ना, अकेला बंदा कुछ नहीं, बड़े बड़े स्किल्ड लोग बैठे हैं, टीम कोई नहीं है, टीम के बगैर काम नहीं होता। और टीम बनती है खून जला के, रात दिन एक करके। अपने आप को एक पुल सरात पे खड़ा करेंगे, अपनी अना को कुचलना पड़ता है, आपको दूसरों की गलत भी माननी पड़ती है, अपनी ठीक छोड़नी पड़ती है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं इनके कहने पे इनकी बात मान लेती हूँ, फिर समझ आती है। और जितना ज्यादा आप कुरान से जुड़ते हैं, अल्लाह की हिकमतें आपके दिल पे इल्का होती हैं, फिर आपको ये बातें समझ आती हैं। तो एक जुमला लिखिए कि नबी का असल सरमाया सहाबा है, असल सकीना ये होती है एक बंदे के लिए। रिवायात गवाह हैं कि 1800 में से कोई एक ऐसा नहीं था कि जिसके पांव जख्मी ना हो और ब्लडी ना हो। हजरत उमर तो बोल उठे, फतुन हाजा, अल्लाह के नबी ये फतह? और बाद में कहते हैं अपनी स्टोन पे तो मैंने कितने नेकियों के काम किए, गुलाम आजाद किए, रोजे रखे, कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अपने नबी के सामने कैसे बोल गया। और अल्लाह ने यहां पर लियगफिर लकल्लाहुमा तकद्दम मिन ज़म्बी से एक और बात भी बता दी कि फतह का मकसद मग़फ़रत था। इस सूरत में तीन बार आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी आप जब तर्जमे पे गौर करेंगे, पहली सूरत में, आखिर की सूरत में और मिडल की सूरत में मग़फ़रत का तज़किरा, लियगफिर अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। दरमियान में आयत 14-15 पे आ जाते हैं तो ईमान वालों के गुनाहों की माफी की बात है, और एंड पे फिर आ जाता है वलिल्लाहि मुल्कु समावात। क्या पता चला कि आप जाके उमरा 1 नहीं 10 कर रहे हैं, लेकिन कबूल ही नहीं, क्योंकि पिछला पारा भी हजम नहीं हुआ हमें, ना सहरियां कबूल ना इफ्तारियां कबूल, क्योंकि उसमें एक गुनाह का काम है। तो कर लो उमरे, कर लो हज, जाओ, लेकिन ये देखो कि कबूल हुए हैं कि नहीं। असल आपकी मेरी कामयाबी है कि मग़फ़रत हो जाए, और यही है वो मकसद जिस पे आज की मस्जिदें, इदारे, ऑर्गेनाइजेशन और मदरसे तामीर होने चाहिए। मक्का फतह होने से अल्लाह ने सारी दुनिया के लिए उस घर के दरवाजे खोल दिए कि आज तक करोड़ों लोग अपने गुनाहों के पटारे वहां लेकर गए और माफियां मांग कर आए, क्योंकि लियगफिर अल्लाह लकमा तकद्दम मिन ज़म्बिक। तो जरूरत इस बात की कि हम इस सकीनत को आज अपने दिल पर लाएं। ना अल्लाह के नबी जंग के मोड में थे, ना सहाबा थे, सब इबादत मोड में थे। और मोड चेंज करना, हमारा तो मूड नहीं बदलता, मोड तो उससे बहुत बड़ी बात है। और जब हजरत उस्मान की शहादत की खबर आई होगी तो सोचिए क्या वो कुरलाहट नहीं तारी होगी, होगी कितना प्रेशर था उस वक्त नबी पे। सहाबा के तो एक जज्बात का इम्तिहान था, नबी की लीडरशिप टूट जाती, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटाने पे एक अमली रिएक्शन सामने आ सकता था। तो इन सारी असाब शिकन सूरत हाल पे अल्लाह कहते सकीना, हमने तुम्हारे दिलों पर सकीनत डाल दी। वल्लज़ी अनज़ला सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, और अनज़ला ऊपर से डाली, आम देखे चीज डालनी है तो फी कहते हैं, फी का लफ्ज दिलों में पोर की, क्योंकि गम इतना बड़ा था कि वो ऊपर से नहीं, वो जाके जैसे वो ऊपर से लगाने नहीं, अंदर वैक्सीनेशन जिस्म के जाएगी तो बीमारी का इलाज होगा। और याद रखिये सकीना के लफ्ज को समझ लीजिए, ऐसे ही नाजुक वक्तों पर टीमें टूट जाती हैं, ऐसे ही नाजुक वक्तों पर इत्तेहाद टूटते हैं, कमिटमेंट्स छूट जाती हैं, खुद से किए हुए वादे भूल जाते हैं, और मकसद पीछे हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं। और यही वो वक्त होते हैं जहां अना सर उठाती है और आप कहते हैं नो मोर, आई विल बी एट माई ओन, मैं नहीं काम कर सकती किसी ग्रुप के साथ क्योंकि इनके रूल्स बड़े सख्त हैं, मैं अकेली काम कर लूंगी। और फोकस खत्म हो जाता है और इंसान इज्तमाहियत से इनफरादियत पे आता है, ज़ातियात पे आ जाता है। और ऐसे वक्तों पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, मैंने तुम्हारे दिलों में इंजेक्शन लगाया सकीनत का, खुशी का, सुकून का। क्योंकि जब ये दबाव जिंदगी में आता है ना, तो उसके बाद फिर हीरे मोती भी निकलते हैं। सहाबा इसीलिए तो ठुके हुए थे, दोनी में इनकी ठोकर से सहराओ दरिया क्यों थे, क्योंकि लीडर ने इनको खूब सर्द गर्म दिखा दिया था। और अल्लाह ने नबी की जिंदगी में साहबा को ट्रेलर करवा दिए, एक तो ओहद में आपकी शहादत की खबर पे, और इसी तरह ये जंगे क्या थे, ये ट्रेनिंग कोर्स थे, ये तालीम थी। और आप हैरान होंगे कि कुरान में जहां सकीनत का लफ्ज है ना, वो जंगों के साथ है, और हदीस में जहां सकीनत का लफ्ज है वो कुरान की तालीम के साथ है। आज की आपकी हदीस भी इसी से मुतल्लिक है। तो जो कुरान के अंदर अपने आप को पढ़ने पढ़ाने में टेम कर लेते हैं ना, फिर वो बाद में बेहतरीन काम करते हैं, पुख्ता ईंटें ही मजबूत घर बनाती हैं, कच्चे पक्के नहीं। और जब दबाव पड़ता है ना, तो उसके बाद कुछ लोग तो मजलूम बन जाते हैं, हाय पुअर मी, हाय मैं बेचारी, आई वॉज सो फ्री, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो पॉपुलर. मुझे क्या मिला कुरान पढ़ के, कितना वक्त था मेरे पास. जो चाहा बोल दिया, अब तो हर वक्त गम पड़ा हुआ है. जो चाहा पहन लिया, अब तो हर वक्त कुरान से पूछो ये वो. अब तो मेरी आजादी खत्म हो गई, ये हुआ वो हुआ. तो ऐसे वक्तों में याद रखिए कि जिंदगी और ईमान के हर मोड़ पर शैतान जरूर आकर बहकाता है. तुम कैसे दीन पे आओगी, तुम्हारे तो शौहर भी नहीं है फलां से, तुम्हारे तो घर में दीन कोई करता नहीं, ये नहीं वो नहीं, और फिर आगे से वो. लेकिन इसके बरक्स मोमिन ऐसे वक्त में सकीना की सूरत में डायमंड बन जाते हैं, कुछ कार्बन बन जाते हैं दबाव पड़कर, और कुछ डायमंड. जो हक लेकर आएगा और हक के लिए आएगा ना, वो जरूर कुंदन बनेगा. ऐसी मुश्किलात में फिर आम मीठे होते हैं. तेज धूप पड़ती है ना तो फिर आम मीठा होता है. कच्चा पक्का आम उठाकर पैल डाल दिया जाए तो वो खट्टा मीठा ही रह जाता है. सहाबा किराम खट्टे मीठे आम नहीं थे. जितनी मुखालफत ज्यादा, जितनी आजमाइश ज्यादा, उतना ईमान मीठा. जितनी हमारे खिलाफ बातें ज्यादा, उतना अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मुस्तकबिल रोशन. तो जहां अल्लाह ताला ने ये बात करके अब आपको मुझे इस बात की दावत दी है कि हम अपनी जिंदगी को देखें. इस्लाम असल में यही सिखाता है. बहुत सारे लोग आज सकीनत से महरूम हैं, माजरत के साथ. तभी तो आवाजों में जोश है और आवाजों में गुनगुनाहट है और ऐसा खौफ है. अल्लाह की बना दीनदार के नाम पे लोग कहते हैं ये इनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि सकीनत नहीं है ना देने वाले में ना लेने वाले में. नबी का तरीका ये नहीं था. जो मर्जी हो जाए हैं तो इंसान, जो मर्जी हो जाए हैं तो मुसलमान. गैरों के सामने बात करे तो जी, माथे कहना चाहिए सीने पे हाथ बांध के सूटेड बूटेड खड़े होते हैं, जी झुक रहे हैं, सजदों में जा रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं. और अपने मुसलमान दूसरे फिरके और गिरोह के बारे में बात करें तो गुर्राते हैं हम. ये सकीना नहीं होती, कल की राहत है ये, और हमीयत की जिद है. पीछे पढ़कर आए हैं हमीयत, इसमें भी आगे पढ़ने लगे आप. फिर इंसान हकीकत में मकसद के लिए अपने आप को खपा देता है, ऐसे बन जाते जैसे बोनलेस मीट होता है. और जितना ज्यादा आप इलाकों को फतह करने से ज्यादा किरदार साजी का काम करेंगे उतनी सकीनत मिलेगी. जमीन के टुकड़े लेकर क्या करना है, जगह लेकर क्या करना है, मेरी जिम्मेदारियां, मेरे बिल, लोग तैयार कीजिए. आज ये जरूरत है, सकीनत वाले लोग तैयार हो. खुदा तुझे अता जिद्दते किरदार करे. इस्लाम की फतह किसी इलाके की फतह नहीं होती, दिलों की तब्दीली की फतह है, किरदार की तब्दीली की फतह है. और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान, सिर्फ दौरे कुरान आपके दिलों को जैसे बदल रहा है. और मैं दिन रात आप लोगों की शेयरिंग्स और आपके जेम्स देखकर कहती हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये सीख रहे हैं. तो खुलासा कर लीजिए, सकीनत का आज आपका मेरा टॉपिक है. सूरत फतह में कई बार मिलेगा आपको. खुद को थाम लीजिए, सेल्फ कंट्रोल कर लीजिए. इल्मी है जान हो और अमली है जान हो, पुरसकून रहिए. आपस में मत फटें, इत्तेफाद और इत्तेहाक हो, इत्तेफाक भी रखिए, इत्तेहाद भी हो, टूट फूट का शिकार ना हो. रूल्स को फॉलो कीजिए, एक लीडर की इताअत पर जमे रहें. जब आपकी अकल बगावत पर तैयार हो तो खुद को थाम लें, और समय और इताअत की ऐसे आदत पड़ जाए जैसे सूरज चांद सितारे और पहाड़ों को आदत पड़ी हुई है. बात समझ आए या ना आए, जज्बात जख्मी हो कि इश्तियाल में हो, आप अपनी बात पे खड़े रहें, क्योंकि मोमिन की अकल अल्लाह के और रसूल के फैसलों पर जमी होती है. अपनी अकल को इस्तेमाल करके अगर बात मानी तो वो क्या मानी, तो सकीनत क्या है, आपके मेरे कल्ब की राहत है. ये दिल के साथ ताल्लुक है, दिल की वो कैफियत है. अभी तो हम चूंकि वाकया सुन रहे हैं ना, लेकिन आपकी अमली जिंदगी, आपकी घरेलू जिंदगी, ससुराली जिंदगी, शौहर बीवी का रिश्ता, बच्चों को पालना, इन सब में सकीनत की जरूरत होती है. होलने होलाने वाली बीवियां शौहरों के लिए कोई अच्छा इजाफा नहीं होती. और वो माएं जो हर वक्त ही बच्चों को पैनिक की कैफियत में रख दें, याद रखिए कि वो अच्छी अकलमंद माएं नहीं होती. ऐसी माओ को आप अच्छी सकीनत वाली माएं नहीं कहें, तो कहिए कि हमने सकीनत वाली माएं, बीवियां, बहनें, बेटियां बनना है. इस माशरे को आज पुरसकून लोगों की जरूरत है, और इस दीन के काम को भी ठंडे सबाक के साथ काम करने वालों की जरूरत है. जिस्मानी सुकून, रूहानी सुकून, कल्बी सुकून. और जब ये मिल जाती है ना, लिखिए एक जुमला. हमीयत होती है ना हिमायतें करना, झूठी साइडें लेना, उसमें इंसान बोलने लगता है. ब्लाइंड प्रेजिस, अंधाधुन तकलीद. वक्ती तौर पर ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन सकीनत آتی ہے نا تو انسان کو خاموش رہنا آتا ہے. لوگ کہتے بولنا سکھائیں, میں کہتی ہوں پہلے آپ خاموش رہنا سیکھیں. سکینت والا بندہ زیادہ نہیں بولتا. اور یہ آتی کب ہے؟ جب ایمان پہاڑوں کی طرح ٹھکتا ہے دلوں میں. پھر آپ ایمان پہاڑ کی طرح اپنے نفس پر رکھتے ہیں, سارے شکوک و شبہات کے لاوے اندر ہی رہ جاتے ہیں. اور یہ آتی اللہ کی طرف سے, والذی انزل السکینہ, یہ گاڈ گفٹڈ چیز بھی ہے, لیکن قرآن پڑھ کے کافی افاقہ ہوتا ہے. پھر آپ اپنے آپ کو باندھتے ہیں اور اپنی انا پہ چوٹ رکھیے, بس انا پہ پاؤں رکھے مسلی انگوٹھوں سے. اور جب بندوں کے عمل سے اللہ راضی ہو جاتا ہے نا, تب سکینت آتی ہے. اور اسی طرح جب بندہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلتا ہے نا, تب سکینت آتی ہے. بدر میں بھی سکینت ہی, صحابہ کے ہاتھوں سے تلواریں چھٹ رہی تھی. میدان جنگ میں کوئی سو جائے, آج نرم گدوں پہ نہ سوئیں, ٹرنکلائزر لے کر سونے والے پوچھیں. تو ضرورت اس بات کی کہ سکینہ کو پانے کے لیے قرآن سے گہرا تعلق رکھیے. ماشاءاللہ آج صبح میں نے ایسی بائدہ پہ پوچھ لیا کہ ایس اے 21 کے انرولمنٹ آنے شروع ہو گئے داخلے. میں نے سوچا دو چار ہوں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ مزید نہ ولا تنقصنا وکرم نہ ولا توہین. اور اس دفعہ جو مجھے اپنے ایڈمن سے ایک میسج مل رہا ہے بار بار, سازہ ہم دوبارہ ایسے کر لیں, بسم اللہ کیجئے. کیوں نہیں کریں؟ آپ کریں گے تو جو آپ کو سمجھ آئے گا وہ دوسروں کو تھوڑا آئے گا, کیونکہ یہ دورہ قرآن آپ کو مجھے اپنی علمی کمی کا احساس دلا رہا ہے. تو ان ضلع اللہ آپ کو مجھے یہ سکینت دے دے, آپ کے وقت میں برکتیں دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے, ان کے بچوں پہ ان کو سلامت رکھ, ان کے دلوں کو پرسکون کر دے, ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پور ڈاؤن فی اللہ دونوں کا اتنا پیارا ربط ہم نے دیکھا تھا کلاس میں, کہ جس طرح وہ ایک نشاط نہیں تاری ہو جاتا قرآن کے لفظوں میں جب ہم ڈوب جاتے ہیں ایک ایک لفظ پہ. تو پینیٹریٹنگ تھی سکینہ, پورنگ دیم واز ناٹ ایون اینف. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے دے. کبھی زندگی میں کورس کروایا تو سورت محمد سے حجرات تک کرواؤں گی, تو آپ کو ایک نئے رنگ دکھتا ہے کہ یہ ہے کیا. اور پھر آگے لی یزداد ایمان اما ایمان ہم کی بھی بات ہے. لکھ لیں اپنے لیے ایک بات, ایمان ایک دولت ہے. آپ کو پیسہ بڑھانا ہو تو پچھلے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں نا, اسی طرح ایمان کی دولت پڑی رہے نا گھر میں تو پرانی ہوتی ہے, ایسا ایسا سب وہ کرنے لگ جائیں گے جو چھوڑ چکے تھے. اس کو انویسٹ کیجئے. اور ایمان کی دولت کو بڑھانے کے موقع آپ کو والنٹیئر کر کے ملتے ہیں. اس صورت میں آپ کو بیعت کا تذکرہ بھی ملے گا, پلجنگ, کہ بیعت کی بنیاد پہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے تھے. ہم آج اس کو والنٹیئر فارم فل کرنا اور کمٹمنٹ فارم شو کرنا بتاتے ہیں. کس طریقے سے یہ ایمان بڑھتا ہے جب آپ نیکیوں میں اور بڑھتے ہیں؟ گھر بیٹھے رہیں گے کند ہو جائیں گے, آپ کا بڑھاپا بڑا خراب ہوگا. تو ایمان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیجئے, بڑی قیمتی کموڈیٹی ہے آپ کی, اٹس یور کیپیٹل. انویسٹ کرنے کے مواقع ایک تو آزمائشیں ہوتی ہیں اور ایک اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں, جو لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں انصار اللہ بن کر, وہ آپ کے سر پہ کوئی احسان چڑھا رہے ہیں. نہیں, وہ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں, ورنہ ہاسپٹلوں میں بیٹھے ہوتے, کسی مینٹل ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے, کسی کرائسس سینٹر میں بیٹھے ہوتے. تو ضرورت ہے اس وقت میں کہ ہم اپنے دلوں میں اس سکینت کو محسوس کریں. اور یہ فتح برداشت کا نتیجہ تھی. سکینہ برداشت کا بھی نام ہے. ہم تو شوہر کی بات سن کے نہ برداشت کریں, ہم تو نمک زیادہ کھانے میں دیکھ کر برداشت نہ کریں, ہمارے دلوں میں سکون اور اطمینان کا ہوگا؟ پیس کا لفظ دیکھیے لوگ ڈھونڈتے ہیں, نہیں ملتا ان کو. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پیس کو لینے کے لیے خود پیس فل ہو جائیں. دلوں میں اندیشے ہوں, وسوسے ہوں, لیکن زبانیں خاموش ہوں. اور منفی جذبات کو منفی عمل میں نہ ڈھلنے دیں. یہ ہے سکینہ. ہر وقت یہ نہ سوچتے رہے کہ پہلے ثابت کریں. آج آپ ذرا سا سوچئے, ہم تو ذرا سا وقت اوپر ہونے پہ پریشان ہو جائیں, کلاس کا وقت شروع ہونے کا اور کوئی نہ. اور آج تک ایک دن ایسا نہیں ہوا, الحمدللہ ایک دن ایسا نہیں ہوا پورے ڈی کیو میں کہ کلاس کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور کلاس شروع نہ ہوئی ہو. دو منٹ پہلے اوپنر کھل جاتے ہیں اور الحمدللہ میں خود بھی اس میں آ جاتی ہوں, زوم روم میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کیا ہو رہا ہے, پھر مجھے کہتے ہیں تو میں لے لیتی ہوں. ایک دن پورے ڈی کیو میں کلاس وقت سے لیٹ نہیں ہوئی. لیکن ذرا سے اوپر چند منٹ چلے جائیں تو ہمارے دلوں میں سکینت رہتی ہے. ہونی نہیں چاہیے, لیکن اگر قرآن ہے کوئی رسمی تھوڑی پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اس کو لینے اور دینے والا بنا دے. آئیے آپ ذرا سا دیکھتے ہیں اس کا ایک اور اینگل. یہ تو تھی غزوہ حدیبیہ اور غزوہ حدیبیہ کی روشنی میں. असल में मेरी आपकी जिंदगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी माशाल्लाह लिसनर्स हैं और वो सब ना तो किसी बदर में है ना उहद में, उन बेचारों को तो भी ये तक नहीं पता होगा कि ये पता नहीं आज किस जंग की बातें करने लग गए आते ही। तो उनके लिए फिर मैं आपकी भी सकीनत की बातें करना चाहूंगी चंद, सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि आपको सकीनत कैसे मिले, क्योंकि जब बड़ी प्यारी चीज मिल रही हो बाजार में और आपको पता ना ना हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मैं कहाँ से ये लाऊं, मुझे क्या मिलेगा, मैं इसको कहाँ यूज कर सकती हूँ, इसको लगाते किधर है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फिर लिख लीजिए चंद बातें। इसमें एक माँ, एक घरवाला, एक बच्ची, एक औरत, एक मर्द, कोई जंगे नहीं, कोई दीन के काम नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कोई पढ़ाना नहीं है। इसमें नथिंग इज विद इल्म एंड नॉलेज, जिसको आप सोचें कि शायद ये सिर्फ इल्म वालों को मिलेंगी। तो सकीना नाम है तस्लीम और रजा का। अल्लाह के फैसलों को दिल की खुशी बना लीजिए, ये है सकीनत, और मेरे नजर में ये दुनिया की जन्नत है। जन्नत में जाकर जो सुकून मिलेगा ना, वो दुनिया में अल्लाह की रजामंदी को, अल्लाह के फैसलों को कबूल करके मिल जाता है। तो रजामंदी क्या है कि दिल और दिमाग को अल्लाह के लिए यकसू कर लीजिए और आजाद कर लीजिए अपने आप को इर्द गिर्द से, बेफिक्र हो जाइए। जो अल्लाह करता है वो अच्छा होता है, और जिसको रजाए इलाही की ये दौलत मिल जाए, अल्लाह उसके बदले में उसके सीने में पाए जाने वाले खून के इस लोथड़े को गनी कर देता है, बेनियाज कर देता है, अमन और अमान डल जाता है, कनात और तवंगरी जैसी दौलत से मालामाल कर देता है, और उसके दिल को अपनी मोहब्बत के लिए यकसू बना देता है। फिर उसको अल्लाह की तरफ रजू करना आसान हो जाता है, और तवक्कुल के बुलंद मुकाम पे ऐसा बंदा पहुंच जाता है। इसको कहते हैं सकीना, यानी अल्लाह के फैसलों को दिल की खुशी बना लो। और आप देखिए लफ्ज सकीना है ना, और तस्लीम, सलीमा और सकना मिलते जुलते हैं। अरबी जुबान में दो लफ्ज आप पढ़ते हैं जो उर्दू में भी हम बोलते हैं, एक होती है सकीनत, सुकून, कुरान में भी इस्तेमाल हुआ, फ़ंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। गारे सौर में अल्लाह के नबी और अबू बकर के दिल पर भी सकीनत नाजिल की गई, और अभी इतना सुन लिया हमने, हुदैबिया के मौके पे सहाबा के भी दिलों में थी। और इसके अलावा एक लफ्ज होता है इत्मीनान, आप बोलते हैं ना इत्मीनान, ता मीम नून, तो ए मीम नून, हजरत इब्राहिम के तस्करे में आता है, वला किलियत मीन नकलबी। तो ये दो मुख्तलिफ लफ्ज उर्दू में भी आते हैं, लेकिन सकीनत का लफ्ज सकना से रुक जाना, रुक जाइए, जो हो रहा है होने दीजिए, अल्लाह की रजा को पाइए। जिस बंदे के दिल को अल्लाह की रजा मिल गई, सकीनत मिल गई, तस्लीम और रजा का वो परताव बन गया, वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाएगा, और फिर जितना वो मुकर्रब बनेगा उसका ईमान पुख्ता होता जाएगा। और याद रखिए कि जब दिल में ईमान ठुक जाता है ना, तो दुनिया में जन्नत है, फिर बंदे को दुनिया में रहकर जन्नत की खुशबुएं आती हैं, फिर अल्लाह की रजा उसको सारी दुनिया को राजी करने से ज्यादा बड़ी लगती है, और फिर ये रजा रिजवान में ढलती है। तो लिखिए, ईमान में चार चीजें चोटी की हैसियत रखती हैं, जिरवा, सिनाम, चार चीजें आज आप अपने दिल पर लिख कर ले जाएं। नंबर एक, हुक्म इलाही पर मैंने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना, जो अल्लाह का हुक्म बिस्मिल्ला, पांच नमाजें थी बिस्मिल्ला, अब तरावियां शामिल हो गई बिस्मिल्ला, और मैंने अल्लाह की शरीयत, और इसमें हर चीज आ जाती है, यानी हुक्म इलाही, इसमें अब लिखिए कुरान के सारे हुक्म, हदीस के सारे हुक्म, यानी शरीयत, शरीयत के नाम पर हर चीज को आपने मानते जाना है, मानते ही जाना है, और अल्लाह ताला आपको दे देगा ये सब कुछ। मैं अल्लाह का हर हुक्म मानूंगी, कोई बात नहीं, सही नहीं कर पा रही, अभी नया नया हूं, अभी वजू सही नहीं, नमाज सही नहीं, अभी कलमा नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के हुक्मों पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। और दूसरी चीज है कजा और कदर पर राजी रहिए, ये है आपकी जिंदगी के फैसले, आज फुलां फौत हो गया, आज फुलां बीमार है, कोविड पॉजिटिव आ गया, और ये हो गया, मुल्कों के वीजे नहीं लगे, बुलाकर होटल में रख दिया, 500 करोड़ डेली के हिसाब से खर्चा, टिकट भी लगी, ये राजी रहिए, इस हो के कजा और कदर पे राजी रहिए। आपकी जिंदगी में इफ्स एंड बट्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, डोंट वरी, हर एक को अल्लाह की तरफ से समझिए। और तीसरी चीज, तवक्कुल के बारे में इखलास से काम लीजिए, जो अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया उसमें खालिस हो जाए, खोटा तवक्कुल ना करें, कि कर भी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं पता नहीं होगा क्या। अच्छा पता नहीं, डॉक्टर तो ये कह रहे हैं वैसे होना तो नहीं, अच्छा अल्लाह तू कर दे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये ठीक होगा, अच्छा कर दे। अल्लाह कहते नहीं। और चौथी चीज है रब्बे करीम के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दीजिए। जितना ज्यादा आप इन चार चीजों पर अपने ऊपर मेहनत करेंगे आपके दिल में सकीनत आएगी। और आज असल में जो पा रहा है ना, ये डिप्रेशन वाले लोगों को सुनवाना चाहिए, एंग्जाइटी आंग्स के पेशेंट, और इसी तरह जो घबराते हुए जो खुदकुशियां करना, दे अटेम्प्टिंग टू टेक देयर जान, मारने वाले खुद को। तो अमाल में लिखिए एक जुमला, अफजल तरीन अमल अल्लाह ताला से राजी रहना है, इसको राजी बरजाए रब कहते हैं। सब्र तहम्मुल पर अगर किसी अमल को फौकियत हासिल होती तो वो रजा और खुशनुदी है, और रजा से बढ़कर कोई चीज नहीं। और याद रखिए यही रजा फिर रिजवान में बदलती है जो जन्नत में जाके मिलेगी। एक लेक्चर हुआ था लंदन में पिछले साल में शायद, रजा से रिजवान का सफर, पिन ड्रॉप साइलेंस में हमने वो लेक्चर किया था। आज भी वो जगह मुझे याद है, लंदन से थोड़ी दूर गए थे हम लोग, हाईवे कम एक जगह, बहुत प्यारे हमारे साथी हैं वहां। तो ऐसे लग रहा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं है। मेरा अपना फेवरेट लेक्चर है रजा से रिजवान तक, कैसे ये दर्जे मिलते हैं, पहले रजा मिलती है फिर रिजवान मिलती है, फिर बंदे को समझ आती है कि मैं आज तक अपने रब से नाराज रहकर अपना ही नुकसान करती रह गई। इमाम अहमद बिन हम्बल आजमाइशों से दो चार थे, पहाड़ों पे अगर वो कोड़े बरसे जो उनको डाले जाते थे तो वो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, लेकिन अपने बारे में क्या कहा करते थे, अल्लाह अकबर कबीरा। कहते थे अल्लाह ने मुझे इसके लिए चुना, अल्लाह ने मुझे अपने एक दीन के हुक्म के लिए खड़ा कर दिया, मैं इस पे राजी हूं। और वो इब्ने तैमिया जो जेल में कहा करते थे इन्ना जन्नती माई, वो तस्लीम और रजा की जन्नत थी कि मेरा रब मुझसे, मैं अपने रब की रजा पे जेल में भी खुश हूं। वो शाबे भी तालीम में भी राजी थे, और आज हम बुलंद कैसल और बड़े बड़े घरों में खुश नहीं है, इतने लविंग हस्बैंड और हमें वो अच्छे नहीं लगते। बच्चों को देख लीजिए, अल्लाह से राजी रहने वालों और उनके ग्रोह में शामिल होने की दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको मुझे उसमें डाल दे कि रदी अल्लाह अन्हु वरदू अन वलाइका हिज़्बुल्लाह। सूरह मुजादला की आयत 22 में अल्लाह ने अपनी रजा पे राजी रहने वालों को अपना गिरोह कहा, अल्लाह मुझे आपको उसमें डाले। और ये था सहाबा का लकब रदी अल्लाह अन्हु वरदू अन, ये सकीनत की वजह से मिला, तस्लीम और रजा। हर फैसला बिस्मिल्लाह, बोनलेस मीट बन जाइए, कचोके लगाओ, नाइफ लगाओ, फोक से काटो, सिरका डालो, गोश्त नहीं आगे से बोलता। और कहते हैं कि जिसको तस्लीम और रजा की दौलत मिल गई वो बुलंदोबाला मुकामात तक रसाई पाने में कामयाब हो गया। तो अल्लाह के सामने तस्लीम और रजा का रवैया अख्तियार करने वाले ही हिज़्बुल्लाह हैं। और जब आप इसको समझ जाते हैं ना तो फिर आपका दिल गवाही देता है कि मैं खुश हूं। जख्मों से चूर जिस्म खुश, एक बेटा गया आप दूसरा चला गया आप खुश, बेटा भी गया भाई भी गया शौहर भी चला गया आप खुश के अल्लाह के नबी ठीक है, ये किरदार थे हमारे। तो याद रखिए कि रजा से मुराद किसी चीज के हसूल पर दिली सुकून पहुंचना, राहत दिल का सामान मुहैया होना, चैन और करार मिल जाए, और हद से ज्यादा रजामंदी और खुशनुदी को फिर रजवान अल्लाह कहते हैं। और अजीम तरीन रिजवान अल्लाह की रजा और खुशनुदी है, ये जन्नत में जाके मिलेगी। सूरत आले इमरान में पढ़ कर आए आयत 12-13 को देख लीजिए, ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवात, दुनिया की 8-9 चीजों के बाद आखिर में क्या कहा, वरिद्वानल्लाहि अकबर, वरिद्वान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा वो है बेहतरीन चीज। तो सवाल यह है कि आप में किस दर्जे पे खड़ा होना चाहते हैं, बस उस दर्जे की कोशिश करेंगे, उसकी मेहनत करेंगे। और रजा ये भी है कि बंदा अल्लाह के अवामिर और नवाही के आगे सरे तस्लीम खम कर दे और राजी व रजा रहे। लोगों को लगे इसको हो क्या गया, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बीमार है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग दुखी से देखना चाहते हैं ये स्माइल दे रहे हैं, लोग इनसे कुछ सुनना चाहते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ सुनाना, मियाँ ने क्या किया, ससुराल ने क्या किया, घर टूट गया और ये आगे से कुछ बोल ही नहीं रहा। ये है खुशनुदी, ये है रजामंदी। और याद रखिए लिख ले, फहुवफी ईशतर रौ दिया, ऐसे लोग दिल पसंद जिंदगियों में होंगे, दुनिया में भी आज वो ही इंजॉय करे। इवन ये पिछला साल जो दुनिया के लिए कहते हैं वर्स्ट साल था इस सदी का, खुश थे, कोई गम नहीं आया। पूरे साल में अल्लाह ने एक तकलीफ नहीं दी, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको जिनके दिलों में तस्लीम और रजा थी। और वो बिलबुला रहे, नेमतों में पले बैठे खौफजदा हैं, और लॉकडाउन ऐसा किसको चाहिए नहीं, घरों में खाने पानी इतने भर लिए आपकी जगह न रही। वो तो लॉकडाउन था कि जिसमें दरख्तों के पत्ते खाए गए। तो याद रखिये, वो तो दिल पसंद जिंदगी जन्नत की होगी ना। यहां दुनिया में अगर इशत रौदिया चाहिए ना, तो फिर आपको तस्लीम और रजा लेनी है। और जिसको ये मिल गई, ये है वो खुशखबरियां, यब तगून फदलम मिनल्लाह वरिद्वाना, जो सुरफत के 29 में हम पढ़ेंगे। और युबशिरहुम रब्बुहुम बिरहमत मिन वरिद्वान, आपका रब खुशखबरियां देता है इस रजामंदी की। अल्लाह आपको मुझे राजी कर दे, राजी दे। मैं अक्सर लोगों को दुआ दे, बड़े दिल से दू तो कहती हूँ, अल्लाह आपको राजी कर दे और आपसे राजी हो जाए। इसमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से लेके आखिरत तक से छुपी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो दिल करार पकड़ लें, अल्लाह से राजी रहें। मुझे बेटे नहीं मिले, बेटियां नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ, शोहर क्यों, यहां की शादी होगी वहां की होगी, जलते रहें, आपका यही नसीब है। ईमान, तकदीर पे ईमान ना लाने की सजा होती है बेकरारी चीज। तो ठहराओ, कल्ब में ठहराओ की कैफियत को रजा कहते हैं, जो कजा और कदर पे आ जाए। फिर आप अल्लाह सारे मामले अल्लाह पे छोड़ देते हैं, मेरी क्या औकात, ये तो कम आया, मैं तो इससे भी ज्यादा डिजर्व करती थी, अल्लाह आपका शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी तकलीफ नहीं डाली, मैं तो इससे भी बुरी मुजरिम हूं। फिर आप ये सोचते हैं, फिर आप ये थोड़ी कहते हैं, भाई मी हाय अल्लाह का मैंने क्या बिगाड़ा, नऊज़ु बिल्लाह। और आप बीतियों पर नदामत से गुरेज करना, ये है तस्लीम और रजा। हम लोगों को आप बीतियां सुनाते रहते हैं, हाय और आंसू और नाक और नजला जुकाम इकट्ठा, और कहते हैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। और इसके हाथ न आने पर कफे अफसोस न मलना, इसको तस्लीम और रजा कहते हैं जी। और इसी तरह जुहद और दुनिया से किनारा कशी को भी तस्लीम और रजा कहा जाता है, यानी इस दुनिया से अब कुछ चाहिए नहीं, अल्लाह आगे का दे दे। फिर आप देखिएगा कि वो कहते हैं ना कि मर्जी मौला हमा तन उला, मेरे रब की जो मर्जी है ना, मैं उसी पर राजी हूं। फिर आप इसकी जीती जागती तस्वीर बनते हैं, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर आप इस दुनिया से लो लगाने की बजाय अल्लाह से लो लगाते हैं, फिर जंगलों में नहीं जाते, रहते इसी दुनिया में, लेकिन आपकी निगाह बुलंद होती है। तो आइए जरा से इस मुकाम को पाने के लिए इसके स्टेप्स और इसके दर्जात देख लें कि तस्लीम और रजा के अहकामात और दर्जात क्या। पहली बात तो लिख लें, या फिर चुगली है आपके मेरे ईमान की, एक इंसान के ईमान की कुव्वत या उसका जोफ, इसके मुताबिक ही तस्लीम और रजा मिलती है। यानी आपकी हर वक्त चुगली खाई जाती है कि आपके ईमान का लेवल क्या है। टेम्परेचर होता है ना, वजन, हम वेट नहीं दूसरे को बताते, टेम्परेचर नहीं बताते, हमारा ईमान दिख जाता है कैसे, आपके मेरे अमल से। तो कल्बी रजा जुई, इसके मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। आप इसको तीन किस्मों में डिवाइड कर लें तो समझ जाएंगे। पहली किस्म है रजाए वाजिब, वाजिब है ये रजा, लाजिम है, यू हैव टू डू। दूसरी होती है रजाए मुस्तहब, रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड। और तीसरी है रजाए महरम, हराम। वाजिब का मामला देख लीजिए, हकीकी रजा, ये इसमें फिर चार चीजें हैं। नंबर एक, अल्लाह को रब मानने पर राजी रहिए। नंबर टू, इस्लाम को इस्लाम मानी, पूरे इस्लाम मानिए, पिक एंड चूज नहीं, या फतू में नुना भी बादल किताब नहीं, और मोहम्मद सल्लम के रसूल होने पर राजी रहिए। ये वो बात है जिसको कहते हैं कि उसने ईमान की हलावत पाली, मिठास पाली, जिसने अल्लाह के रब होने पे, दीन के इस्लाम होने और नबी के रसूल होने पे रजामंदी का इजहार किया। चौथी किस्म इसमें है मसाइब और आलाम पर तस्लीम और रजा का मुजाहरा करना, इसमें फिर जजा और फजा नहीं है, फिर आपको इसमें कुछ नहीं है। और याद रखिये कि जो वाजिब है ना रजाएं, ये चार ही है। इसके बाद आप देखेंगे जब अल्लाह की जात के साथ बहसियत रब के अब रजामंदी का इजहार कर लेते हैं, फिर आप दीन इस्लाम के साथ बहसियत दीन के राजी हो जाते हैं, फिर मोहम्मद सल्लम के साथ बहसियत नबी और रसूल के तस्लीम और रजा का सबूत कर देते हैं, और फिर चौथी किस्म जिसमें आपकी जिंदगी का हर गम और हर ऑड आता है एबनॉर्मल, कजा कदर पर राजी हो जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुबहान तआला आपको वो दे देता है कि जो हर एक को नहीं देता। फिर अल्लाह की जात के साथ रजामंदी हो और अल्लाह की खातिर तस्लीम और रजा का मामला हो, आप इस पर राजी रहते हैं, और ऐसे ही लोग हैं दुनिया की जन्नत में। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो होंगे आपके खानदान में, इसके बाद अगर आप दूसरे दर्जे पे चले जिसको वाजिब के दर्जे पे कहते हैं ना, तो ये असल में तस्लीम और रजा के पिछले चारों मर्तबों में आला तरीन मर्तबा है। और वो क्या होता है कि इंसान गुनाहों पर रजामंदी, यानी रजाए क्या है, आप इसको जरा समझिएगा, कि जिसमें आप इन चारों किस्मों को जिसको आप लेकर चलते हैं ना, कम से कम एक खास लेवल तक तो राजी रहिए। अल्लाह को राजी पूरा नहीं होते तो कुछ तो रहिए। नबी और इस्लाम और दुनिया में जो फैसले आपके ऊपर हुए, पूरा नहीं हुए ना तो कम से कम आपको कुछ तो रहना पड़ेगा। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है, और मोमिन के अलावा किसी को ये नसीब नहीं। ये कम दर्जे के मोमिन के लिए कम अज कम वाजिब के दर्जे से हटकर मुस्तहब तो है ना, ईमान का ततिमा और तकमिला है। ये तो बड़ी लंबी बातें, मैं आपको क्या बताऊं इसकी बातें, बस चंद जुमले लिख लें कि अगर बंदा मुसीबत के जायल होने की दुआ करे तो क्या ये तस्लीम और रजा की मुनाफी है? बिल्कुल भी मुनाफी नहीं है। सवाल लोग करते हैं, क्या आप एक दुखी रहे? नहीं, आप दुख में भी खुश रहें, ये है, कोई बात नहीं। हालात बदलने की कोशिश कीजिए, बीमार हैं दवा खाइए, शौहर से बात नहीं बन रही काउंसलिंग कीजिए, बच्चे बिगड़ रहे हैं बच्चों की तरबियत की कोशिश कीजिए, लेकिन दिल मुतमईन है। यदि वही सकीना दिल पे पत्थर है, बर्फ है। आपने कभी वैक्स कराई हो, या कभी प्लकिंग लोग करते हैं और उनको देखा गया, या कभी अंडर आप कह लीजिए कि अपर लिप्स और कुछ इस तरह से छीन के बाल उतारे ना तो रेड हो जाती है स्किन, तो लोग क्या कहते हैं, बर्फ लगाओ, सुन हो जाते हैं ना, बस ये बर्फ लगाना है सकीना। आप बदल तो नहीं सकते, दर्द तो है, स्किन तो रेड हो गई आपकी वैक्स कराकर, लेकिन आप जरा सी बर्फ लगा लीजिए, और ये अल्लाह को माने बगैर होता नहीं है। एक और सवाल है कि क्या परेशानी और मशक्कत और रंजो अलम तस्लीम और रजा के मुनाफी हैं? नहीं, बशरियत के नाम पे इंसान की कुछ कैफियत हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। आप जजो फजा न करें। और एक सवाल और भी लोग पूछते हैं कि मैयत पे रोना धोना आंसू बहाना तस्लीम और रजा के मुखालिफ है? तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी के तो अपने बेटे की वफात हुई तो आप रो रहे थे, और आप कह रहे थे या इब्राहिम, ए इब्राहिम हमारी आंख रो रही है लेकिन हमारी जुबान पे यही है कि रदीतु बिल्लाहि रब्बन। बज़ाहर आपको दुख में भी कोई देखे लेकिन आपके दिल पे अजीब सी सकीना हो, अजीब सा एक सुकून एक खुशी हो, फिर आप रहे, फिर आपको अच्छा लगेगा। और ये पिछली चार चीजों के पुख्ता करने का ही नतीजा होगा, और इसके लिए आपको दीन सीखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कुरान थाम लीजिए, सकीनत का नुक्ता आगाज है आपकी मेरी जिंदगी का, और फिर आप देखेंगे कि जब आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाते हैं ना, तो उसके बाद फिर अल्लाह की रहमतें ऐसी टूटती हैं कि एक वक्त आता है आप एड़ियां उठा उठा कर देखते हैं वो कोई और मुसीबत नहीं आ रही, क्योंकि पिछली मुसीबत के बाद बड़ी खैर मिली थी, पिछली बीमारी के बाद रब मिल गया, अब क्या मिलना है, पिछली दफा कुरान मिल गया, अब क्या मिलना है। और फिर आप वाकई नाकाबिले तस्खीर हो जाते हैं। और वही बात जो मूसा के लिए हम पढ़ कर आए ना 16th पारे में, व फतन्ना का मूसा फतूना, ए मूसा तुझे आजमाइशों पे आजमाइशों में डालते डालते आखिर सुम्मा जीना, फिर आ गया तू एक अंदाजे पे, जब तू वाकई मेरे स्टैंडर्ड पे सेट हो गया फिर मैंने तुझे अपने दीन का काम दे दिया। तो अल्लाह ताला इस तरह से ठोक बजा के देख रहा है। कच्चे कील पे तो आप भी ना खड़ी खड़ी करें, कच्चे मेज पे आप कभी लैपटॉप ना रखें। तो ये एक मौजू पढ़ने के लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजू हम तकरीबन 4 से 5 क्लासेस में अपनी एडवांस क्लास नूरुनाला नूर में पढ़ाते हैं माशाल्लाह। कल उसका भी, परसों शायद उसको भी, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। उसमें ये पूरा एक टॉपिक चलते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स में से, तो मुझे याद है कि ये टॉपिक कम अज कम 3 या 4 दिन में मैंने उनको करवाया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग अपने नूरुल्लाह नूर के सेशंस में करते हैं। अल्लाह कबूल करे। गो थ्रू कर लीजिए चंद चीजों को कि जब तस्लीम और रजा आ जाता है तो इस सूरत हाल से 2-4 लोगों की फिर 4 मुख्तलिफ किस्में बन जाती हैं जो रंजो गम में आते हैं ना। एक वो होते हैं जो दिल की सख्ती के साथ सब्र के आदि लोग होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो चीखो पुकार करते हैं रोते धोते रहते हैं, तीसरे वो जो दिल की सख्ती के साथ भी वावेला भी मचाते हैं और शिकवे शिकायतें भी करते हैं, और इसी तरह चौथे वो लोग हैं जो काबिले सताइश लोग हैं, सब्र करते हैं और दूसरों के साथ रहम और करम का रवैया रखते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे उन्हीं में कर दे। तीसरी किस्म पे जाए ना रजाए मुहर्रम, وہ کون سی ہے؟ تسلیم و رضا کے مرتبے تک رسائی کے طریقے اختیار کرنا. یعنی پھر انسان کچھ ایسے درجوں پہ پہنچ جاتا ہے جو اس وقت یہاں جلدی میں آپ کو میں کور نہیں کرا سکوں گی, کیونکہ ہمارا اس کا جو سیشن کا وقت تھا وہ پورا ہو چکا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑا سا انتظار کیجئے, آپ کو یہ ساری دولت ملے گی. ایک دفعہ قدم رکھ دیجئے قرآن کے علم کے سفر پہ, آپ دن رات دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب کھولتا جائے گا, اور آخر پھر تسلیم و رضا کے حصول کے اسباب اور وسائل کو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں, جس میں ایک صبر ہے, اطاعت ہے, فرما برداری, عزم مستقل اور تحمل ہے. پھر اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں تسلیم و رضا کے درجے پہ فائز کر دے, اور اللہ کی حقیقی معرفت مانگیے, اللہ کی ذات عالی شان پر توکل کیجئے, قسمت کو برضا اور رغبت قبول کیجئے, فقراء اور مساکین کی صحبت میں بیٹھیے, ایسے کمزور لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے سے دل اللہ کی رحمت سے سکون میں آ جاتا ہے, اور اسی طرح سے موت کو یاد کیجئے, اور اعلیٰ حوصلے کے ساتھ چلتے جائیے اور تزکیہ نفس کی کوششیں کیجئے. اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اپنی بے بسی کا احساس رکھیے دل میں, اور سب سے بڑی بات تدبر اور تفکر اور غور و فکر کی عادت ڈالے. اس بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں, افلا یتدبرون, کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ اور آگے دلوں کے تالوں کی بات ہے, سورہ محمد میں جب پڑھیں گے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا. اور تسلیم و رضا اور صبر کے بیچ میں بھی ایک فرق ہوتا ہے. تسلیم و رضا صبر کا آخری درجہ ہے. پھر اس کے ثمرات اور فوائد بہت سے ہیں, مثلا جنت میں داخلہ, گناہوں کی بخشش, روز قیامت اللہ کی رضا ملتی ہے, حصول رزق میں برکت ملے گی, اللہ کی رحمت, مدد اور نصرت آئے گی, اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی. عبودیت کی منتہا ہے یہ, یعنی انتہا پہ پہنچنا ہے یہ عبودیت کے ناطے سے. مقدر پہ راضی رہیں گے, رب کریم کے عدل و انصاف پہ آپ بھروسہ کریں گے, یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. پھر شکر اور احسان کے جذبے پھوٹیں گے, مصائب اور علام سے چھٹکارا ہوگا. دیکھیے بچے کو انجیکشن لگے نا اور وہ جسم کھینچ لے تو اور درد ہوتی ہے. اکثر انجیکشن دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں, جسم ڈھیلا چھوڑ دو, تو لکھیے تسلیم و رضا, جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے, اس سے آپ کو سکون ملے گا. پھر بغض, حسد, کینے سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ جب آپ راضی جو رہ گئے اللہ کی رضا پہ تو پھر آپ کو کیا فکر ہے. اور حکمت الہی پر یقین آئے گا کہ میرے رب نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہی کیا ہوگا, اے رب جو کیا صحیح آکھے, یا رب جو کیتا ہی ٹھیک ہی کیتا ہی, ہاں وہ بزرگ یاد کر لے. پھر اس طرح نیک اور صالح لوگوں کی صحبت ملے گی, فطری بات ہے, آپ اچھے بن جائیں آپ کو اچھوں کا ساتھ ملنے لگے گا, اور نیکیوں میں زیادتی اور مزید اجر و ثواب ملے گا, اور پھر عزت اور شرف ملے گا, استغنا کی دولت ملے گی, اور لذت آشنائی ملے گی, جس کو کہتے ہیں کیا جب چیز ہے لذت آشنائی. پھر آپ تنہائی میں مسکرائیں گے, اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ آ گئے, آپ نے مجھ پہ یہ جو آزمائش ڈالی تھی نا وہ اس لیے ڈالی تھی, مجھے سمجھ آ گئے, آئی ایم ہیپی. آپ اس بیوی سے کبھی کسی شوہر کو ناراض ہوتا دیکھیں گے جو ہر بات پہ کہ جی جو کا, اور ساتھ اگر لفظ بھی سرتاج کا لگا لے, آج تو سرتاج کوئی نہ کہے لیکن چلیے سر تو کہہ سکتے ہیں, سر کے تاج نہیں تو. تو تسلیم و رضا ہر بھلائی اور اچھائی کی جڑ اور بنیاد ہے, جو اس بارے میں آپ ڈھونڈیں گے. رضامندی اور قناعت اور امید و بیم کے درمیان فرق ہوتا ہے. بس اپنے آپ کو ہائی لیول پہ رکھے, ایک ہوتا ہے میٹرک, ایک ہوتا ہے ایف اے, ایک بی اے اور ایک ماسٹرز. یہ رضامندی اور تسلیم ماسٹرز بلکہ رینگولر ہے اور پی ایچ ڈی ہے. تسلیم و رضا ہدایت اور استقامت کی روشن اور تابناک شاہراہ ہے. اللہ آپ کو مجھے اس پہ لے چلے, اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم میں خم کرنے میں ہی فلاح ہے. یہی سورت فتح کا پیغام ہے اور پورے پارے کا. اس کو پانے کے لیے دعا کر لیتے ہیں. آج کی دعا اسی پارے میں موجود ہے, سورۃ الاحقاف کی آیت 15. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ پڑھیں گے جہاں دعا بھی آئے گی تو وہاں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفسیر ملے گی. آج کی حدیث سکینہ سے متعلق ہے. علم کی محفلوں کی شان دیکھ لیجئے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2700. ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری سے روایت ہے. उन्होंने गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम अल्लाह को याद करती है, जिक्र इलाही में रहती है, मुराद ये था, इसे फरिश्ते घेर लेते हैं और रहमत इलाही इसे ढांप लेती है, इस पर सकीनत यानी तमानियत नाजिल होती है और अल्लाह इसका जिक्र अपने यहां फरिश्तों में करता है। आपको इन 25 पारों में महसूस हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, हर दिन मिलती है। और मुझे यहां फिर एक लेक्चर 10 साल पुराना मैनचेस्टर में एक इफ्तारी के दर्स में किया था, वो याद आ गया, मोमिन जन्नत का फूल, और हमारी वेबसाइट पे पहले तो मौजूद था, अब नई सेटिंग में मुझे नहीं अंदाजा, उसमें भी यही सारी बातें थी कि जन्नत का तोहफा है ये। जन्नत में जो फीलिंग्स होंगी ना हमारी, हर वक्त दिल की क्या कैफियत है, वो दुनिया में इल्म की महफिलों में होती हैं। अल्लाह आपको मुझे नसीब करे। देखिए, दिल की बहुत सारी किस्में हैं पारा 26 में। मसलन सूरह मोहम्मद 16 में अलकलबुल मतबू अलैह का तस्करा है, फिर मोहम्मद 20 में अलकलबुल मरीद का जिक्र है, फिर इसी सूरत में 24 में अलकलबुल मुकफल का जिक्र है। आप देख रहे हैं एक सूरत में तीनों नेगेटिव दिल है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ निफाक की बातें हैं। फिर इसी में 29 में अलकलबुल मरीद का दोबारा तस्करा है, फिर सूरत फत की आयत 4 में कलबुल मुतमईन, जो आपका दिल इंशाल्लाह है और आगे जाके और बनता जाएगा। सूरत फत की 11 में अलकलबुल मुनाफिक का तस्करा भी है, फत 12 में अलकलबुल मुनाफिक का दोबारा तस्करा है, फत 8 में अलकलबुल साकिन यानी सकीनत वाले दिल का तस्करा है, और फत 26 में अलकलबुल जाहिल का तस्करा है, जो हमीयतुल जाहिलिया की बात करता है, और फिर हुजरात आयत 3 में अलकलबुल तकी का जिक्र है, और फिर हुजरात 7 में अलकलबुल मोमिन का जिक्र है, हुजरात 14 में अलकलबुल मुस्लिम बिगैर ईमान का तस्करा है, 37 में अलकलबुल मुनीब का तस्करा है। कुछ पारों में तो एक एक दो दो दिल थे, और एक दो पारे ऐसे भी गुजरे कि कोई भी नहीं था दिल, और यहां आप देख रहे हैं कितने अहम पारे हैं। इसी तरह इस बारे में हिदायत से मुतल्लिक जो आयात हैं, अल्लाह अकबर, 9 आयात आपको दिखेंगी पारा 26 में, जिसमें हिदायत का मौजू आया गया, अलाह काफ 10, 30, मोहम्मद 5, 17, 25 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फत 2, 20, 28, और हुजरात 17। एक जगह है ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, फिर लिमा बैना यदैही यहदी सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वल्लज़ीन अख्तदौ ज़ादहुम हुदा मा तबय्यन लहुमुल हुदा वयहदीयक सिरातम मुस्तकीमा वयहदीयकुम सिरातम मुस्तकीमा अरसल रसूलहु बिल हुदा अन हदाकुम लिल ईमान। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा दे। तो ये थी आपकी डिटेल्स। अब चलते हैं पारे के ट्रांसलेशन पर और हल्की फुल्की वजाहत। सूरत अल अहकाफ से पारा शुरू होता है, 46 नंबर की सूरत है, 35 आयात है, और अल अहकाफ टीलों को कहते हैं जो सैंड्स के बने होते हैं सहराओं में, एक कौम की तरफ इशारा है। इस सूरत का बुनियादी मजमून है अकायद और अमाल की इसलाह का मुअस्सर बयान। इस सूरत में आपको तौहीद की दावत, शिर्क की मजम्मत, रिसालत की हकानियत और तारीख से इबरत भी मिलेगी, अच्छे किरदार की अजमत, बुरे किरदार की खबासत, और उखरवी जजा और सजा की कैफियत बहुत ही मौसर असलूब में दिखेगी, और खास तौर पर वो चीजें जो इंसान के अकायद और अमाल की इसलाह के लिए काफी हैं। आयात का तज्जिया यानी ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं, तो 1 से 6 आयात शिर्क की मजम्मत, 7 से 12 मुश्रिकीन मक्का के साथ कश्मकश, 13 से 16 मिसाली किरदार, 17 से 20 बुरा किरदार, 21 से 28 तारीख से इबरत, 29 से 32 जिन्नात की ईमान अफरोज दावत, और 33 से 35 अहवाले आखिरा, यानी टोटल 35 आयात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मानी का एक खजाना है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हमीद। हरूफ मुकत्तात से शुरू हुई आयत, पहली 10 आयतों का टॉपिक लिखिए मकसद हयात, और साथ ही साथ पहली 4 आयतों में आपको खास तौर पे इसमें एक मजमून मिलेगा, क्या शिर्क के जुर्म का कोई जवाब है? इस सोच को सामने रखते हुए सुनिएगा। इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले की तरफ से है। हमने आसमानों और जमीन और इन दोनों के दरमियान की तमाम चीजों को बेहतरीन तदबीर के साथ ही एक मुद्दत मुअय्यन के लिए पैदा किया है, और काफिर लोग जिस चीज से डराए जाते हैं मुंह मोड़ लेते हैं। आप कह दीजिए, भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है या आसमानों में इनका कोई हिस्सा है। अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले ही कोई किताब या कोई इल्म जो नकल किया जाता हो मेरे पास लाओ। अच्छा जी, मैंने शायद गलत बोल दिया लफ्ज़। मैं आयत का शुरू में फिर दोबारा पढ़ लेती हूँ। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मैंने शायद हमीद बोल दिया था, इसको ठीक कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। आयत 4। आप कह दीजिए, भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है या आसमानों में इनका कौन सा हिस्सा है। अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले ही कोई किताब या कोई इल्म है जो नकल किया जाता हो मेरे पास लाओ। और इससे बढ़कर और गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क्यामत तक इसकी दुआ कबूल न कर सके, बल्कि इनके पुकारने से महज बेखबर हो। और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये इनके दुश्मन हो जाएंगे। जरा सा सोचिए इस जुमले को। और इनकी परस्तिश से साफ इनकार कर जाएंगे। और इन्हें जब हमारी वाज़े आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकिर लोग सच्ची बात को जबकि इनके पास आ चुकी कह देते हैं कि ये सरीख जादू है। क्या वो कहते हैं कि इसे तो इसने खुद घड़ लिया है? आप कह दीजिए कि अगर मैं ही इसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। तुम इस कुरान के बारे में जो कुछ सुन रहे हो इसे अल्लाह खूब जानता है। जो कुछ तुम कह सुन रहे हो इसे अल्लाह खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफी है, और वो बख्शने वाला और मेहरबान है। आप कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा पैगंबर तो नहीं, न मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। जरा सा गौर फरमाइए, नबी अपने बारे में क्या कहते हैं और आज उम्मत गलूफ में आकर क्या कुछ कह देती है। मैं तो सिर्फ इसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है, और मैं तो सिर्फ अलल ऐलान आगाह कर देने वाला हूँ। आप कह दीजिए, अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसे ना माना हो और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी गवाही भी दे चुका हो और वो ईमान भी ला चुका हो और तुमने सरकशी की हो, तो बेशक अल्लाह ताला जालिमों को राह नहीं दिखाता। ये है जिन अल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। आयत 10। यानी यकीनन अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, तो सवाल यह कि जालिम कौन? नंबर एक, कुरान को पहचान कर ईमान ना लाने वाले, और नंबर टू, तकब्बुर करने वाले, और नंबर तीन, हक कबूल करने की कुदरत रखने के बावजूद हक को ठुकरा देने वाले। अल्लाह ताला आपको मुझे जुल्म से बचा ले। और आपने देखे कैसे सवाल उठाए गए, और हर सवाल का जवाब है कि इस दुनिया में शिर्क का कोई जवाब नहीं है। जिसने भी शिर्क किया उसने बिला जवाज किया, बाप दादा के नाम पे किया, खानदानी रिवायात के नाम पे किया। अकल इस्तेमाल आज भी कोई करे तो जिंदगी में शिर्क की तो कोई तुक नहीं है। आपने आयत 5 से 6 में देखा कि रोजे क़यामत मुश्रिकीन के माबूद इनके दुश्मन होंगे। अगर आप वाकई किसी को कुरान की हक्कानियत दिखाना चाहे तो ये आयत आप सुनवा सकते हैं कि देखिये आप जिनको भी पुकारते हैं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि कुरान को तो सभी मानते हैं, इल्हामी किताब तो मानते ही हैं, ना भी माने तो अखलाकी किताब तो मानते हैं। तो याद रखिए, मुश्रिकीन के साथ क्यामत के दिन क्या होने वाला है? बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अल्लाह ताला हमें गैर अल्लाह के सहारों से हटाकर अल्लाह को सहारा बनाने वाला बना दे। फिर आप देखिए कायद 7 से 8 में मुश्रिकीन के एतराजात जो कुरान पाक पढ़ते उसको देखा। उसकी रोशनी में मैं ये समझ आ गया कि हर दौर में लोग कुरान पढ़ने और कुरान पढ़ाने वालों पर इतराजात करते रहेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं। जिसके पास हक होता है उसको बहुत यकीन होता है और कॉन्फिडेंस होता है। और आयत 9 और 10 में नबी सल्लम के सच्चे नबी होने के दलाइल थे और आपकी जुबान से कहलाया गया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और सच्चा हूँ। अल्लाह आज उम्मत को इसी कन्विक्शन के साथ नबी सल्लम का पैगाम पहुंचाने वाला बना दे और वी आर नॉट एम्बेरस्ड अल्लाह के नबी पे के कोई कार्टून बनाए, कोई बुरा भला कहे, कुछ भी कह दे, हमें यकीन है हमारे नबी सच्चे थे। आपको पता है कि अल्लाह के नबी के बारे में अब्दुल्ला बिन सलाम जो अपने वक्त के जियो आलिम थे, यहूदी आलिम थे, फिर मुसलमान हुए तो आजमाया करते थे, तो जब इन्होंने पहली बार अल्लाह के नबी को देखा मदीना में आकर तो कहने लगे इन नहाजल वजह लैसा बिवजहिन काज़िबिन, बिला शुबा ये चेहरा कोई झूठा चेहरा नहीं। और याद रखिए नेकियों का एक असर होता है, बंदे के चेहरे पे लिखा होता है कि ये झूठा बंदा नहीं है। आगे आयत नंबर 11, खुद पसंदी हिदायत की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, देखिएगा जरा। वक़ाल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनु लौ काना खैरा, और काफिरों ने ईमानदारों की निस्बत ये कह दिया कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग इसकी तरफ हमसे सबकत न कर पाते, और चूंकि उन्होंने कुरान से हिदायत नहीं पाई बस ये कह दें कि कदीमी झूठ है, यानी जिनको नहीं मानना होता वो इस तरह से झुटला देते हैं। क्या पता चला कि ये कुरान हकीकत में हिदायत की तरफ बुलाने वाला खूबसूरत एक नुस्खा है जो इसको पकड़ ले। फिर आयत नंबर 12 से 14, असल कीमत इस्तकामत की है, कुरान हकीम की अजमत का भी तस्करा है इसमें और इस्तकामत की बात है, और इस्तकामत में तो क्यामत है। कैसे, आइए देखिये। वमिन कबली ही किताब मूसा इमाम व रहमा, और इससे पहले यानी कुरान से पहले इसके नजूल से पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत थी, और ये किताब है तस्दीक करने वाली अरबी जुबान में ताकि जालिमों को डराए और नेक कारों को बिशारत हो। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, आपने कह दिया, दो पारे पीछे पढ़कर आए थे ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, तो आज ऐसे लग रहा है जैसे सबक पूछा जाए कि याद कर लिए। अल्लाह करे कि हमें इस्तक़ामत का सबक जुबानी याद हो जाए, देख देख के ना पढ़ना पड़े, दूसरों को खुद ही याद हो जाए। क्या फरमाया, ऐसे लोग जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, ना तो उन पर कोई गम होगा ना खौफ होगा, यानी ऐसे लोगों को अल्लाह सुबहान तआला बेगम कर देगा, टेंशन फ्री फियर फ्री लोग हो जाएंगे, और ऐसे लोग होंगे कि जिनको हकीकत में दुनिया में सकीनत मिलेगी और सुकून और खुशी का एहसास होगा। ये तो अहले जन्नत है जो सदा इसी में रहेंगे इन आमाल के बदले जो वो किया करते थे। क्या पता चला कि दुनिया में ही अल्लाह तआला जन्नत की हवाएं चला देता है, खुशखबरियां मिलने लग जाती हैं जब किताब के साथ ताल्लुक जुड़ता है, जो हकीकी बात है, मन घड़त बात नहीं है, कल भी वही आज भी वही, एक शोशा न बदला जबर जेर न बदली, इतनी फसीह जुबान पढ़कर बंदे का दिल गवाही देता है कि इसको पढ़ने के बाद अब और क्या पढ़ूं, और सब पढ़ा हुआ वो पीछे करके अब मैं इसको अपनी जिंदगी में आगे लाऊं। दुनिया की तालीमात हम ज्यादा लेते ही रहते हैं कि चलो और कुछ कमाने लगे, एक दफा पूरे फोकस होकर सकीनत कल्बी पाने के लिए कुरान को फातिहा से नास्तक करना है। आज उम्मत को ये पैगाम दीजिए, किसी से भी पढ़ ले, मैं नहीं कहती हमसे पढ़े, किसी से पढ़ ले, लेकिन एक दफा कुरान जरूर पढ़े, फिर बताइएगा कि दिल की कैफियत क्या है। फिर आप देखिए आयत 13 से 14 में आपने एक मिसाली किरदार देखा है, और ये वो किरदार है जिसको अपने रब के हर फैसले पर यकीन आ जाता है, वो फिर रब की पूरी इताअत करता है, और यही है जो आज के पारे का थीम है, तस्लीम और रजा का पैकर, न माजी का गम न मुस्तकबिल के अंदेशे। ऐसे लोग दुनिया में भी जन्नत है और आखरत में भी, और इमाम इब्ने तैमिया कहा करते थे कि आखरत की जन्नत में जाने से पहले दुनिया की जन्नत से गुजरना पड़ता है। ये ऐसी जैसे आप में से कोई कहे कि इस मेन डोर इस हॉल के डोर से मुझे बाहर कर दें, मुझे यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको निकाल दिया जाए तो बाहर तो गली है गांग है, वहां जाकर फंस जाएंगे, फिर आपको समझ आएगी ओहो कमरे में तो बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए थे। और अगर आप ये कह दें कि मुझे मेन डोर से बाहर जाने दीजिए तो इस डोर से तो खुद ही गुजर जाएंगे, तो जन्नत पाने वालों के रास्ते में दुनिया ऐसे ही आ जाती है जैसे ये दरवाजा बाहर जाने वाले के लिए आता है। अल्लाह हमें इस बात का यकीन दिला दे। आयत 15 से 18, जवान औलाद के फितने, और खासी तौर पे ये बड़ी रकीकुल कल्ब आयतें हैं, रिक्कत कल्बी वाली 40 साल की उम्र के लोगों को तो अब जरा सा कान धर के सुनना पड़ेगा। और आप कह सकते हैं कि अल्लाह का बंदों के लिए अजीम तोहफा एक ईमान अफरोज दुआ की सूरत में। आप देखेंगे अभी आयत 15 में वालदैन के साथ उसने सुलूक की तलकीन भी है और खास तौर पर बच्चे की पैदाइश और परवरिश के हवाले से माँ की मुशक्कत का जिक्र है। आइए देखते हैं, वबस्सईन अल इंसान अबी वालिदैही एहसाना, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया है। इसकी माँ ने इसे तकलीफ झील कर पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके इसे जना। इसके हमल का और इसके दूध छुड़ाने का जमाना 30 महीने है, यहां तक कि जब वो अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुंचा तो कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू खुश हो जाए और तू मेरी औलाद को भी सवाले बना। मैं तेरी तरफ रजू करता हूं और मैं मुसलमानों में से हूं। खूबसूरत द्वार दुआओं में से तरतीब के साथ देख रहे हैं तो 41 नंबर की दुआ है। आप देखिए कि इस दुआ में दो जनरेशन की बात है, माँ बाप का भी और औलाद का तस्करा है। हदीस पढ़े तो आपको माँ का हक बाप से 3 गुना ज्यादा दिखता है। इस आयत में आपको माँ के 3 मुकाम या माँ की 3 कुर्बानियों का तस्करा मिला, यानी जिसने जितनी मुशक्कत सही उसका हक भी उतना ज्यादा है। और अगर अल्लाह ताला इसको ना बयान करता तो कभी ना कोई मानता कि औरत के लिए प्रेगनेंसी से लेके फीडिंग तक के मरहले जानलेवा भी हो सकते हैं और तकलीफें भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में इसी तरह रखा, और कहते हैं रिवायत में आता है कि अबू बकर सिद्दीक ने ये दुआ मांगी थी तो उनके बाप अबू कुहाफा भी मुसलमान हो गए और उनका बेटा अब्दुर्रहमान भी मुसलमान हो गया। और अगर आप इस पे गौर करके देखें तो आपको इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ ये बात दिख रही है कि रब्बी औज़ेन या नश्कुरा नेमत अल्लती अनमत अलैया वला वालिदैया वनामल सालिहन तरदाहु अस्लिख ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, के इंसान इस उम्र में अमूमन दो नस्लों को साथ लेकर चल रहा होता है। अल्लाह ताला फरमाते यही वो लोग हैं जिनके नेक अमल तो हम कबूल फरमा लेते हैं और जिनके बद अमाल से दरगुजर कर लेते हैं, ये जन्नती लोग हैं इस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता है। अब इसके बरक्स जरा से इस पूरे सिनेरियो को सुने, फिर चंद बातें करेंगे। और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं तुमसे तंग आ गया, हाईलाइट कीजिए, उफ तंग आ गया, चीना तो उभर कर दिया तुमने मेरा, तुम मुझसे यही कहते रहते हो कि मैं मरने के बाद फिर जिंदा हो जाऊंगा, मुझसे पहली भी उम्मतें गुजर चुकी हैं, वो दोनों बार जनाबे बारी ताला में फरियादें करते हैं, कौन माँ और बाप, और कहते हैं तुझे खराबी हो तू ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा हक है। वो जवाब देता है ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं। बिगड़ी हुई औलाद के जुमले लिखे जा रहे हैं इधर। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के अजाब का वादा सादिक आ गया, इन जिन्नात और इंसानों के गिरोहों के साथ जिनसे पहले गुजर चुके हैं, यकीनन ये नुकसान पाने वाले थे। क्या पता चला, माँ बाप और बच्चों का ताल्लुक एक अजीब सा ताल्लुक है, दुनिया में आने से पहले बन जाता है और दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटता। पहले तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इन दोनों इम्तिहान के पर्चों में कामयाब करें, औलाद होने के नाते माँ बाप के हक सही दें और माँ बाप होने के नाते औलाद के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। फिर आप देखिए कि 40 साल की उम्र का तस्करा है, पुख्तगी की उम्र होती है। इस मरहले पे ये दुआएं मांगना इस बात की दलील है कि माजी में जो भूल चूक हो गई, जो माँ बाप की हकतलफियां हुई, उससे इंसान अपने आप को मुबर्रा करना चाहता है। और आपको भी अगर आप 40 से ऊपर हैं या उसके अराउंड है तो ये दुआएं याद कर लेनी चाहिए। और खास तौर पे इसमें जो रब्बी औज़ेन या अनशकुरा नेमत अल्लती है ना, वो कौन सी है कि मैं नेकियां कर सकूं, मैं अपने माँ बाप का सदका जारिया बन सकूं, उनकी नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकूं और फिर अल्लाह की तरफ रजू भी है। और आयत 16 में आपने देखा है कि बिशारत है, ऐसे नेक बंदों के गुनाहों से अल्लाह सरफे नजर फरमाएगा। जवानी में हर एक से ऊंच नीच हो जाती है, आपके बच्चों से अगर हुई अभी बैठे बैठे माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दें। और अगर आपके बच्चे जवानी के नशे में कुछ कर देते हैं तो आप भी जरा दिल बड़ा रखा करें, हाँ उनकी तरबियत करें जैसे अल्लाह के नबी ने सहाबा की थी, कि ऐसी बात जो समझ भी नहीं आई तो उस पर ना बोले। अपने बच्चों को इस तरह का बना के रखिए कि आपका हर फैसला उनको कबूल हो, चाहे आप उनको समझ आए या ना आए। और अल्लाह ऐसे लोगों की नेमतों को, नेकियों को कबूल करके जन्नतों की खुशखबरियां भी देते हैं। और फिर इसके बाद अब देखिए कि आयत 17 से आगे तक जो 19 अब आगे हम पढ़ेंगे भी बुरा किरदार और उसका बुरा अंजाम है। बदनसीब है वो औलाद जो माँ बाप के आगे स्टोन से बात करे। तीसरा मुकाम आपको याद आ रहा है सूरत 15वें पारे से लेके अब तक, सूरत बनी इसराइल में उफ की बात थी, पीछे दो दिन पहले भी गुजर गया, आज फिर देखिए क्या अल्लाह दिखाना चाह रहा है। पलट पलट कर अपने ताल्लुकात की इस्लाह चाहो, और ऐसे बच्चे जो अल्लाह से नहीं जुड़े होते वो माँ बाप से नहीं जुड़ते, यहाँ यही पैगाम है। बिगड़ा हुआ बच्चा था जो माँ बाप की दुहाइयों पे भी कान नहीं दे रहा, तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे जुड़े तो अल्लाह से जोड़िए। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को कुरान सिखा दो, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। अब इस सारे सिनेरियो को सामने रखकर सुनिए आयत 19 से 20, जैसा काम वैसा अंजाम, जैसी करनी वैसी भरनी, और खास तौर पे कुफार को नेकियों का बदला दुनिया में मिल जाता है, ये आयत उसकी दलील है। वली कुल्लिन दरजातो में मा अमिलू, और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे, ताकि वो इन्हें इनके अमाल के पूरे बदले दे और इन पर जुल्म न किया जाएगा। और जिस दिन काफिर जहन्नुम के सिरे पर लाए जाएंगे, कहा जाएगा तुमने तमाम नेकियां यानी तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में ही बर्बाद कर दी और इनसे फायदे उठा चुके, यानी काफिर को दुनिया में जो नेमतें मिलती हैं ना वो उसके अच्छे कामों का बदला होती हैं, यानी उसका मामला साथ ही साथ नकद के साथ चुका दिया जाता है। बस आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इस बायस के तुम जमीन में नाहक तकब्बुर किया करते थे और इस बायस भी के तुम हुक्म अदविली करते थे यानी बात नहीं मानते थे। तो क्या पता चला कि आज हम कभी परेशान होने लगते हैं कि लोगों को कुफर के साथ इतना कुछ मिल रहा है तो आज मुसलमानों को इस्लाम के साथ क्यों नहीं मिल रहा? तो उसकी दलील यहां ले लीजिए कि अल्लाह काफिर का मामला नकद पे रखता है, मोमिन का मामला कभी कभी उधार पे ले आता है ताकि उसको वहां जाकर वो दे कि फलातालम नफ्स माफिया लहुम मिन कुर्रति आयुन वाली कैफियत हो जाए कि बंदे ने कभी उसका तस्वुर भी ना किया हो। और इसके बाद अब आगे कुछ किस्से शुरू होंगे, और खास तौर पे ये सूरत अल-अहकाफ चूंकि कौमे आद की का एक दूसरा नाम है तो इनका तस्करा देखेंगे हम आयत 21 से 28 में। वस्कुरखा आदिन इस अनजरा कौमहु बिल-अहकाफ, कौमे आद का अंजाम है। और आद के भाई को याद कीजिए, कैसे याद करें? तारीख के बुरे किरदार की एक मिसाल के तौर पर। कौम आद की रविश अल्लाह बयान फरमा रहे हैं, क्या जबकि इसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, यकीनन इससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं और इसके बाद भी, ये कि तुम सिवाय अल्लाह ताला के किसी और की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से खौफ खाता हूँ। कौम ने जवाब दिया कि आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने माबूदों की परस्तिश से बात रखें, बस अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब का आप वादा कर रहे करते हैं इसे हम पर डाल दीजिए। हजरत हूत ने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वो तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। हूत ने कहा अलैहिस्सलाम, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वो तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। फिर जब उन्होंने अजाब को बारिश बादल की सूरत में देखा अपनी वादियों की तरफ आते हुए तो कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाला है। बज़ाहर तो यही लगा लेकिन हकीकत के नहीं, दरअसल ये कबो अबर है जो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को हलाक कर देगी। बस वो ऐसे हो गए कि सिवा इनके मकानात के और कुछ दिखाई न देता था, गुनाहगारों के गिरोह को हम ऐसे ही सजा देते हैं। और बिल यकीन हमने कौम आद को वो ताकत यानी कुदरत और मीन्स और सोर्सेज और रिसोर्सेज दिए थे जो तुम्हें तो दिए भी नहीं, यानी आज ना सोचो कि आज बड़ी तरक्की है, उस दौर में भी बहुत कुछ मिला था उनको। और हमने इन्हें कान आंखें और दिल दे रखे थे लेकिन इनके कानों और आंखों और दिलों ने इन्हें कुछ भी नफा न पहुंचाया, जबकि वो हमारी आयतों का इनकार करने लगे। और जिस चीज का मजाक उड़ाया गया था यानी जिस चीज का मजाक उन्होंने उड़ाया था वो क्या हुआ? और जिस चीज का वो मजाक उड़ाया करते थे वही इन पर उलट पड़ी। और यकीनन हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियां तबाह कर दी, हमने तुम्हारे आसपास की बस्तियां तबाह कर दी और तरह तरह की हमने अपनी निशानियां बयान कर दी ताकि वो रुजू कर ले। बस कुर्ब इलाही हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना माबूद बना रखा था उन्होंने इनकी मदद क्यों ना की, बल्कि वो तो इनसे खो गए, बल्कि दरअसल ये महज झूठ और बिल्कुल बोहतान था। ऐसे लगता है कि एक मुकदमा दायर किया जा रहा है एक कौम के खिलाफ, एक चार्जशीट है जिसको लोग अगर महसूस कर लें तो अल्लाह सुभान व तआला आज मुझे आपको भी अपने अपने बुरे बुरे काम और गलत चीजें जो आज हमसे किसी भी वजह से हो जाती हैं उस पे गौर व फिक्र की दावत देते हैं। किस तरह से दावत देते हैं कि आप और मैं जितना ज्यादा आज अल्लाह की पकड़ से बचने की कोशिश कर सकते हैं वो चीज बाद में फायदा नहीं देगी। आप और मैं अपनी जिंदगियों को देखें, आज के दौर में मुसलमानों के हालात को देखिए और किस तरीके से अल्लाह सुबहान तआला इन सारी चीजों को सामने लाते हैं जो आपको मुझे बता रही हैं बातें, और वो क्या हैं कि हम अपनी इस्लाह के कितने हरीस हैं, कितनी हमें अपनी फिक्रें हैं और कहां तक हम अपने आप को लेकर चलते हैं। ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हशर के दिन नशर न करना। आपको मुझे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर वाकई कोई चीज दी ऐसी कि जिसको पाकर आप और मैं अल्लाह ताला का कुर्ब पा सकते हैं तो कुर्ब पा लें, कोई ऐसी चीज दी है जिसको छोड़कर अल्लाह का कुर्ब पा सके तो उसको पा लीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला की रजा को पाना आपकी मेरी जिंदगी का गोल बन जाए, इससे बड़ी कोई और चीज नहीं है। फिर इसके बाद एक छोटी सी चीज देख लीजिए कि इन कौमों की मिसालें बयान करते हुए बार बार हमें ये सोचना चाहिए कि अगर इस कुरान के बाद कोई और किताब होती तो आज हमारा जिक्र कैसा होता। उन्होंने एक रसूल की बात मानी ना और एक दो शिर्क का और एक दो गुना था, आज उम्मत मुस्लिमा तो बहुत सारी चीजों का मजमुआ बनी फिरती है। और कौम आद एक अजाब बारिश को आता बादल को आता देकर खुश हुई, जबकि अल्लाह के नबी जब बादल बनता देखते तो परेशान हो जाया करते थे। आप कहते थे, आयशा मुझे खौफ आता है कि कहीं कौम आद वाली आग हम पर भी ना बरस जाए, अल्लाह ताला बचा के रखे। और अल्लाह ताला तबाहशुदा कौमों की बातें हमें बताता है कि अगर आज तुम्हें कोई आसमानी आफत आती दिखे तो खुशियां ना मनाओ। बास लोग बड़े चौड़े होकर दिखाते हैं कि तूफान आ रहा है समंदर में तो हम जाकर उधर विक्ट्री का साइन बनकर दिखाएं। डरते रहिए, आज कोरोना का कोई मजाक ना उड़ाए, कोई इसके बारे में उल्टी सीधी बातें ना करें, हमें नहीं पता क्या होगा। जब दिल जिंदा होते हैं तो ऐसी जगहों से जाकर लोग इबरत लेते हैं और रोते हुए गुजरते हैं, और जब दिल मुर्दा होते हैं तो चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो या सिंध वैली हो, वहां आपके अपने टैक्सेस का एक बड़ा हिस्सा मुकर्रर कर दिया जाता है कि जाकर महकमा औकाफ को कहो कि इधर फन प्लेसेस बनाओ और लोगों के ट्रिप्स लेकर आओ। ये मुर्दा दिलों की बातें अल्लाह ताला बचा के रखे। किसी ने कहा कि एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। यानी आज गफलत और जहालत के साथ पिछली चीजों को हम देखते हैं, कुरान पढ़ने वाला कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि आपने ये भी एक चीज 24-25 में देखी कि जिससे वो रहमत समझ रहे थे वो जहमत साबित हुई। तो आज हम जिसको जहमत समझ रहे हो सकते हैं इसमें रहमत हो। कोरोना का आना किसी को अच्छा नहीं लगता और अल्लाह इसको रात से पहले खत्म कर दे, लेकिन इस जहमत में खैर हो सकती है। आसान तक रहू शैयन बहुआ खैर उल्लकुम। तो जिंदगी में तस्लीम और रजा के ग्लासेस जब लगा लिए जाए ना तो फिर रहमत और जहमत का फर्क बड़ी खूबसूरत तरीके से समझ आ जाता है। बस राजी रहें। और ये याद रखिये, कोई भी कहे, कोई भी कुछ काम हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वो काम उसके बगैर नहीं हो सकता। और इसमें अशद्द कुव्वा की बात हुई तो सुपर पावर थी ये अपने वक्त की। आयत 26 को हाईलाइट करना चाहें कि हलाक होने वाली कौमें आज की कौमों से ज्यादा ताकतवर थी। आज आर्टिफिशियली स्ट्रांग है, कल मजबूती जिस्मानी तौर पे और वसाइल दूसरी तरह से नेचुरल मीन्स के साथ बहुत बड़े थे। और एक और बात आयत 27-28 में जो देखी कि खुद साख्ता माबूदों ने फिर तबाही से क्यों ना बचाया। हर कौम ने कुछ न कुछ बुत बनाए होते थे, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आई तो वो किधर चले गए। आज भी देखिए किधर हैं सारे मुश्किल कुशा। एक साल से उम्मत जो है इस परेशानी में, पूरी इंसानियत का दुख दर्द है। आप चले गोरे तो नहीं मानते होंगे, आप उनको भेजिए कि आप वैक्सीन बनाएं, हम अपने कुछ बुजुर्ग भेजते हैं और हम अपनी कुछ आपको टिप्स देते हैं, फला मुश्किल कुशा वो मददगार। सारे बाबे किधर चले गए, सारे करनी वाले और मुश्किलात से निकालने वाले किधर चले गए। ये कितना बड़ा सबूत है शिर्क को मिटाने का। आज हमारे वो भाई बहन जो किसी भी अकीदे में ऐसे गुमे थे, कोई बात नहीं, वो नसमझी थी, कुरान नहीं था, आपने गलत सोच के नहीं किया, अल्लाह आपको माफ कर देगा। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई कुछ कोई दम होता, कोई दुरूद के साथ, कोई ऐसी चीजें कोई किसी जंतर मंतर से कर सके होते तो आज तक ये मुसीबत टल चुकी होती। तो याद रखिए ये सिर्फ ढकोसले हैं, अल्लाह आपको मुझे बता दे। अब आगे बहुत ही प्यारी, जिसको आप कहते हैं जिन्नों की कहानी, जिसको आज भी बच्चे बड़े शौक से सुनते हैं जिन्नों की कहानियां स्टोरियां। तो आय 29 से 32 में जिन्नात और इनका कुरान गौर से सुनना, और कुरान की अस्मत जिन्नात की जुबानी है। अल्लाह के नबी सल्लम के साथ एक वाक्या पेश हुआ था, देखिएगा। वही सरफना इलैका नफरुम मिनल जिन्न यस्तमीउनल कुरान, और याद करो जबकि हमने जिन्नों की एक जमात को आपकी तरफ मुतवज्जेह किया कि वो कुरान सुने, बस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पहुंच गए तो एक दूसरे से कहने लगे खामोश हो जाओ। फिर जब पढ़कर खत्म हो गया तो अपनी कौम को खबरदार करने के लिए वापस लौट गए। क्या पता चला कि जिन्नात को भी कुरान सुनने का अदब आता था। अल्लाह हमें भी दे दे, ये दो ढाई तीन घंटे भी अगर हो जाएं तो सारे मैसेजेस बंद करके, सारे खाने पकानों को हटाकर बैठकर पूरे दिल दिमाग से सुनेंगे तो फायदा होगा। आज हम कुरान सुन भी रहे होते हैं और साथ हमारे दूसरे काम चलते हैं। बाद में कोई कहता है वो सुना था, कहते नहीं मेरा हले मिस हो गया था, वो बीच में मैं ये काम देने लग गई, वो लेने लग गई। ना समझी की बात है, आपकी नमाज जाया हो जाएगी अगर नमाज में आप कुछ और सोचते सोचने लग गए। और अल्लाह ताला हमें पूरे फोकस के साथ सुनने की तौफीक दे और सुनाने की। मैं भी साथ मैसेज चेक कर लूं तो कैसा सुनाऊं, अच्छा लगेगा आपको? पता नहीं क्या का क्या कर दूं बीच में, है मुझे तो होश नहीं होती, मैं तो घड़ी देख के कांप जाती हूं, अल्लाह ये क्या हो गया आज। फिर बिलीव मी, कुरान तो ऐसे आपको इन्वॉल्व कर लेता है कि आप ड्राइवर की तरह सामने देखते हैं और आप इधर उधर सोचते भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला हमें करे। और दूसरी बात आप देखिए कि अभी सुना समझा, मुसलमान तो पहले ही थे क्योंकि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन अच्छी तरह सुना जस की और जाकर फिर दूसरों को सिखाने में वाले बन गए। कैसे? कहने लगे हमारी कौम, ए हमारी कौम, हमने यकीनन वो किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, जो पहले से अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, जो सच्चे दीन की और राह रास्त की रहनुमाई करती है। ए हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले का कहा मानो, इस पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श देगा और तुम्हें अलमनाक सजा से पना देगा। और जो शख्स अल्लाह के बुलाने वाले का कहा न मानेगा, बस वो जमीन में कहीं भागकर अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता और न अल्लाह के सिवा और कोई इसके मददगार होंगे, ये लोग खुली गुमराही में हैं। क्या पता चला है 30 में, यहदी इलल हक व इला सिरात मुस्तकीम, हिदायत के तालिब के लिए पैगाम है। और वो क्या है कि कुरान हक है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, और राह रास्त ही सिरात मुस्तकीम है। तो हक से क्या मुराद है? नंबर एक अकीदे तौहीद, शिर्क का जाहरी बातनी खफी पार्शल सब असर निकाल कर जिंदगी से फिर सुकून और इत्मीनान की नींद आएगी आपको। और इसी तरह कुरान अकायद और अहकामात में सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। अल्लाह आपकी मेरी मदद फरमा दे। तो ये वाकया हम सबको सिखाता है कि अल्लाह की किताब को फोकस के साथ सुन लीजिए और फिर उसके बाद दूसरों को भी दावत दीजिए। गौर व फिक्र की बात है, बल्कि इस पे वो हदीस अगर बोल दूं ना सही बुखारी की कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तो जिन्नात पे तो बिल्कुल फिट होती है कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। और सिखाने के अंदर आपको मुझे अपनी अपनी स्किल्स डालनी है। अल्लाह ने जो स्किल दी है वो लेकर चले, क्योंकि आप कहते हैं हमें सिखाना नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं। अब क्या करें? कोई बात नहीं, कंप्यूटर तो आता है, अपनी स्किल्स को पेश कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको इल्म के बाद इंशाल्लाह खुद बोल के सिखाने वाला भी बनाएगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन बंदा बोल पड़ता है तो सिर्फ बोल कर नहीं सिखाया जाता बल्कि बोले हुए को पहुंचाया जाता है अपनी अपनी स्किल के साथ। और कितने हम खुशकिस्मत है, आज के दौर में वैकेंसीज खुली हुई हैं, टेंडर्स जारी किए जा रहे हैं, आज के दौर में इतने नेकियों के मौके हैं रात दिन। आप देखिए नए कोर्सेज, नया स्टाफ, नई चीजें, ये लोगों को जॉब्स ऑफर हो रही हैं कि तुम अल्लाह के रास्ते के अनुसार बनकर अपनी इस बाकी जिंदगी को खपा दो। नहीं पता आगे जाके क्या होगा, पढ़ के पढ़ाने का वक्त तो पता नहीं कब आएगा, जिंदा होंगे तो फिर ना। लेकिन जो स्किल है, जो अल्लाह ने आज तक आपको उर्दू, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर्स और जो कुछ सिखाया है, इसको अल्लाह के रस्ते में कहीं ना कहीं खपा दीजिए और अपने बच्चों की स्किल्स को लगवाइए इन रस्तों में। फिर आए 33 से 34 में, पूरी कायनात का खालिक क्या इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? गोया के अल्लाह हर चीज पे कादिर है, ये पैगाम दिया जा रहा है। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, क्या वो नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया और इनके पैदा करने से ना वो थका, वो यकीनन मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। या नोट करिए, क्रिश्चियनिटी के नजरिए का रद्द है। कहते हैं 6 दिन अल्लाह ने काम किया और 7वें दिन आराम किया, नऊज़ु बिल्लाह। तो आयतुल कुर्सी में भी अल्लाह कहते हैं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और ये आयत भी इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला नहीं थकता। और याद रखिए, अल्लाह नहीं थकता ना तो अल्लाह के रस्तों में काम करने वाले भी नहीं थकते। अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए तो जिंदगी से ये सब थकन और जोड़ों के दर्द और ये तकलीफें सब खत्म हो जाती हैं। आजमा कर देख लीजिए, बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जिस दिन जहन्नम के सामने लाए जाएंगे, इनसे कहा जाएगा क्या ये हक नहीं है? तो जवाब देंगे कि हाँ, कसम है हमारे रब की, हक है। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब अपने लिए कुफर के बदले अजाब का मजा चखो। तो क्या पता चला कि अल्लाह कमजोरियों से पाक है, थकन से पाक है। क्यामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने होंगे तो उनको अल्लाह ताला से इस बात का जवाब मिल जाएगा। आगे आए 35, नबी सल्लम को सबर की तलकीन है और हम सब को इस्तकामत की तलकीन की जा रही है। फसबिर कमा सबर उलुल अज़्मी मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम, पस है पैगम्बर आप ऐसा सबर कीजिए जैसा सबर आली हिम्मत रसूलों ने किया, और इनके लिए अजाब तलब करने में जल्दी ना कीजिए। ये जिस दिन इस अजाब को देख लेंगे जिसका वादा दिए जाते हैं, तो ये मालूम होने लगेगा कि दिन की एक घड़ी ही दुनिया में ठहरे थे। ये है पैगाम पहुंचा देना, बस बदकारों के सिवा कोई हलाक न किया जाएगा। देखिए जरा सूरत किस नुक्ते पे खत्म होती है, फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून। अल्लाह तसल्लियां दिला रहा है, गम ना करो, ना फरमानों को ही हलाक किया जाएगा, फरमा बरदारों को तो हम बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को नाफरमानियों से बचाकर फरमाबरदारियों में ले आए, और हम इस पूरे वाकयात से जो कुछ भी पढ़ते सुनते आ रहे हैं सबक लेने वाले बने। आगे है जी सूरत मोहम्मद। सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया किराम के नामों पे 3 सूरतें आप पीछे पढ़कर आ गए, सूरत यूसुफ, सूरत हूद और सूरत इब्राहिम। ये 4थी सूरत है मोहम्मद, और एक 5वीं सूरत सूरत नूह 29वें पारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात इस बारे सूरत के बारे में, दूसरी बात रखिए कि इस सूरत का मेन थीम इंसानों के 3 किरदार हैं, मोमिनीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। और फिर आखिर में सूरत के एंड पे इनका इंजाम बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया। सूरत मोहम्मद का एक नाम सूरत क़िताल भी है, और जैसे कि मैंने पारे के खुलासे में आपको दे दिया था कि 3 मदनी सूरतें अब मुस्तकिल आएंगी, पीछे आप मक्की सूरतें पढ़े तो बड़ा लाइट स्टाइल था। मदनी सूरतें हमेशा बहुत ही कम्पैक्ट और वो कहना चाहिए कि 7 कोर मील की तरह होती हैं। हम इसमें इंशाल्लाह कुछ पढ़ेंगे, इसमें आपको सौती हुसन बहुत दिखेगा, यानी अरबी में हर आयत का आखिरी हिस्सा जो एक जाता है इसमें समझ आएगी। और इसमें अल्लाह ताला आपको मुझे ये भी सिखाते हैं कि क्या था नबी का मिशन और किस के लिए जिंदगी के 23 साल खपे, और इसकी 38 आयतें हैं टोटल। आयतों का तजिया कर लेते हैं, 1 से 15 मोमिनों और काफिरों का किरदार और अंजाम, 16 से 31 मुनाफिकीन का किरदार और उसकी मजम्मत, फिर 32 से 34 काफिरों की मजम्मत, और फिर आखिर में 35 से 38 में मोमिनीन के लिए हिदायत। यानी 3 नुकाती सूरत है, आप लिख लीजिए 3 डायमेंशनल सूरा है। और इसको पढ़ते हुए आपने मैंने ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमें नबी के तरीकों पे चला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला आमालहुम। पहली 3 आयतें 2 कौमी नजरिया लिख लें। आपने पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री में ये जुमला सुना है, बस वही थीम इधर है कि मुसलमान और काफिर 2 मुख्तलिफ हस्तियां हैं, दो मुख्तलिफ सोचें, दो मुख्तलिफ राय। ये तो अलग बात है कि आज मुसलमान ने भी अपने आप को एक अजीब सी खिचड़ी में शामिल कर लिया, वरना ये दो डिफरेंट लाइफ स्टाइल हैं। साथ ही साथ इस सूरत का एक और खूबसूरत नुक्ता लिखे, हबते आमाल। आप नोट कीजिएगा, आज आपका एक होमवर्क है। हबता का लफ्ज़ यानी आमाल के ज़ाया होने का तज़किरा इस सूरत में कितनी बार आया, और हर साल जब भी पढ़ते हुए यहां आ जाती हूं तो मुझे गम लग जाता है कि अल्लाह पिछले 25 पारों का अजर और सवाब और फाइल्स डिलीट ना हो जाएं। एक हार्ड ड्राइव करप्ट होती है ना तो सारा डाटा डिलीट होता है। अल्लाह कभी ऐसा ना करे, अल्लाह क्यामत तक के लिए वो कोशें जो एक एक कतरा कतरा जमा करके जमा की गई उसको महफूज रखे। लेकिन क्या बनेगा दुनिया में, तो शायद हम फिर कहीं ना कहीं जमा कर ले, ना हो तो दोबारा कर ले वो काम। लेकिन मरने के बाद अगर पता चला कि सारी फाइलें डिलीट हो गई तो क्या बनेगा, इस खौफ के साथ सुनिए। अल्लसीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने कुफर किया। और आयत का शुरू देखिए कितना अनयूजल है, कोई सूरत ऐसे नहीं शुरू हुई जैसे ये सूरत। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, और इस पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है, और दरअसल इनके रब की तरफ से सच्चा दीन भी वही है, अल्लाह ने इनके गुनाह दूर कर दिए और इनके हाल की इस्लाह फरमा दी। इस्लाह वाली सूरत, सोच की इस्लाह, नजर की इस्लाह, अकायद की इस्लाह, खाने पीने पकाने की इस्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला कैसे इसमें इस्लाह की बातें करते हैं, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ये इसलिए कि काफिरों ने बातिल की पैरवी की और मोमिनों ने इस दीन हक की इत्तबा की जो इनके अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह तआला लोगों को इनके अहवाल इसी तरह बताता है। क्या पता चला कि काफिर की सारी फाइलें वहां डिलीट होंगी। महसूस कीजिए, अगर वाकई आपको किसी से मोहब्बत है, किसी गुलुकार से अदाकार से आप उसके फैन हैं, किसी क्रिकेटर के बल्ले को लेकर बैठे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह कुफर पे कोई ना मरे। इसलिए कि दो ही गिरोह हैं, एक काफिर और एक मोमिन। काफिर वो सीधी सी बात है जो अल्लाह के नबी को आखिरी रसूल मानते नहीं और इनकार करते हैं बल्कि रोकते हैं इन रास्तों से, और मोमिन वो हैं जो इसके ऑपोजिट हैं। मुनाफिक बीच वाले, अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो, इधर भी और इधर भी, सबको राजी रखने की खुशियों में। आगे आयत 4-6 में आपको काफिरों के साथ जंग के बारे में कुछ हिदायत और कुछ कवानीन सिखाए जा रहे हैं। यहां समझ लीजिए, डोंट बी एम्बेरेस्ड। अगर इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे और मुलाहिमात का तस्करा हो तो घबराया ना करे, जंग थी है और रहेगी। जहां तक दुनिया में हक और बातिल है साथ ही साथ रहेगा, जहां तक जुल्म और मजलूमियत है जंग खत्म नहीं होगी। अल्लाह के नबी से पहले अरब इतने जंगजू थे कि 200 साल तक जंगे बुआस की बातें मिलती हैं, एक एक जंग नस्ल दर नस्ल चलती थी। आपने जंगों के कवानीन मुरतब किए, इसकी वजह से आप देखिए कि जंगे खत्म हो गई। आप इस सोच के साथ इन आयतों का तर्जमा सुनिएगा कि इस्लाम क्या खूबसूरत तरीके से जंगों का कला कमा करता। फ़इज़ा लक़ीतुम अल्लज़ीना कफ़रू फ़ضْرِبَ الرِّقَابِ, सॉरी, तो जब काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो यानी आमना सामना हो तो गर्दनों पर वार मारो, और जब इनको अच्छी तरह कुचल डालो तो अब खूब मजबूत कैदोबंद से गिरफ्तार करो। फिर इख्तियार है कि ख्वाह एहसान रखकर छोड़ दो या फिदिया लेकर, तावक्ते के लड़ाई अपने हथियार रख दे। यही हुक्म है कि अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे बदला ले लेता, लेकिन इसका मंशा यह है कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे से ले ले। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं, अल्लाह इनके अमाल हरगिज जाया न करेगा, इन्हें राह दिखाएगा और इनके हालात की इस्लाह कर देगा, और इन्हें इस जन्नत में ले जाएगा जिससे इन्हें पहले से शनासा कर दिया है। अल्लाह हमारे भी हालात की इस्लाह करके हमें जन्नतों में ले जा और हमें बेहतरीन तरीके से अपनी इस्लाह की तौफीक दे। तो आप देखिए कि खून रेजी के लिए कमर तोड़ जवाब देने की बात है। गज़वे बदर से पहले इस आयत के जरिए मोमिनों के हिदायत दी गई थी कि टॉर्चर ना करना उनको, वहां ऐसे कैंपों में ना रखना कि कहीं बिजली के करंट भी लगे और फिर भी ना मरे, यानी जब मारो तो पूरी तरह खत्म कर दो ताकि अजियत ना हो। मक्का वाले मुसला करते थे लाशों का, यानी उसको ह्यूमिलिएट करते थे। अल्लाह ने इन सारी चीजों से रोकने के लिए ये खूबसूरत दी गई बातें। आज आप देखिए, नहत्ते और बेगुनाह शहरियों पर बम फटते हैं, कोई नहीं पता कौन मरा, नेक के बाद अच्छा के बुरा। इस्लाम नहीं चाहता सिर्फ उनको जो अपने सीनों में इस्लाम की दुश्मनियां लेकर मुसलमानों और अल्लाह के नबी को मारने की नीयत से आए हैं, तो क्या फिर तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे। اور مومن کی تو ایک ہی شان ہے کہ اس کو تو اللہ کے رستے میں یا تو جینا ہے شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے یا پھر شہادت کی موت لینی ہے. مریں جیئیں گے تو شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے, اللہ کے دین کے کام کرتے ہوئے, علم لیتے ہوئے. طالب علم اگر طالب علمی میں مر جائے تو شہید کی بات ہے, حدیث سے صحیح. اللہ آپ میں سے جو علم کی نیتیں کر کے مختلف کورسز جوائن کر رہے ہیں اور خاص طور پہ ناروے والے آن سائٹ پہ آ کر جب سیکھیں گے, آپ کو تو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہوگا. ان لوگوں سے پوچھئے جب دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پھر کر لیں, کیونکہ ہمنے سامنے بیٹھ کر آن سائٹ پہ کلاسز میں یہ ہر جگہ موقع نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو واقعی اللہ چن لیتا ہے, وہی لوگ پھر شہروں کے نصیب بدلنے والے ہوتے ہیں. تو وہ جو لذت ہے نا وہ بڑی پیاری ہے, صبح اٹھ کے گھر سے نکلنا اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کالج میں شام داخل ہو گئے, دوبارہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بن گئے. 10 سال عمر سے چھوٹا ہو جاتا ہے بندہ علم کے نام پہ نکل کر. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس راستے میں ہی جیے اور رہنے کی اور مرنے کی توفیق دے, اور موت آئے تو اسی راستے میں آ جائے, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. آگے دیکھیے آیت نمبر 7, خاص طور پہ اللہ کی مدد کن کے لیے آتی ہے, اور 7 سے 11 دیکھیں گے تو اللہ کا دین قائم رکھنے یا قائم کرنے کی کوششیں کرنا, اللہ اس کو کیا خوبصورت نام دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. کچھ نہ ہوا آپ کو یہ سن کر کیونکہ ترجمہ سمجھ نہیں آیا, تو ذرا سنیے اور پھر آپ اپنے آپ کو مبارک دیجیے. یہ ہے تسلیم و رضا کے بعد سکینت. آج بھی سچی خوشی اور اطمینان انہی کو ہے جو اس سائٹ پہ عمل کر رہے ہیں. کیسے؟ اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تم کہاں اپنے کام کرنے والے, تم کہاں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے, تم کہاں ان کے رشتے ناطے جوڑنے والے, تم کہاں اپنے شوہروں کی نظروں کو پاک کرنے والے, اللہ کرے گا. یہ ہے جی سکینہ. اور یہ بات آزمائی ہوئی ہے, جس دل سے آپ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں, اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں, اللہ وہ دولت دنیا میں آپ کو دنیا کی صورت میں اپنی ذاتی گھریلو نجی زندگی میں دکھاتا ہے. شوہروں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ ان سے محبت کرو, بچوں کے دلوں میں اطاعت اور محبت ڈالتا ہے. آپ کہتے ہیں ہماری تو نہیں ڈلی, نہیں ابھی دال پوری نہیں گلی, آپ پورے نہیں ہیں. ایک دفعہ پچھلی کشتیاں جلا کر آپ دونوں قدم اندر تو رکھیے, پھر دیکھیں یہ کشتی آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے. ہم ابھی پورے نہیں ہیں, اس لیے ہمارے ساتھ مدد پوری نہیں ہے. اور دوسرا تحفہ, اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. یاد رکھیے, کشتی بیچ میں ہو اور ڈوبنے لگے تو کیا بنے گا. یہ دعا کیا کرے, اللہ مرتے دم تک ہم اس کشتی سے چھلانگ نہ لگائیں, دین کے کام کرتے کرتے کہ دنیا کے کام ہی نہ یاد آ جائیں. بچے کی شادی, ایک بیٹی کی شادی کیا آتی ہے, سب پیچھے ہو گیا. اب 6 ماہ کی چھٹی چاہیے تو کہہ دو پھر سارے دشمنوں کو اب تم حملہ نہ کرنا 6 ماہ تک, کیونکہ ہماری ساری فوج اور آرمی چھٹی پہ چلی گئی ہے. یہاں چھٹی کا تصور نہیں ہے, اس لیے کہ دشمن چھٹی نہیں کرتا. اور چلو کافر ہوئے, ان کے لیے ہلاکت ہو, اللہ ان کے عمل غارت کر دے گا. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے, پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے عمل ضائع کر دیے. کہ ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہ کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوا, اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں, وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے, اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں. ہائی لائٹ کیجئے یہاں لفظ کافر کو, نہ شکرہ کہیے یا دین کے کام سے رکنا کہیے. جو بھی ٹیکسٹ پیچھے چل رہا ہے تو آپ کو اس میں ایک بات سمجھ آ جائے گی, اور وہ کیا ہے کہ اپنے کام خود نہیں کر سکتے. کبھی اپنے بچے کو دیکھا, چھوٹا سا 2-3 سال کا, میں خود جوتا پہنوں گا. اب وہ جوتا کیا پہننا ہے, وہ ادھر سے ادھر لڑک رہا پھڑک رہا, میں خود موزہ پہنوں گا. اور سال کا بچہ کہ میں کھانا کھاؤں گا, کیسا کھاتا ہے؟ آپ کہتے پیچھے ہٹو, سارا نیچے گرا دیا. اللہ بھی آپ کو مجھے یہی کہتا ہے, یہ تمہیں کو آتے ہیں کرنے کام اپنے بچوں کے؟ یہ تمہیں کوئی رشتے دیکھنے آتے ہیں ان کے؟ تمہیں کوئی اپنے بچوں کی تربیت آتی؟ میں کروں گا تمہارے بچوں کے معاملے. شرط ایک ہے کہ ایمان والوں کا کارساز اللہ ہے, اس پہ یقین کر لو, اور نہ شکروں کا کوئی کارساز نہیں. یہاں بیٹھ کر میں اپنے اور آپ کے لیے دعا کرتی ہوں, اللہ میرے سارے کام تو اپنے ہاتھ میں لے لے. اللہ میں تیرے کام کروں تو میرے کار, مجھے نہیں فرصت اپنے کاموں کی, تو کر دے, کر دے گا یا کروا دے گا, لیکن کام اس سے اچھے ہوں گے جو میں خود کرتی. یہ تو میں آپ کو پتھر پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں. ہم نے کیا اپنی زندگیاں گزارنی تھی جیسی زندگیاں آج ہم گزار رہے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا تھا؟ یہ اللہ کے وعدے ہیں. یاد رکھیے, اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. یہ بشارتوں سے بھری ہوئی آیتیں ہیں. اللہ قدم بھی تبھی جماتا ہے جب آپ کے دل جمے ہوتے ہیں. बीच में कच्चे पक्के आम को तोड़ेंगे तो खट्टा क्या कड़वा होगा। अभी आगे चलिए और बढ़िए और बढ़िए। आप कहते हफ्ते में एक दिन, नहीं हफ्ते में दो दिन, नहीं हफ्ते के सात दिन, नहीं हफ्ते के आठ दिन, अगर आठवां भी होता तो। फिर देखिए अल्लाह की मदद। कभी कभी सफाई करनी पड़े, सांस फूल जाता है, मासी ना आ जाए, साथ सफाई करते हैं साथ कोसते हैं। बाहर पाकिस्तान और इंडिया के लोग बेचारे, हमारी बहनें हर रोज सुबह उठ के जो सुबह होती है हमारी माओ बहनों की, वो मासी आई के ना आई इस मौजू पे होती है। और यहां हमारे बाहर के मुल्कों में देखिए, खुद ही मासियां खुद ही रानियां रोज सफाइयां करते हैं। किसी को लगती है मुश्किल? नहीं लगती ना, कोई मुश्किल नहीं लगती। और आप अपने स्कूल की सफाई करते हैं, मुश्किल लगता? आज तक हमारे स्कूल में मासी नहीं आई, एक आई थी करीब, मुझे याद है, आपको भूल गई होगी तो भूल गई होगी। आप सबको ग्लोब पे बता रही हूँ ये बात, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ कि ऑस्लो स्कूल में आज तक मेट नहीं आई। और अच्छा खासा बड़ा स्कूल है हमारा, तीन चार घरों जितना एक स्कूल है। एक दफा इन्होंने 700 करोन पे 7 घंटे के लिए बुलाई थी ये 22 शीशे साफ कराने। पहला साल था आपका जब ईद की कोई तैयारियां थी, इन्होंने कहा कि हम अपने अंसारुल्ला ने 100 करोन डालकर उनको पैसे दिए, और जब वो 7 घंटे पूरे हो गए भी आधे भी शीशे साफ नहीं हुए, चली गई, और उसके बाद आज तक मासी नहीं आई। ये कौन करता? ये वो है जिनको यकीन है कि जो आयते पढ़े उसका यकीन है कि अल्लाह के काम तुम करो, तुम्हारे मैं करूंगा। अपने घर तो पता नहीं हम कैसे रखते हैं, किसी दिन जाके देखना पड़ेगा। वैसे आ जाओ आपके घर, अच्छा ही होगा आपका घर, मुझे यकीन है। अल्लाह अकबर कबीरा, करके तो देखिए अल्लाह आपके साथ करता क्या। ये वादों का यकीन आपको लेके चलता है। तो आज इस जुमले को दोहरा लीजिएगा कि तुम अल्लाह की मदद करते हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। जितनी सफाइयां आप यहाँ करते हैं इतनी तो मेरा नहीं ख्याल घरों में भी कोई करता हो अपने। और ये अल्लाह के वादे हैं कि अल्लाह ताला ये काम लेता ही उनसे है जिनसे राजी होता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, आयत 7 को आप हाईलाइट कर लीजिए और आजमा के देखिए। और जो खाने पकते हैं इधर अल्लाह की बना, हमारी तो कैंटीन इतनी मारूफ है कि अब तो खैर पिछले साल में कुछ ही क्या गड़बड़े हो गई, लोग ही नहीं, नीचे बिल्डिंग से लोग आते हैं खाना लेने। जी जी 10 साल से हमारे स्कूल में कैंटीन चलती है और सिस्टर्स खाना बना के लाती हैं, और यकीन करें बहुत मजे का खाना। आज तक स्कूल ने नहीं खर्च किया इस पे, स्कूल साथी करते हैं। ये कौन देते, ये कहाँ से जज्बे आते हैं? आप खरीद सकते हैं ऐसे लोगों को? आप लालच दे सकते हैं ऐसे कामों के? ये पैसों से नहीं होता, ये जज्बों से काम होते हैं। और जो अपनी जाने संभाले बैठे अपनी बीमारियों तकलीफों और अपने आप को ही सहलाते हैं, एक दफा इसमें कूद के तो देखें। हमें तो होश नहीं रहती जिस दिन अपने मैके के लिए दावत पकानी होती है, 10 कट लग जाते हैं, हाथ को दर्द ही नहीं होती क्योंकि मजा आ रहा है। और ससुराल वालों की एक दिन की मियां दावत करते हैं तो जान पे बनी होती है। तो आप दीन को क्या समझते हैं? मैं कहा कि ससुराल ये आपकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह आपको मुझे दरवाजे दे रहा है और ये काम करके जीते हैं हम। इस पे फिर जो लज्जतें, जो मजे, और जो क्लास में फिर वो खुशबू के खाने और क्लास का सुनना मुहाल है कि आज ब्रेक में क्या आ रहा है, ये लज्जतें आप सब ले चुके हैं और लेते हैं माशाल्लाह साथी। और ये और स्कूलों में भी होता है, मैं चूंकि यहां बैठी हूं तो इस साल ज्यादा मिसालें आपको नॉर्वे की, ये ना सोचें कि ये बहुत अच्छे हैं, जहां बैठता है बंदा वही आप नाराज हो गए, सारे ही बहुत अच्छे हैं। ये कहना चाह रही हैं आप तो अच्छे ही हैं, सभी अच्छे हैं माशाल्लाह। यानी इंसान जहां रहे उसके गुण गाए, सीधी सी बात है, बात यह है अल्लाह के गुण गाया करें, फिर देखिए कि अल्लाह आपको देता क्या है। और उसकी दलील आपको अब अगली आयतों में खुद ही आ गई। हैरान होता है बंदा कि जो सोचता है बगैर सोचे भी बंदा बोल दे तो अल्लाह ताला उसको कैसे हमारे लिए दुनिया में ले आता है। कि जरा सोचो तो सही कि अल्लाह सुबहान तआला के रस्तों में जो मेहनतें कुर्बानियां और काम होते हैं अल्लाह उसको कैसे जाया करेगा। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो इन जिम्मेदारियों से पीछे, जिनको रब ना मिला, उनको सुकून कहां मिलना है? उसकी जिंदगी में कहां सकीनत और कहां तस्लीम और रजा आ गई? तो जरा सा सुनिए आयत 12 खास तौर पे, और पीछे आयत 8 से 11 में कुफार की बर्बादी की बातें तो पढ़ी, अब उनके खाने भी सुन लीजिए। काफिर दुनिया में मजे करते दिखते हैं आखिर क्यों? और अगर 12 से 15 तक चलें तो जन्नतियों और कुफार के खाने पीने का तज़किरा आपको दिखेगा। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इन्हें अल्लाह ताला यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और जो लोग काफिर हुए हैं, जो लोग काफिर हुए वो दुनिया ही का फायदा उठा रहे हैं और मिसल चौपायों के खा रहे हैं, इनका असल ठिकाना जहन्नुम है। हाईलाइट कीजिए, एमलेस लाइफ, پرپس لیس لائف بے مقصدیت کی زندگی جانوروں کی زندگی ہے. کبھی آپ نے سوچا روز صبح اٹھ کر پھر کچن میں جاتی ہوں, پھر رات سونے تک کچن ہی صاف ہوتا رہتا ہے, اگلے دن پھر, یہ جینا کوئی جینا ہے؟ تو محض کھانا پینا, ایٹ ڈرنک بی میری, اور وہی بات ہے کہ دس لائف از اے فن پلیکس پارٹی پلیکس, ایٹ ڈرنک اینڈ ریپیٹ, ہر دن ایک ہی ریپیٹ کرتے ہو. مسلمان اس طرح نہیں ہوتا, اس کو صرف دنیا کے لیے نہیں جینا, کیونکہ صحیح مسلم میں روایت ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس محدود سی زندگی میں محدود سی پابندیوں کو سہ لیجئے تاکہ غیر محدود نعمتیں آپ کو مل جائیں اور مجھے بھی مل جائیں. آیت 13 سے 14 اللہ کے نبی کی دل جوئی کی جا رہی ہے. ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے, پس ان کا مددگار کوئی نہ اٹھا. کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں, اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بتلا, اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے, اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے, اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں, اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اللہم لا تجلنا منہم. کیسے آپ دیکھیے کہ پہلے جنت کی نہروں کی بات ہے کہ جو لوگ نہروں جیسے بہتے ہوئے صدقہ جاریہ کے کام اپنی زندگی میں کر جائیں گے وہ ان کو جنت کی چار نہریں ملیں گی. اور کبھی بچوں کو نہ کہیے گا کہ دودھ کی نہر ہے, وہ کہے گا میں نے نہیں جانا. آپ یہ کہیے گا چاکلیٹ والے دودھ کی نہر ہے, آئس کریم وہ بھی تو دودھ ہی ہے نا. کیسے جنت کے مشروبات کا ذکر ہے, نہ رنگ بدلے گا نہ ذائقہ بدلے گا, خالص شہد. دنیا میں تو باسی ہو جائے, چار دن ڈیٹ اوپر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں پیتے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا, پی کے دیکھ لیں آپ زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم اتنا یقین رکھتے ہیں ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تاریخ کا, اور ہم اس قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے. تو آج کوشش کریں اس بات پہ یقین کرنے کی کہ میرے مالک مجھے نہروں جیسے کام کرنے والا بنا لے, اینڈ لیس صدقہ جاریہ. اور اللہ وہ ساتھی جو دن رات اس میں ساتھ ہیں ان کی زندگیوں میں, ان کے گھروں میں, ان کے بچوں میں, ماں باپ, اولادوں, بھائی بہنوں اور ان کے والدین جو دنیا سے چلے گئے, یا اللہ ان کے لیے بھی خیر کی رحمتوں کے خزانے کھول دے. اللہ ہمیں زندگی کا یہ خوبصورت رخ آزمانے والوں میں شامل کر دے. اور طالب علم کے ساتھ ہی یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یاد رکھے علم نہ لیا ہو تو یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. نبی نے اگر صحابہ کو ٹھوک بجا کے ساتھ نہ احد میں لے جایا جاتا تو وہاں تو مکہ والوں نے کیا لڑنا تھا, وہ صحابہ لڑ رہے ہوتے آپس میں, تیری میری پڑی ہوتی. آج دیکھیے دین کے نام پہ کام شروع ہوتے ہیں, چند مہینے سال میں ایک کی مسجد دو ہو جاتی ہیں, دو مسجدیں بن گئی, کیا ماشاءاللہ گروتھ ہوئی, نہیں سپریشن ہو گئی, ساتھ نہیں چلے, مینجمنٹ کا جھگڑا, امام صاحب کا جھگڑا, ٹیچروں کے جھگڑے, اختلاف. نہیں چاہیے ایسے لوگوں سے کام کرنا ہمیں, یہ دین نہیں ہے جہاں صرف اختلاف ہو. یہ خود نمائی ہے, پچھلا پارا یاد کر لیجئے. صرف وہی جمیں گے جن کا اتنا تزکیہ ہوگا. درخت اپنی جڑوں پہ کھڑے رہیں گے تو پھل لگتے ہیں. ایلفی لگا دیجئے درخت کو اور پتوں کو پکڑ کر جوڑیے گلیو سے, کبھی بہار نہیں آئے گی. باہر سے کٹے پٹے پتے نہیں بہار دیتے. جو اپنی بنیادوں پہ کھڑے ہو کے قرآن کے مرحلے سے گزر کر علم لیتے ہیں نا, وہی بہترین را مٹیریل بنتے ہیں اس جگہ کا. اللہ ہمیں اس میں خود کفیل کر دے. آگے دیکھیے آیت 16 سے 17, منافقانہ طرز عمل ہیں کچھ. یہ بڑا تکلیف دہ ٹاپک ہوتا ہے, جہاں بھی قرآن میں آتا ہے دل نہیں کرتا پڑھنے کو, لیکن ایسے کردار نہ بنے ہم. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اس دعا کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے اور قرآن کا حصہ سمجھتے ہوئے اللہ نے اس میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا ان کا تذکرہ برا ہے, قرآن تو اپنی جگہ بڑا خوبصورت ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. کیا پتا چلا, ہدایت پرست ہدایت نہیں پاتے. اتنی باتیں ہدایت کی سن کر بھی اگر ہم پلٹنے نہیں نا, تو اس میں آپ ڈھونڈیں گے کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات, کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے بیچ میں جو آڑے آ جاتی ہے. فرمایا ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں, یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں. جی, خواہش پرست ہدایت نہیں پاتے. ٹھیک ہے جی, और इनमें से बाज ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहां तक कि जब तेरे पास से जाते हैं पहले इनसे पूछते हैं कि इसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी और वह अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं अल्लाह ने इन्हें हिदायत में बढ़ा दिया। अल्लाह हमें भी बढ़ा दे और इन्हें इनकी परहेजगारी अता फरमाई। अल्लाह हमें भी तकवा और परहेजगारी अता फरमाए। तो देखिए आयत 16 में, अल कल्बुल मतबू अलई, दिल पे मोहरें कब लगती हैं, किस दिल पे, जब नफसानी ख्वाहिशों का पैरोकार बंदा बन जाए। और वो वही है जिसको बड़ी मारूफ टर्म है, ईट ड्रिंक बी मैरी, बतन और फर्ज के तकाजों में जीने वाले। सिर्फ मैं कैसी लगूंगी, मैं क्या पहनूंगी, मेरी ईद का जोड़ा कैसे, मैं क्या, ऐसे लोगों को याद रखिए, हिदायत कम ही मिलती है और मिली हुई हिदायत भी वो फिर जाया कर देते हैं, इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह ताला ख्वाहिशों से बचा के रखे। ऐसे लोग लापरवाह होते हैं और गफलत बरतने वाले होते हैं और हक को हक नहीं जानते, हालांकि उनको पता लग चुका होता है, लेकिन फिर भी कुछ ख्वाहिशात दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं और वो फिर पीछे हो जाते हैं। फिर आप देखिए कि आयत 17 में आपको पता चल गया कि जितना ज्यादा तकवा उतनी ज्यादा हिदायत। ये तो सबीरुल जन्ना के आप पहले लेसन में, दूसरे में यानी सूरह बकरा के पहले लेसन में सुन लेते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन में। आपसे भी पूछ लो मुत्तकी कौन है, आप कहते दाढ़ी वाला, निकाब वाला, मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, हालांकि मुत्तकी ये नहीं है। आपके सीरीज के भी शुरू के लेक्चर में बता दिया था, मुत्तकी वो है जिसको तड़प लग जाए कि मैंने खुद को बदलना है, जिसको अपनी बुराइयां चुभने लगे। और माशाल्लाह आप अभी तक 25वें पारे तक साथ हैं और 26वां भी आज पूरा हो रहा है। अल्लाह आपको इसमें जमाए रखे। जो लोग पहली दफा सुन रहे हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार और मोहब्बत है और दुआएं कि अल्लाह आपके हिदायत के सफर को बढ़ाता ही रखे। अल्लाह ताला तकवा वालों के रुश्त और हिदायत में इजाफा करता है, नीयत इरादे और कोशिश करने वालों को हिदायत देता है। अल्लाह हमें भी दे दे हिदायत, और निफाक वाले वो सारे रवैयों से बचा दे जो अल्लाह के नबी के दौर में कुछ लोग जो दिल में खोट रखकर आपकी महफिलों में आते जाते रहते थे, और सच्चे मोमिनों की खताओं को अल्लाह ताला माफ कर दे। आयत 18:23 को देखिएगा, फहल यंजुरून इल्लसात अंतातियहुम बख्ता, मुनाफिकाना तर्ज अमल। तो क्या ये क्यामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो इनके पास अचानक आ जाए, यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं, फिर जबकि इनके पास क्यामत आ जाए इन्हें नसीहत करना कहाँ होगा। सो ए नबी, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपनी लग्जिशों की बख्शिश मांगा करें, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी। अल्लाह ताला तमाम लोगों की आमदो रफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है, और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कोई सूरत क्यों नाजिल न की गई, फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और इसमें किताल का जिक्र किया जाता है तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वह आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे इस शख्स की नजर होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो, बस बहुत बेहतर था इनके लिए। अल्लाह अकबर, निफाक वाले दिल दीन की महफिलों से भी कोरे ही निकल जाते हैं। यह है जी कल्बे मरीद, अल कल्बुल मरीद। और ये कौन लोग हैं जो इल्म की महफिलों में आते तो हैं किसी वजह से, लेकिन मोटिव वो नहीं होता, या आते हैं तो फिर फोकस नहीं रहते। नबी की महफिलों में बैठे हुए लोगों के दिलों की बातें हैं। आज तो आप किसी के बारे में मत सोचिए, ज्यादा ज्यादा सोचें तो अपने बारे में सोचिए कि मैं इल्म की महफिल में क्यों बैठी हूं, मैं इस वक्त गलतियां चुनने बैठी हूं या हिदायत के मोती चुनने बैठी हूं। ईमान की दलील मुकम्मल इताअत है। अच्छे हालात में अमूमन लोग बढ़ चढ़ कर नेकियां करते हैं, मुश्किल हालात में सिर्फ चंद लोग ही वफाए अहद निभाते हैं। और भी पॉज देके पढ़ूं, मुश्किल हालात में सिर्फ चंद लोग ही अहदे वफा निभाते हैं। सब लिखी बातें, पड़ी बातें, कमिटमेंट्स पीछे, और वी आर गोइंग, बल्कि बास तो कहते हैं वी लेफ्ट, और बास का तो लोग बताते हैं वो जा चुके हैं, आप अब उनका इंतजार न करें। अच्छा, हमें तो नहीं बताया, बताने की क्या जरूरत है, ये कोई गोरों की जगह थोड़ी है कि जहां बैठकर आने और जाने के पहले शरायत नामे हो। तो कीजिए कि अल्लाह कभी हमें दीन के रस्तों से अलग न करे, कोई भी वजह हो। आप अच्छे हैं ना, तो बुरे लोग भी अगर उनकी नीयतें भी बुरी हैं तो आप उनको अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह एक दिन। अकेली भेड़ को भेड़िया खा जाता है। आप कहते कोई बात नहीं, और भी जगह है, वहां चले जाएंगे, ठीक है चले जाइए, अच्छी बात है, लेकिन खुद को जाया ना कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मोहब्बत और प्यार होता है ना, वो मैके के साथ होता है। मैं अपने दिल में इस चीज को बड़ी कुर्बत से महसूस करती हूँ। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको प्यार के साथ पाला होता है बच्चों की तरह, तो जो उस्ताद होते हैं ना, वो भी फिर प्यारे ही लगते हैं माँ बाप की तरह। कड़वी बातें लगे वो अलग बात है, जिससे आपके दिल में हिदायत का सोता फूटता है ना, वो उससे प्यार भी रहता है सारी उम्र, चाहे आप उससे कभी फायदा ना भी उठाएं, वो अपना लगता है। बात वाले लोगों से तो सिर्फ आप फायदे उठाते हैं, इल्ला माशाल्लाह। हर एक की इज्जत कीजिए, हर एक से प्यार कीजिए, खुद को जाया ना कीजिए, नेगेटिविटी को निकाल दें, पॉजिटिविटी पे रहें और चंद साल की जिंदगी को जाया होने से बचा लीजिए, बस इतनी ही बात है। I-21 फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये भी वाइद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार है और जिनकी समात और आंखों की रोशनी छीन ली है। अल्लाह हमें ऐसे बुरे अंजाम से बचा दे। क्या पता चला कि एक तरफ तो सच्चे मोमिनों की खताएं बख्शी जाती हैं और दूसरी तरफ मुनाफिकों की बुजदिली की वजह से उनको उधर ही छोड़ दिया जाता है। मदीना मुनव्वरा आने के बाद मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से सूरत हज की आयत 39 में जंग की पहली दफा इजाजत मिली थी। तो आपने जब मुश्रिकीन मक्का से जंग की तैयारियां शुरू की तो मुनाफिकीन को बड़ा ही बुरा लगा, तो वो मुतालबे करने लगे जो भी हम पढ़कर आए हैं। दलील टाइम वक्त नहीं है ज्यादा बात करने का, लेकिन इन सारी आयतों को टेक्स्ट में पढ़ने के लिए हमें मजीद वक्त की जरूरत है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने कहा कि इनको अल्लाह के रस्ते की का कोई तकाजा ऐसे लगता है जैसे मौत के वक्त नजाका की हालत तारी हो जाए, बुजदिली तारी जारी हो जाती है। मुनाफिक को जान बड़ी प्यारी होती है और माल बड़ा प्यारा होता है, तो दीन के तकाजों पे खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा होता है। इसके बरक्स तरबियत याफ्ता लोगों की हुकूमत से खैर फैलती है। आयत 22-23 में आप देख चुके हैं। मुनाफिकीन की ख्वाहिश क्या होती थी कि बगैर जंग और आजमाइश के मराहल से गुजरे कामयाबी हासिल हो जाए और इक्तदार मिले। अल्लाह अपने नबी की गैब से मदद फरमाए, काफिरों को नीस नाबूद कर दे और मुसलमानों को फतह हासिल हो, तो अल्लाह ने खुशनामियां दूर कर दी। ऐसा नहीं होगा। आजमाइशों की भट्टी से गुजारे बगैर अल्लाह दुनिया में इस्लाम को नाफिज नहीं करता। जहां फसाद होगा, जैसे आग लगाकर जगहों को जलाया जाता है ना, गंदगी को, ट्रैश को, तो अल्लाह ताला ऐसे ही मुख्तलिफ मराहल से गुजारता है जो निफाक वाले दिल को अच्छा नहीं लगता। इसके बरक्स मोमिन की तो ये गिजा होती है, वो तो ऐसे वक्तों पे मुस्कुरा रहा होता है कि अल्लाह एक और मौका ले आया जिसमें मैं मेहनत करूं और जिसमें मैं अपना हिस्सा डाल दूं। तो लिहाजा अब आगे आए 24 में कुरान पर तदब्बुर से मुनाफ़त खत्म हो जाती है। ये मजमून सुनिए, बड़ी प्यारी आयत है। अफला या तदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूब नक़फालुहा, क्या ये कुरान पाक पर गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं। यह है जी अल कल्बुल मुकफल, कुफल वाला ताला, हक नाशनास दिल का ये दूसरा नाम है जिसको हक की पहचान ही ना हो। कुरान पाक के अहकामात पे गौर व फिक्र ना करना और कुरान के मानी और मतालिब ऐसे लोगों के दिल में नहीं उतरते। दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना शामिल करे। कुरान तो शिफाउल लिमा फिस सुदूर है। पीछे पढ़कर आए हैं आप सूरह यूनुस के आयत 57-58 में, तो यहां क्या पता चला कि वो लोग दिल के बीमार ही रहेंगे जो कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे। आगे आए 25-28 में कुफर और इस्लाम की जंग भी है और शैतान धोखा देकर मुनाफिक बना देता है। इसकी स्ट्रेटेजी जरा समझिए, दुश्मन बड़ा चालबाज है, अल्लाह उससे मुझे आपको बचा दे। इन अल्लज़ी नर्तद्दु अला अदबारिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हुदा, जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए इसके बाद के इनके लिए हिदायत वाजे हो चुकी थी। यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके फेल को मुजयन कर दिया और इनको ढील दे रखी है। ये इसलिए कि उन्होंने इन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल करदा वही को बुरा समझा ये कहा कि हम भी अनकरीब बास कामों में तुम्हारा कहा मानेंगे और अल्लाह को इनकी पोशीदा बातों की खूब खबर है, बस इनकी कैसी दुर्गत होगी। मौत का वक्त याद कीजिए, जबकि फरिश्ते इनकी रुख कब्ज करते हुए इनके चेहरों और इनकी पीठों पर मारेंगे। ये इस बिना पर कि ये वो राह चले जिससे उन्होंने अल्लाह को नाराज कर दिया। चंद सेकंड सोचिए, अल्लाह मैं तो नहीं कोई ऐसा काम कर रही जिससे आपको मैंने नाराज कर दिया। और उन्होंने इसकी रजामंदी को बुरा जाना तो अल्लाह ने इनके अमाल इकारत कर दिए। शैतान के ये धोखे के लहसा लहसा धोखा देकर निफाक की तरफ ले आता है। कभी नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, नहीं नहीं तुम अब पहले से अच्छा करोगे, और अच्छे करेंगे, अब मैं और काम करूंगा, अब मैं और अल्लाह की मर्जी मानूंगा। और पता ही नहीं चलता कि इंसान ईमान से उतरकर निफाक के दर्जों पे फायज हो चुका होता है। और आप देखिए कि आयत 27-28 क्या थी, मुनाफिकीन की अजियतनाक मौत थी, पीठों पे चेहरों पे जरबें पड़ती हैं, गजब है अल्लाह का। आराम पसंद थे, ईजी गोइंग थे, ऐशकोश थे, खाली खोली नेकियां करते थे, जो तुम अपने छिलके ले जाओ, मुझे तुम्हारे छिलके नहीं चाहिए। गुदा तो तुम दुनिया को देकर आ जाते थे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। मजीद कुछ आगे आयतें 29-31 मुनाफिकाना सिफात की भी हैं, और अल्लाह आजमाइशों के जरिए मुनाफिकों को जाहिर कैसे करता है, बड़ी खतरनाक आयतें हैं। खौफ आ रहा है पढ़ते हुए भी। अल्लाह दिल के अंदर के निफाक को भी दूर कर दे अगर मेरे दिल में कहीं भी छुपा हुआ है, और अल्लाह ताला हमें पूरा मुकम्मल साफ सुथरा कर ले कि दिल की सफाई के साथ हम अल्लाह के पास पहुंचे। अम हसीबल्लसी नफी कुलूबिहिम मरद, क्या इन लोगों ने जिनके दिलों में बीमारी है ये समझ रखा है कि अल्लाह इनके हसद और कीनों को जाहिर न करेगा। यानी मुनाफिक बड़ा होशियार बनता है कि किसी को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अल्लाह कहता है मैं तो खोल के दे दूंगा। अल कल्बुल मरीद देख लीजिए आयत 29 में, और यह है कीने वाला दिल, हाकिद भी कहते हैं इसको अरबी में, हाकिद कीने वाला दिल। कीने दिल में हो तो जाहिर हो जाते हैं, पहली बात, इस्लाम के खिलाफ इनकी साजिशों से और इनके झूठे तर्ज कलाम से। वक्त के दौर में नबी को भी पता चल जाता था कि ये दिल से साथ नहीं, गो के साथ लगे हुए हैं। और अगर हम चाहते तो इन सब को तुझे दिखा देते, बस तू इन्हें इनके चेहरों से ही पहचान लेता, और यकीनन तू इन्हें इनकी बात के ढब से पहचान लेगा। सब तुम्हारे सब काम अल्लाह को मालूम है। यानी मुनाफिक बात करने में बड़ा लुब्रिकेटिंग होता है, और बड़ा ही एक चुपड़ी चुपड़ी बातें करने वाला। तो अल्लाह कहता है इनकी टोन से तुम पहचान लो कि ये सीधी बात नहीं करते, खरी खोटी नहीं करते, बड़ी ढीली ढीली बातें। एक तो इनके चेहरों से जाहिर होता है, दूसरे इनके गुफ्तगू के अंदाज से। वो सिर्फ बातों से वफादारियां जाहिर करते हैं, और माल जान की कुर्बानी का जब वक्त है तो गुरेज करते हैं। अल्लाह ऐसों को बार बार आजमाएगा, और दीन की सरबुलंदी के लिए मुसलसल माल और जान लगाना ये मुनाफिक के लिए नामुमकिन है। कभी कभार कर लेगा, लिखिए कभी कभार नेकी हो जाती है मुनाफिक से भी, मुस्तकिल नहीं होती। उसके लिए ईमान का बीज दिल में हो और तस्लीम और रजा के साथ सकीनत होगी तो मुस्तकिल काम होगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर हम चाहते तो इन सब को तुझे दिखा देते, बस तू इन्हें इनके चेहरों से ही पहचान लेता, और यकीनन तू इन्हें इनकी बात के ढब से पहचान लेगा। तुम्हारे सब काम अल्लाह को खूब मालूम है। यकीनन हम तुम्हारे इम्तिहान करेंगे ताकि तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने वालों को मालूम कर लें, और हम तुम्हारी हालतों को भी जांचेंगे। कुछ नहीं हो रहा, एक हार्ड टेस्ट होना हो ना तो जान पे बनी होती है, अंदर से पता नहीं निकलना क्या। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों मैं तुम्हारे ईमान इम्तिहान लूंगा, तुम्हारे ब्लड टेस्ट लूंगा, तुम्हारे हार्ट के टेस्ट होंगे, ब्लूमिंग होगी, जाके देखा जाएगा कि अंदर दिल की तहों में अभी तक क्या गंदगियां पड़ी हैं। और वो मौके होते हैं जब नेकियों का कोई मौका आता है। लिख लें आयत 25-31 में, मा तबय्यन लहुमुल हुदा, हिदायत वाजे हो गई है लेकिन फिर भी गुमराही में पड़ जाने वाले हो। हैरत है तुम्हारे हाल पे, कैसे व्यापार करते हो, कैसे सौदेबाज करते हो। ये कौन लोग होते हैं, अपने लिए लिखिए, मत सोचिए आप सिक्योर्ड हैं। वही सबीलो रुश्त और गई को जहन में ले आइए, किसी लम्हे भी आप रुश्त से उतरकर जलाल के रास्ते पे जा सकते हैं। ऐसे लोग हक को कबूल तो कर लेते हैं लेकिन आजमाइशों में शैतान के फरेब में आ जाते हैं। हिदायत वाजे हो जाने के बावजूद तासुब और जिद और ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और ऐसे लोग गुमराही की तरफ लौट जाते हैं। बस दुआ कर ले अल्लाह मुझे ऐसे लोगों में ना करना। बड़े आजमाइश, बड़ी इम्तिहान है, फिसलने वाला रास्ता ही सिरात मुस्तकीम का, पुल सरात पे भी आंकड़े और तिलकन वाला रास्ता है, स्लिप होता है। आपको मुझे नेकी के काम की नीयत करते ही शैतान चिमट जाते हैं। आप करें तो सही कोर्स फाइन, आप देखिएगा कि कई काम हो जाएंगे ऐसे जो नहीं थे होने, तो ये आजमाइश होगी। तो कभी भी नेकी की कोई नीयत करें और उसके बाद हालात में अप्स एंड डाउन आए तो मुबारक हो आपको, खुशखबरी, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। दीन के नाम पर कोई काम करने की नीयत करना और आजमाइश का आना, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो आप पे करते हैं, और अल्लाह की तरफ से खुशखबरी होती है कि मैं देखना चाह रहा हूं कि तुम सच्चे हो के झूठे। फिर आयत 32-33, गुस्ताखाने रसूल की नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। अल्लाह रसूल की बात जो नहीं मानते उनको गुस्ताख कहा गया इधर। इन्नल्लज़ीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की इसके बाद कि इनके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी, ये हरगिज हरगिज अल्लाह का कुछ नुकसान न करेंगे, अन करीब इनके अमाल वो गारत कर देगा। तकरार है बार बार अमाल की गारत होने की, तो पिछली नेकियों पर तकिया ना किए रहो, वो तो पता नहीं कब की डिलीट हो चुकी। नई नेकियां करो फिर फायदा होगा, कभी कभी अकाउंट डिलीट कर देना तो फिर सब कुछ नए सिरे से करना पड़ता है। ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल का कहा मानो और अपने अमाल को गारत न करो। कितना प्यार है अल्लाह को बंदे से और उसके अमाल से, खुद भी रुकना फिर दूसरों को रोकना, दुश्मनी करना और दूसरों के दिलों में शक डाल देना, ये निफाक नहीं तो और क्या है। तो अल्लाह ताला ऐसी चीजों से बचाते हुए अब आगे आयत 34-36 में अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले लोगों की कुछ बातें भी करते हैं और साथ ही आयत 35 में ईमान वालों को हिम्मत देते हैं कि हिम्मत ना हारो, डट जाओ। इन्नल्लज़ीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका फिर कुफर की हालत में ही मर गए, यकीन कर लो कि अल्लाह इन्हें हरगिज़ भी बख्शेगा नहीं। अल्लाहुम्मा ला तज़अलना मिन्हुम, बस तुम कमजोर बनकर सुलह की दरख्वास्तों पर मत उतर आओ, यानी डोंट बी कॉम्प्रोमाइजिंग, डोंट बी डिफेंसिव, बी ऑफेंसिव, जबकि तुम ही बुलंद गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है, नामुमकिन है कि वह तुम्हारे आमाल जाया कर दे। वाकई जिंदगानी ये दुनिया सिर्फ खेल कूद है, और अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और वह तुमसे तुम्हारे माल तो नहीं मांगता। अल्लाह अकबर, ऐसे लगता है चुटकी काटी किसी ने। अहले ईमान को खुशखबरियां भी दी गई कि हिम्मत करो, हिम्मत अफजाई की गई कि खुशखबरियां बहुत है, दुश्मन तो पहले ही तुमसे रोब खाया बैठा है, जरा तुम सीधे तो हो जाओ। तो अल्लाह ताला तुम्हें दब के सुलह की दावत नहीं देता। यहां जो आपने मसला पढ़ा ना वो यही है कि वन साइडेड शराइत मत मानो, क्योंकि हक और बातिल के दरमियान सुलह और मुफाहमत हो ही नहीं सकती। ये दो कौमी नसीहत है, या आप उनकी तरफ झुकेंगे या वो आपकी तरफ झुकेंगे। ये नहीं हो सकता कि दोनों को मिलाकर एक मजेदार सा दीन स्मूदी की तरह पेश कर दिया जाए, और आज लोग यही कर रहे हैं, सारे दीनों की चंद बातें लेकर स्मूदी बना के गिलास बना के सबको पिला दो। ऐसा नहीं होगा। बातिल को मिटाने के लिए कुव्वत ना हो, मक्का में जैसे नहीं थी, तो वक्ती तौर पर मजबूर और होकर सुलह की जाएगी, जैसे हुदैबिया में भी हुई, पीछे और अगले आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आम तौर पे कुफर के साथ इस्लाम का मामला बड़ा दो टोक मामला होता है। और आगे आयत नंबर 37-38, दीन का तकाजा और बुखल भी है, और साथ ही साथ दुनिया की जिंदगी को एक खेल के नाम पर पेश किया जा रहा है कि यहां जी ना लगाओ। ई यस अल कुमूहा फयुख्फिकुम तबखलू व युखरिज अदगानकुम। एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा कि जब दीन के तकाजे आते हैं तो कहीं बुखल तो नहीं करती। अगर वो तुमसे तुम्हारा माल मांगे और जोर देकर मांगे तो तुम तो उस वक्त बकीली करने लग जाओ, और वो बकीली तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी। खबरदार तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो, तो तुम में से बाज, सब नहीं, बाज बकीली करने लगते हैं, और जो बुखल करता है तो वो दरअसल अपनी जान से वकीली करता है। अल्लाह ताला गनी है और तुम फकीर और मुख्ताज हो, और अगर तुम रूगरदां हो जाओ यानी मुंह फेर लो तो फिर जाओ, वो तो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा औरों को लाएगा, फिर वो तुम जैसे न होंगे। ये आखिरी आयत हाईलाइट कर लीजिए। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्म ला यकूनु अम्सालकुम। तुम अल्लाह की मजबूरी नहीं हो, अल्लाह अपने दीन के काम तो मकड़ों से करा ले, कॉकरोच से करा ले, तुम क्या बड़े बनते हो। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अपने काम करते ही रहें, कोई हमारी जगह पे ना आ जाए। तो दुनिया की चार दिन की जिंदगी आरजी भी और नाकामी भी हुई तो क्या मिला, कुर्बानियां देकर आखरत के लिए चलोगे तो बात बनेगी। और अल्लाह बता रहा है कि दीन के लिए कुर्बानियां दे दो, वरना ये एजाज किसी और कौम को अल्लाह दे देगा, और आज इसके रहालात तो बनते हुए दिख रहे हैं। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को बता रहा है कि तुम नहीं बदलोगे तो देख लो, अब देखिए तातारियों के हाथों अरबों को नीस्तो नाबूद करवा दिया, वक्त गुजरा, और जब तातारी मुसलमान हुए तो क्या हुआ, एक कबीले तुर्कमाने तुर्की कौम थी और उस्मानी कबीला था, खिलाफत के निज़ाम को बदल दिया। इसी पे अलामा इकबाल ने कहा था ना कि है ए यूरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से। तो अल्लाह तो सनम खाने से पासबान ले आए, तुम तो पैदाशी मुसलमान घर बैठो। तो आपके मेरे लिए डांट है इसमें कि तुम्हें अगर मुसलमान घर में पैदा होकर आज तक इस्लाम से वो मोहब्बत नहीं हुई जो गैर मुस्लिम से मुस्लिम होने वाले को हुई, तो घर बैठो अब तुम्हारे साथ अल्लाह का मामला बिगड़ने वाला है। और ये हो रहा है, जो क़यामत के करीब तो ऐसा होगा। आगे है जी सूरत फज्र। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरी सूरत मैंने आपको इशारों में पढ़ा दी। खुलासे में शुरू का एक सवा घंटे का आज का खुलासा सूरत फज्र का था। जिन्होंने मिस किया बाद में जाके कभी सुन लीजिएगा। बस ये कह दीजिए कि मतनी सूरतों में दूसरी सूरत तरतीब में मिशन की तकमील की सूरत है और फतेह मुबीन यानी सुलह हदैबिया का जिक्र है, जिसको यहां फतेह मुबीन कहा जा रहा है, और उसी का पस मंजर, उसी की तफसीलें, उसके फवायद और उसके नताइज। यानी सूरत फतह को दूसरे नाम पे कह दीजिए सुलह हदैबिया है। 48 नंबर की सूरत, 29 आयात है। आयात का खुलासा देख लीजिए, 1 से 7 सुलह हदैबिया की बरकत, 8 to 10 अल्लाह रसूल की असमत, 11 to 17 मुनाफिकीन की मजम्मत, 18 से 28 मोमिनों की तहसीन है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। और आपको पता, ये सवारी पे थे अल्लाह के नबी जब नाजिल हुई, और आज हदीस में सहाबी ने बयान किया है इन्ना फतहना लक, ऐसे कांपती हुई आवाज से कि अल्लाह के नबी पर जब ये सूरत नाजिल हो रही थी तो आपकी आवाज इस तरह से कांप रही थी। पहली 3 आयत मुसलमानों को फतह की खुशखबरी है, गोया के सुलह हुदैबिया खुली फतह थी। बेशक के नबी, हमने आपको एक खुल्लम खुला फतह दे दी ताकि जो कुछ आपसे लफ्जिशें आगे हुई और पीछे सबको अल्लाह मौफ फरमाए और आप पर अपना एहसान कर दे और आपको सीधी राह पर चलाए और आपको एक जबरदस्त मदद दे। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त खिताब से यह आयत शुरू होती है, और नबियों की खताएं वो नहीं होती जो हमारी होती हैं, वो तो एक कह लीजिए कि एक हद से बड़ी भी ख्वाहिश थी। मैंने जो 8-10 तफसीरें इसकी डिटेल में लिखाई हुई अल हिकमतुल बालिगा में, उसकी आखिरी बात है हद से बड़ी हुई तलब कि लोग मुसलमान हो जाए। बखा की कैफियत ये आज भी सच्चे मोमिनों के अंदर आप देखेंगे, जो सच्चे मुबल्लिग हैं उनका दिल नहीं चाहता घोल के पिला दे, लोगों को बुरा लगे, अच्छा लगे, लंबा लगे, छोटा लगे, मासे करना लगे, मजबूर करना लगे, जो मर्जी लगे, लेकिन बात है कि एक दफा ले लो। ये वही प्यार है जो माँ कहती है बच्चे को, चख के तो देख है क्या, तू क्यों कहता मैंने नहीं खाना। ये थी अल्लाह के नबी की हैरत, जिसको फला अल्लाह कबाख नफ्स कला सारहिम कहा गया। उस खता की तरफ यहां इशारा है और इसकी बहुत सारी तफसीरें हैं जिसका इस वक्त वक्त नहीं है। और अल्लाह ताला ने नबी के जरिए से इधर आपको मुझे भी बता दिया कि जब तक आपके मेरे दिल में ये कैफियत नहीं आती तब तक ये काम हो नहीं सकता। ये बातें ऐसे ही ऊपरे ऊपरे दिल से कर रहे हैं तो असर भी नहीं होता। फिर आगे आयत नंबर 4 से 7 मोमिनों के दिलों को तसल्ली, और खास तौर पे आयत 4 और 5 सहाबे कराम पर अल्लाह ताला के इनामात का तस्करा। हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया। अल्लाह हमारे भी दिलों में सुकून डाल दे, सब घबराहटें दूर कर दे, जो होगा देखी जाएगी, ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाए। साहबा को एक नया ईमान मिला अल्लाह के नबी की इताअत करके, वो तो एक नया ईमान था जिसके साथ वो हुदैबिया से पलटे थे। एक कोर्स करवा दिया अल्लाह ने हुदैबिया पे साहबा को, ईमान कोर्स, सिचुएशन में डालकर। प्रैक्टिकल था, थेरी तो पहले ही पढ़ते रहते थे, मुश्किलात ऐसी ही होती हैं। मुसलमानों, आसमानों और जमीन के कुल लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह ताला दाना बाहिकमत है। यह है जी अल कल्बुल मुतमईन आयत 4 में। तो सुकून और इत्मीनान से ईमान में इजाफा होता है, और ऑपोजिट भी कहिए, ईमान से सुकून और इत्मीनान में भी इजाफा होता है। और सुकून और इत्मीनान और ईमान जितना बढ़ता है उतना शक और उतने ही शुबहात निकल जाते हैं, यानी उनका इजाला हो जाता है, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और इनसे इनके गुनाह दूर कर दे। और अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमारे भी गुनाह दूर फरमा दे। आप देख रहे हैं कि किस तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ सहाबा ने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, डिसिप्लिन रहे, किसी बात में आगे पीछे ना हुए। इस कैफियत से अल्लाह ने उनके अंदर और भी ईमान बढ़ा दिया और इसके बरक्स अब आगे कुछ चीजें देखेंगे मजीद, और वो क्या है कि ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाने की बात जो कर दी। आगे मुनाफिकों की बातें हैं, मुनाफिकीन और मुशरिकीन पर अल्लाह की लानत का तज़किरा, और ताकि इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्द और मुशरिका औरतों को अजाब दे जो अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानियां रखने वाले हैं। दरअसल इन्हीं पर बुराई का फेर है। अल्लाह इन पर नाराज हुआ और इन्हें लानत की और इनके लिए दोजख तैयार की, और ये वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन के लश्कर हैं, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। दो दफा आएगी ये आयत, इसको भी हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था अपने डिटेल्ड सफर में कि अल्लाह के लश्करों से क्या मुराद है। यहां बस इतना समझ लीजिए कि आपकी मेरी अल्लाह को जरूरत नहीं है, उसके बड़े लश्कर है। उसने तो मकड़ी से जाला बुनवाकर नबी की और हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिफाजत करवा ली थी, तो आप में क्या इस्लाम की हिफाजत करेंगे। कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये अंदाजे सूरत में डांट असल में नमरूद के कान में या नाक में, शायद नाक में मच्छर घुसा दिया, वो अल्लाह का लश्कर था। और ये जो कोरोना, ये भी अल्लाह के लश्करों में एक लश्कर है। अल्लाह इसे मरी जान छुड़ा दे। सारे साथी जिनके घरों में इर्द गिर्द जो भी बीमार हैं या चले गए हैं, या अल्लाह उनको सब्र जमील भी दे और सेहतमंद कर दे जो लोग जिंदा हैं। और हमें अपने नबी की सुन्नतों में जीने वाला और उनके मकसद के लिए कोशिशें करने वाला बना दे। हम अपने ऊपर लेते हैं कि ये हम पे सजा है, हमने वो मकसद छोड़ दिया तो उन्हें हमारे ऊपर एक ऐसी बीमारी तारी कर दी कि जिसने हमें और भी चीजों से बेनियाज कर दिया। आगे आयत 8 और 9, नबी सल्लम का मुकाम भी है और आपकी अजमत भी है। इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशिरम व नज़ीरा, यकीनन हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि मुसलमानों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और इसका अदब करो और अल्लाह की पाकी बयान करो सुबह शाम। क्या खूबसूरत बातें हैं। सुबह भी अल्लाह और रसूल के नाम के साथ हों और शामें भी हों। और ये कब होगा? जब खिदमत दीन के मिशन में नबी का साथ देंगे। यहां सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि आप देख रहे हैं कि मदद करना व तवक्की रू, इस पे भी एक एक लफ्ज पे घंटों बात होती है। अल्लाह ताला हमें इस मिशन में खपा दे, सुबह शाम की दुआएं भी करें और इसके साथ साथ हम नबी के तरीकों पे चलें। आयत नंबर 10 है जी, बैते रिजवान की तहसीन और सहाबा कराम कैसे बेलौस साथी थे, इसका तस्करा है। वही वाक्य चल रहा है जिसके ऊपर सूरत का मेन थीम चल रहा है। इन अल्लज़ीन युबायिऊन का इन नमा युबायिऊन अल्लाह, जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह ताला से बैत करते हैं, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है जो वो है। और जो शख्स भी अहद शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही अहद शिकनी करता है, और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो इसने अल्लाह के साथ किया तो इसे अनकरीब अल्लाह बहुत बड़ा अजर देगा। क्या पता चला कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिंदगी में जिस वक्त इस्लाम को हमारी जरूरत होती है, दीन को हमारी जरूरत होती है, कुरान को जरूरत होती है, दीन के नाम पे कोई वक्ती जरूरत होती है। ये तो दिन रात रहेगा, बस उस वक्त पे तस्लीम और रजा समझते हुए दिल की सकीनत के साथ हाथ बढ़ा दीजिए तो अल्लाह ताला आपको असहाबे बैते रिजवान में शामिल कर लेता है। ये बात नहीं है कि आप दीन का क्या काम कर रहे हैं, ये तो आप कर रहे हैं ना। ये बात है कि कब जरूरत थी और आपने किया कि नहीं किया, जब इस्लाम को जरूरत। और क्या आज इस्लाम को जरूरत है मेरी आपकी? यकीन कीजिए कि आज तो सेल पे लगा हुआ ये काम, कोई ले ही नहीं रहा ये काम। आप मेरे जैसे लोगों को भी आज हिस्सा मिल गया दीन के काम में। एक वक्त आएगा हमें इसे नहीं मिलेंगे, टीम इज कम्प्लीट, देर इज नो मोर रूम फॉर एनी वन। और वो आएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब के दौर में ये आएगा, हमारी जरूरत नहीं रहेगी। आज भी नहीं है लेकिन अल्लाह ने आज टेंडर खोले हुए, तो आज हाथ बढ़ाकर अगर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो बात बनेगी। आगे आयत 11 से 14, अल्लाह की राह में निकलने से गुरेज का कोई जवाब नहीं है, और साथ ही लिख लीजिए कि जन्नत सिर्फ दुआओं से नहीं अमल से मिलेगी। यही पैगाम है इन आयात का। सयकूलु लकल मुखल्लफून मिनल आराब, देहातियों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे वो आप तुझसे कहेंगे कि हम अपने माल और बाल बच्चों में लगे रह गए। एक सेकंड गौर कर लें बस इस पे। आज भी बहुत सारे लोगों का उजर घर या बच्चे, बस आप हमारे लिए मग़फ़रत तलब कर दीजिए। हाँ, वैसे हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम यही दुआ दे सकते हैं आपको कि आपको अल्लाह अपने रस्तों में निकाल दे। हाँ, ये लोग अपनी जुबानों से वो कहते हैं जिनके दिलों में नहीं है। आप जवाब दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से किसी चीज का भी इख्तियार कौन रखता है? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें कोई नफा देना चाहे, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो इससे अल्लाह बाखबर है। अल कल्बुल मुनाफिक, बड़ा खतरनाक दिल है। यकूलून बी अलसिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, ये वो शख्स है जो जुबान से बातें बड़ी प्यारी करता है लेकिन अंदर दिल में कुछ और होता है। निफाक की चंद निशानियां देख लीजिए, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी, ये दिल का ईमान से खाली होना, तसन्नो और बनावट होना, और अल्लाह ताला पर तवक्कुल ना होना। अल्लाह की राह में निकलने को दिल बड़ा करता है पर मजबूरियां बड़ी हैं, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरी मासी नहीं आई, क्या बड़ी आजमाइश पड़ गई मेरे ऊपर, मेरे बच्चे हैं सबके होते हैं, मेरा एक ही शौहर है सबका एक ही होता है, मेरा एक ही घर है। ये दलीलें जिंदगी से निकाल दीजिए। साहबा भी अगर यही कुछ कर रहे होते तो आज रदी अल्लाह अन्हुम वरदुअन न होता। कुरैश नहत्ते मुसलमानों को तर्द निवाला समझकर मिटाने के ख्वाब देख रहे थे और अल्लाह ने ऐसे सहाबा पैदा कर दिए नबी के लिए कि जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। अल्लाह हमें सहाबा की तरह तारीख साज बना दे। वो तारीख साज थे, हम खुद साज हैं। हमारी अभी अपनी नहीं पूरी पड़ रही। वो कहते हैं ना, जिनका अपना पेट ना भरे उन्होंने दूसरों को क्या देना है। बार बार अपने ही काम अपने ही फिक्र। तो अल्लाह आज की मुसलमान उम्मत को चुका रहे। अल्लाह मुझे आपको आंखें खोल कर इन चीजों पर गौर व फिक्र करने वालों में शामिल कर दे। आगे देखिए 12। नहीं बल्कि तुमने ये गुमान कर रखा था कि पैगंबर और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना कतन नामुमकिन है, और यही ख्याल तुम्हारे दिलों में रच बस गया था और तुमने बुरा गुमान कर रखा था। दरअसल तुम लोग हो ही हलाकत वाले। अल्लाह अकबर। और आगे आप देखिएगा क्या है 13-14 में, अल्लाह के रसूल का साथ ना देने वाला मोमिन नहीं होता। सच्ची बात है, आप भी उस रिश्तेदार को कभी ना माने कि आपका प्यारा है जब दुख में आपके काम ना आए। तो याद रखिएगा इन आयात को सुनते वक्त। और जो शख्स अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान न लाए तो हमने भी ऐसे काफिरों के लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है, और जमीन आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। अल कल्बुल मुनाफिक, क्या दिलों में गुमान थे इनके, मुसलमानों से बुरे गुमान थे। आयत 12 देख रहे हैं हम लोग। जिनकी नीयत में फसाद हो, जो किसी भले काम के लायक ना हो, फिर वो ऐसी बदगुमानियां फैलाता है। देखिए, जब दिल खट्टे होते हैं ना, तो वो चीज जिसकी कल तक हम दावत दे रहे होते हैं ना, गैर महसूस तरीके से उधर से हटाकर डाइवर्ट करने लग जाते हैं हम दूसरी तरफ लोगों को। अल्लाह ताला हमें ऐसे कीनों से बचा के रखे। तो क्या पता चला कि दिलों का खोट खपट अल्लाह से छुपता नहीं है। फिर आप देखिए कि इससे ये भी बात पता चलती है कि अल्लाह दरगुजर करता है, सारी जिंदगी मोहलत देता है कि इंसान पलट आए तो अल्लाह ताला उसको पलटा देता है। आगे आयत 15 में फतेह खैबर की बिशारत भी है और मुनाफिकीन की महरूमी है। और 15-17 तक चलेंगे तो एक टॉपिक लिख लीजिए, नेकी का मौका नहीं गंवाना। एक दफा रूठेंगे तो छूट जाएंगे, नेकियों के कई मौके घूमेंगे। देखिए, नेकी खानदान की तरह आती है। एक लड़की से शादी होती है तो पूरे खानदान से रिश्ता जुड़ जाता है ना। नेकियों में से एक नेकी से रिश्ता जोड़ेंगे तो और बहुत सारी नेकियां आप करेंगे। जैसे ये दौरे कुरान की नेकी आपको देखिएगा कहाँ खड़ा कर देगी। और जो एक नेकी छोड़ता है, मतलब आपने दौरे कुरान की नेकी छोड़ दी होती किसी अपने प्यारे के बुलाने पर ना आते, तो फिर अगले रास्ते तो खुद ही बंद हो जाते। तो देखते हैं, सयकूलुल मुखल्लफून इज़न तलक्तुम इला मगानिम, जब तुम गनीमतें लेने जाओगे तो झट से ये पीछे छोड़े हुए लोग कहने लगेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने की इजाजत दीजिए। वो चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को बदल दें। वो कहते हैं ना, मीठी मीठी सुन्नतें, कड़वा कड़वा थू और मीठी सुन्नतें। जहां गनीमत मिलने की बात है तो उस बच्चों की तरह मचल रहे हैं, हम भी साथ जाएंगे। और हुदैबिया के मौके पे भीगी बिल्लियां बन गए थे, नहीं घर खाली वो खाली, कैसे जाएं, बीवी भी है बच्चे भी हैं। अल्लाह कहते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह पहले ही फरमा चुका कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चलोगे। वो इसका जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम हमसे हसद करते हो। असल बात यह है कि वो लोग बहुत ही कम समझते हैं। फतेह मक्का में, सॉरी हुदैबिया के मौके पे जो गए थे सिर्फ उन्हीं को खैबर में जाने की इजाजत दी गई क्योंकि खैबर से बहुत माल गनीमत मिलना था। इससे पता चलता है कि बाज दफा एक नेकी जिसको मुश्किल समझ के छोड़ते हैं आने वाले वक्त में वो हमें बहुत सारी दुनिया की भी खैर देती हैं। और वाकई खैबर में मुसलमानों को वो मिला कि सबके चूल्हे जल गए और दौलत और माल उनके घर की बांदी बन गया। आप पीछे छोड़े हुए बदवियों से कह दो कि अनकरीब तुम एक सख्त जंगजू कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि तुम इनसे लड़ोगे या वो मुसलमान हो जाएंगे। बस अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत बेहतर बदला देगा और अगर तुमने मुंह फेर लिया जैसा कि इससे पहले तुम मुंह फेर चुके हो तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। यानी अब तुम्हें हम यहां तो नहीं लेके जाएंगे खैबर में। हाँ आगे फिर एक बड़ी सख्त जंग होने वाली है, हुनैन की और दूसरी आने वाली जंगों की तरफ इशारा था, वहां तुम्हें लेकर जाएंगे, इसमें फिर नहीं जाएंगे। तो मुनाफिकीन के लिए आजमाइश की एक और घड़ी की बात कर दी कि अल्लाह तुम्हें फिर आजमाएगा, तुम हुदैबिया में नहीं गए कोई बात नहीं, खैबर में हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, आराम से बैठ जाओ। हाँ लेकिन एक और जंगजू कौम आएगी और उधर तुम जाओगे, यानी अल्लाह ने भी खोट खपट जाहिर करके रहना है। हाँ रह गए वो लोग बेचारे जो उजर वाले थे और नहीं जा सके, तो अंधे पर कोई हरज नहीं, न लंगड़े पर कोई हरज, न बीमार पर कोई हरज, जो कि अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे इसे अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके दरख्तों तले नहरें जारी हैं, जो मुंह फेर ले इसे दर्दनाक अजाब की सजा देगा। आप सोचिए सहराओं में रहने वालों को जब ऐसी आयतें मिलती होंगी कि वह नहरें होंगी तो उनके लिए ये कितना खूबसूरत लम्हा होगा। और इससे ये भी पता चल जाता है कि जब कोई नेमत नहीं होती तो उसका शौक बंदे के अमल को तेज करता है। आज हमारी दुनिया ही जन्नत बन गई, हमें तो जन्नत के आयतें पढ़कर भी कोई मोटिवेशन नहीं मिलता इल्ला माशाल्लाह। आयत 18 से 21 में बैते रिजवान करने वालों के लिए कुछ बिशारतें, बड़ी खूबसूरत आयत। लकद रदी अल्लाह अनिल मोमिनीन इज युबायूनक तख्त शजर। यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों से खुश हो गया जबकि वो दरख्त तले तुझसे बैत कर रहे थे, इनके दिलों में जो था इसे इसने मालूम कर लिया और इन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया और इन्हें करीब की फतह इनायत फरमाई और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे और अल्लाह गालिब हिकमत वाला। आप देख रहे हैं सिर्फ फतह और फतह की खुशखबरियां, कितनी जंगों की खुशखबरियां अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो कल्बुस साकिन देख लीजिए, अल कल्बुस साकिन सुकून वाला दिल, सकीनत वाला दिल, फंजल सकीनत अलैहिम। ये क्या होता है? तीन चीजें आपके सामने, अपने आप को चेक कीजिएगा क्या मेरा दिल ऐसा है? किसी खौफ या घबराहट के बगैर फैसला कर लेता है बंदा, कब? जब किसी अजीम मकसद के लिए खतरनाक जगह पे भी जाना पड़े तो बंदा कूद पड़ता है और मुकम्मल इत्मीनान कल्ब के साथ जम जाता है। मैं अगर इसको कुरान पढ़ने पे ले आऊं ना, हाय नहीं होगा, बड़ा लंबा होगा, बड़ी लॉन्ग कमिटमेंट है, नहीं कर सकती। और अगर आपका दिल कल्बे स्किन आप कहेंगे होगा, देखिए आप कूद पड़ेंगे और अल्लाह बचा लेगा। और जो खौफ और घबराहटों में रहेंगे उनको तो कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह हमारे दिल जमा दे। फिर आगे आए 20, अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए एक निशानी हो जाए और ताकि तुम्हें वो सीधी राह पर चलाए। यहां देखिए हिदायत की बात है, वयहदियकुम सिरातम मुस्तकीमा। दुश्मनों के खिलाफ जंग की सूरत पैदा न होने देना ये अल्लाह की मदद थी। यानी आप कह लीजिए कि अल्लाह ताला अपने बंदे की हिदायत के लिए सिरात मुस्तकीम की तरफ उसकी रहनुमाई करते हैं और अल्लाह का इंसानों को हिदायत पर इस्तकामत देना एक नेमत है। मांग लीजिए, आज मांग लीजिए कि अल्लाह ये नेमत हमें दे दे, हम तेरे घर से ऐसे नहीं जाएंगे, इस्तकामत दे दे और तुम्हें और गनीमतें भी दे जिन पर तुमने अब तक काबू ना पाया। अल्लाह ताला ने इन्हें काबू कर रखा है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। क्या पता चला कि बशारतें और खुशखबरियां, हजरत उस्मान का बदला लेने पे जो बैत हुई थी उसको बैत अलल मौत कहते हैं और बैत अलल ला नफिरु, हम नहीं भागेंगे अल्लाह के नबी। क्या वो भी वक्त था, हाथ में छुरी भी नहीं है और चले हैं दुश्मन को मारने, अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि अल्लाह के इल्म में है कि उसकी राह में जान देने का ऐसा जज्बा इनके दिलों में मौजूद था। ऐसे ही लोगों के लिए किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, अपने ऊपर लीजिएगा, जो हक की खातिर जीते हैं मरने से कहीं डरते हैं जिगर, जब वक्ते शहादत आता है दिल सीनों में रक्सां होते हैं। یعنی اللہ کے راستے کے تقاضوں پہ روتے نہیں بلکہ خوشیاں مناتے ہیں. اور صلح حدیبیہ جو ایک یک طرفہ جنگ تھی, اللہ نے ایسی تسکین دی کہ صحابہ کے دل خوشیوں سے اچھل رہے تھے کہ اب نیکی کا ایک اور موقع آ رہا ہے جو ہم کرنے والے ہیں, اور اللہ ہمیں ہر پروجیکٹ کے بعد ایک اگلا پروجیکٹ پکڑ کر اس کو آسن درجے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مکہ فتح ہونے تک یہ چلتا ہی گیا جب تک کہ اللہ کے گھر گندگی سے پاک نہ ہوا, اور جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوکا کی پکار نہ آ گئی بنی اسرائیل سورت 81 میں. اللہ ہمیں حق کے آنے تک جمائے ہی رکھے اور ہم یہ کام کرتے ہی رہیں. آج تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے جتنی اس دور میں تھی. آج 2 بلین ہے, اس دور میں تو چند ہزار تھے. آگے آئے 22 سے 25. اگر مشرقین جنگ کرتے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے. اتنی بڑی خوشخبری ہے, مجھے تو ایک ایک لفظ یاد آ رہا ہے جو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اگر واقعی سوال لکھے کہ اگر ہو جاتی حدیبیہ کے موقع پہ جنگ, ایک تیر نہیں تلوار نہیں, چھوٹی سی کرچیاں تھی جو راستے میں قضائے حاجت کے لیے رکھتے یا کچھ جانوروں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, نیل کٹر کہہ لیجئے, چھوٹے چھوٹے کٹر کہہ لیجئے, تو اللہ کہتے اگر جنگ ہوتی تو جیت پھر بھی مسلمانوں نے جانا تھا, کیونکہ مومن ہے تو تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مسلمان کا سہارا ہتھیار نہیں ہے, اللہ کی مدد ہے, یہ ایمان ہے, یہ سکینت ہے جو بندوں کو فتح یاب کرتی ہے. اور اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ دکھا کر بھاگتے, پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا. وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا, اور اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دیا تھا, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا, اور قربانی کے لیے موقوف یعنی کھڑے ہوئے جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا. اگر ایسے اور بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں جنگ نہ ہوتی, یا حکمت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں نہ ہوئی پھر جنگ جبکہ جیتنا تو مسلمانوں نہیں تھا, تو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں کچھ لوگ در پردہ مسلمان ہو چکے تھے, ان کو بچانے کے لیے اللہ نے جنگ سے روک دیا. سنیے اس تناظر میں. اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی, یعنی ان کے پس جانے کا احتمال یعنی خطرہ نہ ہوتا, جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا, تو تمہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے. اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ جنگ نہ ہونے کے لیے کچھ ایمان والوں کی وجہ سے روکتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو اپنے ایمان والا ایک ہی شخص یونان نون ہے, صحابہ کو نہیں پتہ لوگ مسلمان ہو چکے, لیکن اللہ نے ان کی جان کو رسک پہ نہیں رکھا, کیونکہ ایک مومن کی جان اللہ کے ہاں بڑی پیاری ہے. اور اب آگے آئے 26, صحابہ کرام کی مدح و تحسین. اتنی رومانٹک آیتیں ہیں, یقین کریں کہ اگر سچا پیار دیکھنا ہو کسی کا کسی سے تو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے صحابہ کا پیار تھا, اور اللہ کے ساتھ آف کورس دونوں کا پیار. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی پیار کرنے والا بنا دے. جہالت کے کاموں کی حمایت کرنے والوں کی بھی کچھ باتیں ہیں آیت 26 میں. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ, جبکہ ان کافروں کو اپنے دلوں میں آر کی جگہ دی, اور آر بھی جاہلیت کی, سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا, اور اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے وہ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. جی یہ ہے القلب الجاہل, حمایت کی بات ہے. پیچھے آپ کو الحمدللہ ڈیٹیلز دے چکی ہیں تبرج الجاہلیہ میں, اور اس پہ لیکچر ہے. چار قسم کی جہالتوں میں آج آخری جہالت کا تذکرہ ہے. ادھر حمایت کرنا, جاہلانہ حمایت, خاندان کی حمایت, برادری کی حمایت, فرقے کی حمایت, گروہ کی حمایت, اس میں ہر دھرمی ہوتی ہے, قوم پرستی ہوتی ہے, آبا پرستی ہوتی ہے, اور روایت پرستی ہوتی ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ صرف کفر کے نام غلط چیزوں پہ ہی رکھے, और साहबे कराम हकीकत में अल्लाह के नाम पे जुड़े थे नबी के साथ, इसलिए उनको किसी खानदान बिरादरी किसी की को बात की जरूरत नहीं थी। और अभी सुलह हुदैबिया हो रही थी तो अबू जंदल बेड़ियों में जकड़े हुए आ गए और लाए गए, और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मुझे साथ ले जाएं, लेकिन आपने उस वक्त भी उनको छोड़ दिया क्योंकि मैन ऑफ दी वर्ड्स थे, अभी लिखे नहीं गए थे जुमले, सिर्फ बोले हुए थे। और उसी अभी जुंदल ने बाद में क्या खूबियां दिखाई, इसके लिए आप रही को मखतूम में से वाक्य पढ़िए सुलह हुदैबिया का, तो आपका ईमान गर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कहने लगी अगर आपको रसूलुल्लाह मान जाए तो झगड़ा ही खत्म, इसको मिटाइए। आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि मिटा दो। देखिए ये होते हैं इजी गोइंग, रूली, सॉफ्ट स्पीक, कोई बात नहीं, मेरा नाम काट भी दो तो मुझे कोई परवाह नहीं, पीछे कर दो, दीन का फायदा देखो। हजरत अली ने कहा मैं तो नहीं काटता था, कहा बताओ किधर है। अपने दस्ते मुबारक से लफ्ज रसूलुल्लाह आपने आगे उठा दिए, क्योंकि जो रसूलुल्लाह उसको क्या लगे, कोई कहे ना कहे, तो आपको मुझे सेल्फ प्रोजेक्शन से क्या लगे, जो है वो है। तो अपने अंदर से सब खुरच के सब चीजों को निकाल कर पूरे तौर पर अल्लाह के लिए जमने वालों में हम शामिल कर लें, फिर देखें मिलता है तो क्या मिलता है। और अब आगे देखेंगे आप आयत 27 से 28 में उमरा कजा का जिक्र है और नबी के ख्वाब के सच होने की बात है, एक साल बाद ख्वाब सच होता दिख रहा है। लकद सदक अल्लाहुर रसूल रोया बिल हक, यकीनन अल्लाह ताला ने अपने रसूल का ख्वाब सच कर दिखाया कि इंशाल्लाह तुम यकीनन पूरे अमन अमान के साथ मस्जिद हराम में दाखिल होगे, सर मुंडवाते हुए और सर के बाल कुतरवाते हुए चैन के साथ निडर होकर। वो इन उमूर को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, बस इसने इससे पहले एक नजदीक की फतह तुम्हें मुयस्सर की, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि इसे हर दीन पर गालिब करे, और अल्लाह ताला काफी है गवाही देने वाला। ये है जी मिशन की तकमील की आयत, पीछे भी पढ़ी, यहां आई, आगे सूरह सफ में तीसरी बार आएगी, 28 आयत। अल्लाह ने अपना मिशन पूरा करा दिया नबी के जरिए और सहाबा के जरिए, सारे दीनों पे गालिब कर दिया इस्लाम को, नबी का ख्वाब भी पूरा और मिशन भी पूरा। जिंदगी में अल्लाह हमसे भी अगर कोई काम ले ले और हमें बड़े बड़े ख्वाब देखने वाला और इन ख्वाबों को पूरा करने वाला बना दे, जहां जहां दीन का काम करने की नीयत है अल्लाह उसको पूरा करा दे, और अल्लाह हमारे बात हमारे साथियों को तौफीक दे कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इसी पैगाम को आम करते करते हक के पैगाम को गालिब करते करते चले जाएं। और ये है वो बात जिसको कहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरोजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अब है जी आखिरी आयत सूरत फतह की, अल्लाह के महबूब बंदों के औसाफ और सहाबे कराम की तारीफों के गुण। दो तीन घंटे चाहिए सिर्फ इस एक आयत को जज करने के लिए, पढ़ेंगे तो भी हम सिर्फ चंद मिनट में। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, तो इन्हें देखेगा कि रुकू और सजदे कर रहे हैं अल्लाह ताला, रुकू और सजदे कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल और रजामंदी की जस्तजू में है। इनका निशान इनके चेहरों पर सजदों के असर से है, इनकी यही मिसाल तौरात में है और इनकी यही मिसाल इंजील में है। मिसल इस खेती के जिसने कोम्पल निकाली फिर इसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को खुश करने लगा ताकि इनकी वजह से काफिरों को चिढ़ाए। इन ईमान वालों और नेक अमल करने वालों से अल्लाह ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है। अल्लाह के नबी और सहाबा एक खेती थे, क्या खूबियां थी वो तो आपने पढ़ी ही ली, आपस में दोस्त दुश्मनों में सख्त, दीन के नाम पे पत्थर लोहा लाट, और जब लोगों से मिलते तो खिदमत के जज्बे से मामूर, ताल्लुक अल्लाह से क्या कि रातों को अल्लाह के सामने रुहबान बने होते और दिन में फुरसान बने होते, उसी की रजा मकसूद, नबी का भी, नबी की भी रजा नहीं चाहिए थे कि नबी को पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह की रजा और फजल के तलबगार, और कसरत सजूद से रूहानियत का एक नूर इनके चेहरों पे चमकता था। एक सच्चे मोमिन के चेहरे पे जो चमक थी वो सहाबा के ऊपर थी, चाहे उसका एक गट्टा भी पड़ जाए या ना भी पड़े। ये आला किरदार तौरात और इंजील में भी बयान किया हुआ था, और सहाबा की बढ़ती हुई तादाद और उनकी तरक्की करते हुए अखलाक और औसाफ को यहां एक खेती से तशबीह दी गई जो जमीन से बरामद हुई। अकेले चले थे, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, फिर एक कारवां बन गया। अल्लाह ने रफ्ता रफ्ता इस खेती को तकवीयत दी, अपने बलबूते पर खड़ी हुई। अल्लाह के नबी को यहाँ जुर्रा कहा गया। अगर आप देखें, किसान के लिए अरबी में दो लफ्ज आते हैं, एक काफिर कुफार, कफरा पीछे भी पढ़ते हैं हम। जब बीज को जमीन में दबाए तो किसान को कुफार कहते हैं, छुपाने वाला, और जब खड़ी फसल को काटने वाला हो तो वो जुर्रा होता है, टेक केयर करने वाला। और अल्लाह के नबी ने वाकई ये खेती बड़ी मेहनत से लगाई, ये एक दिन में खेतियां नहीं लगती। लेकिन हसद करने वालों की जलन और बढ़ती है, और सहाबा की ये जमात अल्लाह के नबी की मेहनत और तरबियत का समरा था। वो कहते ना कि फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने वाले हैं। हर सहाबी एक बूटा था, नर्सरी ऑफ हीरोज थे, और अल्लाह के नबी अपनी मेहनतों के समरात देखकर खुश हो रहे थे, और कुफार अल्लाह के नबी के साथियों को फटता फूलता देखकर हसद की आग में जल रहे थे। वो जलते रहे, अल्लाह तो अपने नबी के इन मुखलिस साथियों को नवाजता ही रहेगा, और रोजे क़यामत अपनी बख्शिश और अजर अजीम भी अता फरमाएगा। अल्लाह हमें इसी नक्शे कदम पे चला ले। यहां मिशन पूरा हो गया, ऐसे लगता है अब अल्लाह के नबी आराम से दुनिया से जा सकते थे। अब आगे सूरत हुजरात है, जिसका एक नाम सूरत अल अखलाक भी है। मिशन की तकमील होने के बाद जो मुआशरा पैदा होगा उसमें किन खूबियों के लोग होंगे, दूसरे लफ्जों में अब लिखिए इस सूरत का टॉपिक, इस्लामी रियासत के अहकाम, क्या रहनुमा असूल हैं, कैसे मुस्तहकम और मजबूत होंगी। और याद रखिये, ये मुल्कों और शहरों और इदारों और ऑर्गेनाइजेशन और दीन के नाम या दुनिया में काम करने वालों के लिए सब के लिए सेम रूल्स हैं। वही कामयाब होगा जो इन असूलों पे काम करेगा, वरना तो फिर धक्के ही हैं निरे। हाईवे पे गाड़ी जाती है, फिर पता चलता है कि मैंने पांव किस गाड़ी में डाल दिए थे, अब तो मुझे ब्रेक लगानी नहीं आ रही। तो दीन के नाम पे कुछ भी करने से पहले 10 दफा सोचिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि एक वक्त आएगा कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इन आयतों को भी, 18 आयतें हैं टोटल, और यहां एक बड़ी प्यारी बात नोट कीजिएगा, 18 आयतें हैं टोटल 18, जिनमें 5 बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू और 5 ही बार इत्तकुल्लाह की पुकार है, यानी आपको मुझे बुलाने वाली ये सूरत है। आयतों को देखते हैं, पहली 5 आयतें 1-5 इस्लामी रियासत की दस्तूरी बुनियादें, आयत 6 मिल्लत इस्लामिया की शेराजा बंदी, 7-8 इस्लामी रियासत की दस्तूरी बुनियादें, 9-12 मिल्लत इस्लामिया की शेराजा बंदी, 13 आलमी इस्लामी रियासत के लिए वहदत की बुनियाद, और 14-18 इस्लामी रियासत में शहरियत की बुनियाद, यानी किसको नेशनलिटी मिलेगी उनकी बातें हैं। अल्लाह आज भी ऐसे पुरअमन मुआशरे बनवा दे। आइए देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमु बैन यदियल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। पहली 5 आयतें, अल्लाह और नबी के अहकामात से तजावुज नहीं करना, और इसका पहली आयत का खास तौर पर टॉपिक लिखिए, कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी, चाहे वो अदालतों में हो, मुल्कों में हो, या हमारे घरों, खानदानों, शादी ब्याह में हो, या हमारे 5 से 6 फुट के इस वजूद में हो। ईमान वालों, ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल के आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ईमान वालों, अपनी आवाजें नबी की आवाज से ऊपर न करो और न इनसे ऊंची आवाज से बात करो, जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल अकारत चले जाएं और तुम्हें खबर भी न हो। बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के हजूर में अपनी आवाजें पस रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजकारी के लिए जांच लिया, इनके लिए मगफरत और बड़ा सवाब है। जो लोग आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं, इनमें अक्सर बिल्कुल बेअक्ल हैं। आयत 3, अल-क़ल्बुत्तक़ीश, मुत्तकी का दिल, और लिख लें, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़्वा। ये लफ्ज़ इम्तिहान है जो हम आप देते हैं ना, साबा के लिए अल्लाह ने लिख दिया, तुम्हारा इम्तिहान ले लिया मैंने, बदर में भी लिया और उसके बाद खुदैबिया, बल्कि तबूक तक हर लम्हे तुम्हारा इम्तिहान लिया। तुम वाकई खोटे नहीं थे, तुम अपने थे, तुम सच्चे लोग थे, तो कबूल आमाल के दो नताइज, नंबर एक मग़फ़रत इलाही और दूसरा अजर अज़ीम। अल्लाह आपको मुझे ये दोनों अता फरमाए। और ये बता दिया कि अल्लाह रसूल के हुक्मों से तजावुज नहीं करेंगे तो वही मुल्क फ्लरिश करेगा। नाम जो मर्जी रख दीजिए, कानून इस्लाम का लगाइए तो चलेगा। और नाम रख दें पाक और कानून हो गैर का, तो जो हो रहा है अल्लाह उसको बचाकर हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज करे, दिल के रस्ते से लेकर दिमाग आंखों से लेकर फिर अदलिया और कवानीन में इस्लाम चला जाए, हीला साजी ना हो जाए शरीयत के नाम पे, बल्कि अमल करने वाले लोग तैयार हों। और इसके लिए किरदार, नबी सल्लम ने 13 साल पहले किरदार बनाए, लोग बन गए तो मदीना भी बन गया। आज किरदार वो नहीं है, नमाज नहीं लोग पढ़ते तो वो दीन कहाँ कायम करेंगे जो नमाज ना कायम करें। और खासतौर पर ये जो आयत 2 से 5 है ना, ये दस्तूर इस्लामी की जज्बाती और सकाफती बुनियादें हम पढ़ रहे हैं, और उसमें बड़ी चीज है कि अल्लाह के नबी का अदब और एहतराम करो। फरमाया अगर ये लोग यहां तक सब्र करते कि आप खुद से निकलकर इनके पास आ जाते तो यही इनके लिए बेहतर होता और अल्लाह गफूर रहीम है। कुछ बद्दू अरब थे, बाहर खड़े होकर पुकारते थे नबी को, या मोहम्मद उखरज नऊसुबिल्ला। आज भी कुछ लोग अल्लाह के नबी का नाम लेके या के साथ पुकारते हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। कभी साहबा ने अल्लाह के नबी को या मोहम्मद नहीं कहा था, या रसूलुल्लाह कहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबीउल्लाह भी कहते थे, लेकिन जब बेअदबी बढ़ती है तो नातों में, गानों में, फिल्मों की तरह ऐसे तरीकों से नबी की तारीफें की जाती हैं कि अल्लाह की पनाह, नबी के बारे में साहबा से तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वैसे एक सिस्टर एक नात पढ़ रही थी कि आमना का लाल आबत है, सखो प्यारी सखियों पे नाव फूलों के हार। यानी बिलीफ में ऐसी फीलिंग उस नात को सुनकर आती है जैसे दूल्हा आता है और खालाएं फूफियां जो उसको फूलों के हार पे नाती हैं। आपके नबी ऐसे थे? आप अभी तक नबी का ये किरदार पढ़कर आ रहे हैं? नेशनल हीरो कहना उनको आसान है, लेकिन उनको रसूलुल्लाह समझकर उनका एहतराम करना, उनके नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये बड़ी बात है। बहुत कम नातों में नबी के नाम के आगे दुरूद पढ़ा जाता है, हालांकि आपके नाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाजिम है। तो बादब बनसीब, बेअदब बेनसीब, नेकियां जाया हो जाएंगी ऐसे कामों में, गुनाह बर्बाद, नेकी लाजिम ना हो जाए, ये कैफियत। और आगे आयत 6 से 8 में, बगैर तहकीक के फैसले ना करो। जी नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबअ्इन फतबय्यनु। ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, ऐसा न हो कि नादानी में किसी कौम को ईजा पहुंचा दो, फिर अपने किए पर खुद परेशान हो जाओ, फिर अपने लिए खुद ही परेशान हो। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, अगर बहुत से मामलात में वो तुम्हारा कहना मान लिया करें तो उल्टे तुम ही मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारा महबूब बना दिया और इसे तुम्हारे दिलों में जीनत दे रखी है, और कुफर को और गुनाह को और नाफरमानी को तुम्हारी निगाहों में नापसंदीदा बना दिया। यही लोग राह याफ्ता हैं अल्लाह के एहसान और इनाम से, और अल्लाह दाना और बाहिकमत है। अल्लाह मेरा आपका दिल कल्बे मोमिन में ढाल दे। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुम अल-ईमान। कितना सजा हुआ दिल होगा, कितना डेकोरेटेड दिल होगा। तो लिखिए, मोमिन का दिल हिदायत याफ्ता दिल होता है। क्या मेकअप करते हैं दिल का? ईमान का नूर होता है। जिनके दिल ईमान के नूर से मुजयन होते हैं, जो कुफर गुनाह और नाफरमानियों से बेजार हों, आज हिदायत के तालिबीन के लिए ये दिल सामने पेश है। आइए आज कुफर और बेकार चीजों को छोड़िए, फिर देखिए आपका दिल भी खूबसूरत, आपका चेहरा भी खूबसूरत, ऊपर ऐसी चमक होगी कि आपको किसी और चीज की तो जरूरत ही न रह जाएगी। और यहां से फासिक की तरफ से झूठी खबरें प्रोपेगंडों से बचने की दावत है, तो अल्लाह के लिए किसी पोस्ट को आगे करने से पहले रिसर्च किया करें। अगर सिर्फ पोस्ट आगे करने से लोग दीन पे आ चुके होते तो आज आ चुके होते। तो कफा बिल मर इकजीबा अं युखद्दिस बिकुल्ली मा समिया। सही मुस्लिम की रिवायत है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफी है कि जो कुछ सुने उसे बिला तहकीक आगे कर दे। इस्लामी रियासत में अफवाह साजी पे कंट्रोल किया जाता है। हमारे मुहद्दिसीन ने नबी की हदीस लेने के लिए इतनी छानबीन का एक निजाम कायम कर दिया कि जरबुल मिसल बन गई। अल्लाह आपको मुझे भी इसी की तौफीक दे। और अगर रसूल की इताअत ना की तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आयत 7-8 में हमने पढ़ा, और ये बात साहबा को चूंकि समझ आ गई थी इसलिए फिर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी पे तज दी। आगे हम पढ़ेंगे आयत नंबर 9-10 में, दो मुसलमान गिरोह बाहम लड़ पड़े तो फौरन सुलह करा दो, चाहे वो दो भाई हों, मियां बीवी हों, सास बहू हों या कोई और, तो लोगों को जोड़िए ना के तोड़िए। वइन ताइफतान मिनल मोमिनीन इक्ततलू फसलहु बैनहुमा, और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े हैं तो इनमें मेल मिलाप करा दिया करो, फिर अगर इन दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज्यादती करे तो तुम सब इस गिरोह से जो ज्यादती करता है लड़ो, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, अगर लौट आए तो फिर इंसाफ के साथ सुलह करा दो और अदल करो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। याद रखो सारे मुसलमान भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों में मिलाप करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह टूटी हुई उम्मत को, बिखरी हुई लड़ी हुई उम्मत को सुलाहों की दावत देता है। अल्लाह करे दीन के नाम पे भी जुड़े और दुनिया के नाम पे भी जुड़े। देखिए जिप को बंद करना हो तो नीचे से बंद करेंगे तो बंद होती है। हम कहते हैं ऊपर से दो बड़े मुसलमान मुल्क जुड़े हैं, फलां जुड़े हैं, फलां ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, आप पहले अपने भाइयों से तो जुड़िए, अपनी बहनों से तो जुड़िए, दीन के नाम पे साथ काम करने वालों से तो अपने दिलों को जोड़िए, बाकी भी चीजें इंशाल्लाह जुड़ती ही जाएंगी। आयत 11-12, वो मजलसी बुराइयां जो दिलों को फाड़ देती हैं। लिखिए यहां, दिल चाह रहा था एक पारा दिल खट्टे होने पे दूं, क्योंकि कुछ लोगों के दिल खट्टे होते हैं ना तो वो बहुत सारी नेकियों को तलाक दे चुके होते हैं, तो खुदा के लिए अपने दिलों को खट्टा होने से बचाइए। ये वो बुराइयां हैं जिनको अपने अंदर से निकाल देंगे तो इंशाल्लाह दिल खट्टे नहीं बल्कि मीठे हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यस्खर कौमुन मिन कौम, ईमान वालों कोई जमात दूसरी जमात का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है ये इनसे बेहतर हों और न औरतें औरतों का। क्या पता चला कि सेग्रीगेटेड महफिलें होती हैं मुसलमान मर्दों और औरतों की। मुमकिन है कि ये इनसे बेहतर हों, आपस में एक दूसरे को ऐप ना लगाओ और ना दूसरे किसी को लकब दो और ना किसी को बुरे लकब दो। ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है, जो तौबा ना करें वही जालिम लोग हैं। ईमान वालों बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो के बाद बदगुमानियां गुनाह हैं, और भेद ना टटोला करो और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है तुम इसको घिन आएगी, यानी कोई भी नहीं पसंद करता तो तुमको तो इससे घिन आएगी, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। मजलिसी बुराइयां जो हमारी पार्टियों और किटी पार्टीज और इसी तरह शादी ब्याहों में होती हैं कि अच्छे भले लोगों के दिल तोड़ने का सबब बन जाती हैं, अपने आप को इन चीजों से रोकना है। मोमिन पुरमन होता है, पुरमन रखता है, दिल में कल्ब में सकीनत आ जाए तो आप दूसरों की बुराइयां नहीं उनकी खूबियां देखते हैं, और वही बात है कि एवरेज माइंड डिस्कस पीपल, और जो बड़े आला लोग होते हैं वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। अफसोस है कि हमारा कल्चर बन गया, आज तो अखबारों तबसरे टीवी की खबरें, फिर ये जो टॉक शोज हैं इसमें तो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बातें होती हैं। अल्लाह ताला भी बचाए। हमारे कोर्स है कुरान की किरने के नाम पर, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। अगर आप में से किसी साथी को सुनते हुए महसूस हो रहा है कि अपने प्यारों को अब समर और आगे छुट्टियां और आगे कोई शॉर्ट कोर्स करवाएं ताकि वो वापस कुरान से जुड़े, तो कुरान की किरने उसमें पूरी सूरत हुजरात की तफसीर है और बहुत डिटेल है, तो आप लोग उसको भी बाद में सर्च कर सकते हैं ताकि सारे मुआशरे दीन पे आने से पहले अपने आप को देख चुके हों लोग कि मेरी कौन सी चीज दूसरों को तकलीफ देती है। अल्लाह ताला में इन अखलाकी बुराइयों से बचाकर एक बामकसद काम पे लगाए, और मैंने देखा जब मकसद आ जाता है तो याद ही नहीं रहता कि गीबत भी करनी थी। कहां आखिरी दफा याद होगा किसी की बुराई, इल्ला ये कि किसी के साथ दिल बहुत ही खराब हो जाए। आगे आए 13, खानदानी तासुब की नफी भी है, और आलमगीर मसावात इंसानी की बुनियाद वहदत खालिक और वालदा। ये बड़ा सा टॉपिक, इसको ज़हन में रखकर सुनिए। या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगो हमने तुम सबको एक ही मर्द और औरत से पैदा किया, फिर इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो तुम्हारे कुंबे और कबीले बना दिए। अल्लाह के नजदीक तुम सब में से ज्यादा बाइज्जत वो है जो सबसे ज्यादा डरने वाला है, यकीन जानो कि अल्लाह दाना और बाखबर है। अल्लाह ताला में एक वहदत में पिरो दे, बस डोरी मिसिंग है, मोती तो बिखरे हुए हैं, सारे मोती आज उम्मत मुस्लिमा उस टूटी हुई तस्बीह की तरह बिखरी हुई है जिसका बीच का धागा बिखर गया और नॉट खुल गई। कहीं रंग नस्ल के नाम पे, कभी जुबान की नफरतों की बुनियाद पे आज उम्मत टूट गई। अल्लाह नबी की इस टूटी हुई उम्मत को जोड़ दे, कुरान का ग्लू जोड़ेगा इंशाल्लाह। आगे आयत 14 से 15, इस्लाम और ईमान का फर्क है। قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا। देहाती लोग कहते हैं हम ईमान लाए, आप कह दीजिए दर हकीकत तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम यूं कहो कि हम इस्लाम लाए। पहले इस्लाम आता है फिर ईमान आता है। इस्लाम जाहिरी इत्तबा का नाम है और ईमान दिल की कैफियत का नाम है। हालांकि अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, तुम अगर अल्लाह की और इसके रसूल की फरमा बरदारी करने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ भी कम न करेगा। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो पैगाम क्या है कि पिछली जिंदगी के गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे अगर तुम अब नेकियां करने के लिए नीयत कर लो। तो अल कल्बुल मुस्लिम बगैर ईमान, ईमान का दावा है लेकिन असल में ना तो ईमान के तकाजे पूरे हुए कि मोमिन की तरह सच्चे दिल से ईमान लाते, और ना मुस्लिम बने कि जो अल्लाह के दीन इस्लाम पे अमल करे। तब कह सकते हैं कि मोमिन वो है जो सच्चे दिल से ईमान लाए, और मुस्लिम वो है जो ईमान के बगैर ही इताअत करने लगे। यानी शुरू तो कर दो, सफर शुरू होता है इस्लाम से, फिर मुस्लिम बनता है, फिर मोमिन बनता है बंदा। और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि जब ये सब कुछ हो जाता है तो इंसान किस तरह होता है। हर मोमिन मुसलमान होता है, लेकिन हर मुसलमान का मोमिन होना जरूरी नहीं। और ईमान की जगह दिल है, दिल का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। लिहाजा मैं और आप किसी पर कोई फतवा नहीं दे सकते और ना फतवे देने चाहिए। आयत 15, मोमिन तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक व शुबा न करें और अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते रहें, यही सच्चे और रास्तगो हैं। अल्लाह हमें सच्चे रास्तगो लोग बना दे और ईमान और इस्लाम दोनों दे दे, दिल को भी मुसलमान कर दे और ईमान निगाह को भी मुसलमान कर दे। जितना ज्यादा दीन के तकाजे पूरे करते जाएंगे ये काम आसान होता जाएगा। आयत 16 से 18, सूरत का अख्तिताम, ईमान अल्लाह का एहसान है और अल्लाह पैगाम देते हैं कि अल्लाह पर एहसान ना जतलाओ बल्कि इसका एहसान मानो। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो। अल्लाह हर चीज से जो आसमानों और जमीन में है बखूबी आगाह है, और अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जतलाइए, यानी आपके ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उसने आपको मुसलमान बना दिया। किसी को बादशाह की खिदमत का मौका मिल जाए तो ये उस पे बादशाह का एहसान होता है, ना कि उसका एहसान है कि मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूँ। तो बादशाह है, अल्लाह तो अल्लाह की जात है। तो अगर आप में से मुझ में किसी को अल्लाह के दीन की खिदमत की मौका और तौफीक मिल गया तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? बल्कि दरअसल अल्लाह का तुम पर एहसान है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी। अगर तुम रास्तगो हो, यकीन मानो कि आसमान और जमीन की पोशीदा बातें अल्लाह खूब जानता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसे खूब देख रहा है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। तो आयत 17 में अनहदाकुम लिल ईमान में हिदायत की बात है। अल्लाह का एहसान के वो बंदों को ईमान की तरफ हिदायत देता है। दीन का काम करने वाले दरअसल अपनी आकिबत संवारते हैं। दीन की खिदमत करने वालों पर अल्लाह का एहसान होता है। अल्लाह ताला इन्हें अपने दीन की खिदमत की तौफीक देता है, ये उसकी मेहरबानी है। और हिदायत की तौफीक सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस खूबसूरत पैगाम पे सूरत अल हुजरात पूरी हुई। तो आगे है जी सूरत कौफ, हरफ मुकत्तात में से एक लफ्ज के ऊपर ये सूरत है, 50 नंबर की सूरत, 45 छोटी छोटी आयतें हैं जब हम पढ़ेंगे। इस सूरत का बुनियादी मजमून अल्लाह की सिफात कुदरत और इल्म और आखरत के बाहमी ताल्लुक का बयान है। बहुत ही प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला की ये कुदरतें बयान की जा रही हैं, और खास तौर पे काफ से कयामत। एक लेक्चर है काफ से कुरान, काफ से कयामत। तो इस आयत सूरत में कयामत और दोबारा उठने और जवाबदेही की बातें हैं। आयात का तज्जिया, आयत 1 से 15 अल्लाह की सिफत कुदरत के मज़ाहिर, 16 से 18 अल्लाह की सिफत इल्म, और 19 से 45 अहवाल आखरत। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ हरूफ़े मुक़त्तात, वल कुरान अल मजीद, बल अजीबु अन जाहुम मुनज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शय्युन अजीब। آیت 1 سے 5 میں ٹاپک ہے کافروں کے دو اعتراضات اور ان کے جواب۔ قاف بہت بڑے شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے، یعنی عقل سے دور ہے بات۔ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ مکہ والوں کے اعتراضات تھے کہ مرنے کے بعد کیسے جئیں گے، اسی کی طرف اشارہ اس میں۔ آگے آئے 6 سے 10، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ مظاہر۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح سے زینت دار بنا دیا، کس طرح بنایا اور زینت دی، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، تبصیرت و ذکر لکل عبد منیب، اور یہ آپ کو اس صورت میں انداز بار بار دکھے گا غور و فکر اور تدبر کا۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بہ تہ ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اس کائنات کو ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، گلاسز تو لگاؤ، تسلیم و رضا کے والے دل کے ساتھ دیکھو گے تو تمہیں ادھر سے سمجھ آ جائے گا کہ تمہارا رب کیا کچھ کرنے والا ہے۔ آیت 11 سے 15 میں قبروں سے نکلنے کا ایک منظر بھی ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے 14-15 میں تاریخ سے کچھ عبرت کی باتیں۔ رزق للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے یعنی کنویں والے اور سموت نے جٹلایا، اور آت نے اور فرعون نے اور برادران لوت نے اور ایکا والوں نے اور طبہ کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ اللہ ہمیں عبرت لینے والا بنائے تاریخ سے اور ان واقعات سے۔ آگے بڑی پیاری آیات ہیں، معروف آیتیں ہیں 16 سے 18، لکھیے اللہ شہرگ سے بھی قریب ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے آ جاتے ہیں، ذرا موت کے بعد جب قیامت آئے گی تو قبروں سے نکلیں گے نا، اس وقت کو ذہن میں لائیے، دو فرشتے آئیں گے قبر کے باہر آپ کو مجھے لینے۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، خوبصورت آیت۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے، اس کے بعد پھر زپ دم آؤٹ ہے، پھر نہیں آپ بولیں گے ایکسٹرا، بیکار ہے یہ بولنا، کیونکہ لکھنے والے نے لکھنا، جیسے میرا ریکارڈر میرا ایک ایک لمحہ ایک ایک جملہ لکھ رہا ہے، میری سنیزنگ بھی نوٹ کرے گا، ہلکی سی ٹک کروں گی تو لکھے گا، تو اللہ کرے کہ ہم کانشیس ہو کے بولیں۔ آیت 19 میں موت کی سختیاں ہیں، اور اگر آیت 19 سے 29 پہ جائیں تو ساتھ ہی ساتھ پہ جہنم کی سختیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ وجات سکرت الموت بالحق، بڑا دل اداس ہو جاتے ہیں ان آیتوں کو پڑھ کے، بلکہ سورہ قاف کا تصور بھی دل میں آتا ہے نا تو میرے دل میں ایسے بڑا اداسی کا جذبہ آتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے وہ جس سے تو بے دکھتا پھرتا تھا۔ پوچھئے، انسان موت سے ڈرتا ہے، اس کے ذکر سے بھی گریز کرتا ہے، لیکن یہ کٹل حقیقت ہے، اپنے وقت اور جگہ پر آئے گی۔ ہاں اس کی سختی بڑی اذیت ناک ہے، اللہ کے نبی نے اپنے وصال سے پہلے کیا فرمایا، ان للموت سکرات، بخاری کے لفظ ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی میری موت کو آسان کرے اور کلمہ دے کر سیدھا جنت میں لے جا جائے، ہمیں شہادت کی موت دے کہ قبر کے بھی معاملوں سے نہ نپٹیں، قبر کا معاملہ بھی نہ آئے اور ادھر جان گئی اور ادھر ہماری روحیں جنتوں میں پہنچ جائیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے علم کے راستے پہ مریں گے اور سور پھونک دیا جائے گا. وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اسی طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. موت کے ساتھ ہی سارے پردے چھٹ جاتے ہیں، اور میدان حشر میں حاضری کو بھی اس نے ذہن میں لے آئیے. سب کی بصارت تیز ہو جائے گی. آج دنیا بڑی دکھتی، آخرت پردے میں، اس دن آخرت کی ایک ایک چیز کھل کے دکھے گی. اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے رکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا. یا دیکھ لیجیے کافر کس کو کہا جا رہا ہے، نہ شکرے کو کہا جا رہا ہے جو نیکیوں کے مواقع کو پیچھے کر دے اور حدوں میں گزرتا جائے اور شک ہی نہ اس کے دل کے ختم ہو. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا. حق تعالی فرمائے گا، بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعدہ یعنی وعید عذاب کا وعدہ بھیج چکا. میرے ہاں بات بدلتی نہیں، نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں. یہاں تک دیکھیے، موت تک شیطان پیچھے لگا رہتا ہے. تو نیکیوں کی نیت آئے تو فوراً کر لے. قرآن کی محفل میں پگھلے ہوتے ہیں، پگھلی ہوئی شمع کی طرح کینڈل. یہاں اگر اکڑ گئے نا تو پھر باہر بھی اکڑ ہی پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پگھلا دے. آگے آئے 30، جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور 36 تک چلتے جائیے تو اللہ جنت اور جہنم دونوں کو بھر دے گا. یوم نقول لجہنم خلمت لاتی وتقول هل من مزید. جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے، کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ جواب دے گی، کیا کچھ اور بھی زیادہ ہے؟ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی. یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو. تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. شاید آپ کی توجہ تو ختم ہو چکی ہوگی کیونکہ پارے کے اینڈ پہ آپ تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن یقین کیجئے میں ویسے ہی فریش محسوس کرتی ہوں جیسے پارے کے شروع میں ہوتی ہوں، کیونکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو فوکس رکھتا ہے. تو اللہ ہمارے دلوں کو توجہ والے دل بنا دے. کیا خوبصورت پیغام ہے. تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں زیادہ تھیں. وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے، نہیں ملتا ٹھکانہ. جب اللہ پکڑ لے تو پھر کون پناہ دے گا؟ تو کیا پتہ چلا جنت میں جانے والوں کی خوبیاں بتا دیں، سیرت کے پکے، کردار کے پکے، برائیوں سے بچنے والے، بار بار رجوع کر کے گناہوں سے بھی معافیاں مانگتے، نیکیاں کر کے بھی معافیاں مانگتے، اور غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے. اکیلے میں ان کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، رقت والے دل ہوتے ہیں. تو پھر جنت میں وہ سب مل جائے گا جس کی ان کو طلب تھی. اللہ ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار کروا دے. اور تاریخ سے عبرت کی باتیں سننے کے بعد اب آئے 37، معرفت حق کے دو ذرائع، دل اور دیکھے گا کیا ہے. ان فی ذلک لذکرٰ لمن کان لہ قلب. اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر بھی ہو. یہ ہے القلب المنیب، دل لگا دیجئے اور کان لگا دیجئے. ہدایت اور نصیحت کے حصول کے لیے غفلت، انا اور تعصب سے پاک دل چاہیے، اور پوری توجہ سے سننے والا دل. انہی کو فائدہ ہوتا ہے جو اس طریقے سے سنتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 سال لیے، لیکن جب حق قبول کیا تو وہ حق ان کے دل دماغ پر چھا گیا. اللہ ہمیں بھی سنتے وقت پورے فوکس ہو کے سننے کی توفیق عطا فرمائے. और आगे फिर सूरत के आगे चलते हैं 38 से 40। अल्लाह ताला हर कमजोरी से पाक है और तुम सबर नमाज और जिक्र से मदद मांगो। वलकद खलकना समावाती वलर्द वमा बैनहुमा, यकीनन हमने आसमानों और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है सबको सिर्फ 6 दिन में पैदा कर दिया और हमें थकन ने छुआ भी नहीं। आप तो नहीं थके, दूसरी बार इस बारे में थकन की बात है। बस ये जो कुछ कहते हैं आप इस पर सब्र करें और अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ बयान करें, सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गरूब होने से पहले भी, और रात के किसी वक्त भी तस्बीह करें और नमाज के बाद भी। अल्लाह ताला जो लोग एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, जो बाद में भी इसको सुनेंगे, उनको एक एक थकन का बदला अता फरमाए, और जो कमजोरियों से पाक हस्ती है वो हमारे जिस्म की, हमारी रूह की, हमारे स्पैम जो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं उसमें भी बरकत दे दे। और अब आगे आते हैं आखिरी सूरत की 41 से 45, अहवाले क़यामत, क़यामत के कुछ हालात। वस्तमी यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब, और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा, जिस रोज इस तंदो तेज चीख को यकीन के साथ सुन लेंगे, ये दिन होगा निकलने का, हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारी ही तरफ लौट कर आना है। जिस दिन जमीन फट जाएगी और ये दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे, ये जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है। ये जो कुछ कह रहे हैं हम बखूबी जानते हैं, आप इन पर जबर करने वाले नहीं, तो आप कुरान के जरिए से उनको समझाते रहिए जो मेरी वईद से डरते हैं। आखिरी जुमरा हाईलाइट करें, फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफ वईद, तो क्या पता चला काफ से कुरान, काफ से क़यामत। कुरान ही है वो चीज जो हमें आपको सीधा कर रहा है और वही करेगा इंशाल्लाह। चंद आयतें हैं सूरत ज़ारियात की हमारे सामने, छोटी सी सूरत है और इसको हम शुरू करेंगे। आयतें तरतीब के एतबार से 51 है और इसमें टोटल 60 आयतें हैं, जिसमें से 30 हम इस बारे में पढ़ेंगे। ज़ारियात हवाओं के साथ एक टॉपिक आया है, तस्कीर बिल कुरान का शाहकार है ये सूरत। आप इस सूरत में तारीखी वाकयात देखेंगे, आफाक यानी कायनात में छुपी हुई निशानियां, आपके मेरे नफ्स यानी हमारी निजी जिंदगी की निशानियां, और क़यामत का अहवाल मुख्तसर लेकिन मौसर तरीके से है। खास तौर पर यह सूरत यूनिक है तस्कीर बिल कुरान के एतबार से। आयात में 1 to 19 अहवाल आखरत, 20 से 23 आयात आफाकी और अनफुस पर गौर की दावत, 24 से 46 तारीख से इबरत, और 47 से 51 आखरत के बारे में एक दलील, और 52 से 60 मुशरिकीन मक्का के साथ कशमकश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़र्वा फ़ल्ख़ामिलाति विक़्रा फ़ल्जारियाति युस्रा फ़ल्मुक़स्सिमाति अम्रा इन्नमा तूअदून लसादिक़। पहली 4 आयतें हवाओं की सिफात हैं और 6 तक जाएंगे तो क़यामत जरूर आएगी, ये पैगाम है। कसम है बखेरने वालियों की उड़ाकर, फिर उठाने वालियां बोझ को, फिर चलने वालियां नरमी से, फिर काम को तकसीम करने वालियां। हवाएं जैसे चलती हैं तुम भी अल्लाह के रस्तों में ऐसे ही चलते जाओ अगर तुम्हें अल्लाह से कुछ लेना है। आयत 5 से 14, 5 से 14, दीन को अंदाजों पर नहीं रखना, यानी कुछ लोग अटकल पुच्छू के नाम पर इसी तरह दीन की बातें करते हैं और क़यामत का इनकार करने वालों का बुरा अंजाम भी इसमें दिखेगा। इन्नमा तू अदून लसादिक, यकीन मानो कि तुमसे जो वादे किए जाते हैं सब सच्चे हैं, और बेशक इंसाफ होने वाला है। कसम है राहों की आसमान की, यकीनन तुम इख्तलाफ वाली बात में पड़े हुए हो, इससे वही बात रखा जाता है जो फेर दिया गया हो। बेसनत बातें करने वाले गारत कर दिए गए, जो गफलत में है और भूले हुए हैं, पूछते हैं कि यौम जजा कब होगा। हाँ ये वो दिन है कि आग पर तपाए जाएंगे, अपनी फितना परदाजी का मजा चखो, यही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। आयत 15 से 19, मोमिन का तरीका जिंदगी, स्केड्यूल है मोमिन का। इन नल मुत्तकीन फी जन्नातिम व उयून, बेशक तकवा वाले लोग बहिश्तों और चश्मों में होंगे। इनके रब ने जो कुछ इनको अता फरमाया इसे ले रहे होंगे। वो तो इससे पहले ही नेकुकार थे, वो रात को बहुत कम सोया करते थे और सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार किया करते थे, और इनके माल में मांगने वालों और सवाल से बचने वालों का हक था। आज की ताक रात कैसी थी? ठंडी सुकून वाली सकीना वाली रात थी आज इधर। अल्लाह हमें इसकी इबादत करने वालों में शामिल कर ले, हमारी नींद को भी अल्लाह इबादत में शामिल कर ले। आज 20 से 23 अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र की दावत। वफिल अर्ज़ आयातुल मुकिनीन, और यकीन वालों के लिए तो जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी जात में भी, तो क्या तुम देखते नहीं हो? और तुम्हारी रोजी और जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान में है, और आसमानों जमीन के परवरदिगार की कसम ये बिल्कुल बरहक है, सही जैसे कि तुम बातें करते हो। यानी क्या बताएगी, मानो ना मानो आके रहेगी, और तुम्हारा मेरा आपका हमारा सबका अंजाम हमारे अमाल के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला आज दुनिया में अच्छे काम करने की तौफीक दे। आखिर में किरदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके मेरे सामने, आयत 24 से 30। हल अताक हदीस उदैफ इब्राहिम अल-मुकरमीन, क्या तुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजूद मेहमानों की खबर भी पहुंची? वो जब इनके हां आए तो सलाम किया, इब्राहिम ने जवाब में सलाम दिया और कहा ये तो अजनबी लोग हैं। फिर चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर वालों की तरफ गए और एक मोटा फरबा बछड़ा यानी उसके फरगोश्त बछड़े का गोश्त लाए और इसे इनके सामने रखा, इनके पास रखा और कहा आप खाते क्यों नहीं? फिर तो दिल ही दिल में इनसे खौफ ज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि आप खौफ ना कीजिए, और उन्होंने इब्राहिम को एक इल्म वाले लड़के की बिशारत दी। ये है सब्र का खुतोफा। जब आप तस्लीम और रजा के पैकर होते हैं ना, तो बुढ़ापे में भी अल्लाह इल्म वाले बेटे देते हैं। अल्लाह ने जिनको भी अभी तक इससे दूर रखा है अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमा दे। बस इनकी बीवी आगे बढ़ी और हैरत में आकर अपने मुंह पर मार कर कहा मैं तो बुढ़िया हूं और साथ ही बांझ। उन्होंने कहा हां तेरे परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया है, बेशक वो हकीम और अलीम है। क्या पता चला कि जब अल्लाह की रजा पे राजी रहें तो नामुमकिनात को अल्लाह मुमकिन कर देता है, और इस तरह बूढ़े जोड़े को बीबी सारा और इब्राहिम को अल्लाह ताला ने कैसे चुना। और इसी तरह हजरत हाजरा का भी जिक्र आता है। तो बात यह है कि आज का ये पारा अल्लाह का शुक्र एक दिन में पूरा हुआ। अभी मुझे ख्याल आया कि पिछले साल का दौरे कुरान DQ 2020 में पारा 26 दो दिन में हुआ था, और सबसे ज्यादा इसको लोगों ने फायदा लिया, फीडबैक भी था, क्योंकि तरबियत है ना, इसके बगैर कुरान पूरा हो गया तो क्या। तो जो वक्त मैंने एक्स्ट्रा लिया आप भी माफ करें, अल्लाह भी मुझे माफ करे, थोड़ा थोड़ा करके सुन लिया करें, ना जल्दी करें, लेकिन ये चीजें एक दफा चली गई तो फिर शायद लोगों के फायदे का जरिया बने। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रस में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये सहाबा कराम के नाम है जो इस पूरे पारे के हीरोज थे। और फितरत के तकाजों पे न कर राहे अमल बंद, मकसूद है कुछ और ही तस्लीमो रजा का। तो आपको मुझे पैगाम है ये कि आप अमल के रास्ते ना छोड़ा करें, चलते जाइए, अल्लाह के फैसलों पे राजी रहेंगे तो अल्लाह ताला आपसे मजीद नेकियां कर देता ही रहेगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।